भाई नेविल धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करने के लिए थोड़ी देर और खड़े रहें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। अगर आपका कोई निवेदन है जो आप परमेश्वर से करना चाहते हैं, तो बस हाथ ऊपर उठा लें। जो कुछ भी आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं, उसे अपने मस्तिष्क में ही रखें। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें जबकि मैं आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। हे स्वर्गीय पिता, आज के इस उदासी भरे दिन में प्रभु के भवन में आना हमारे लिए बड़े सुअवसर की बात है। हम यहाँ परमेश्वर के उज्जवल प्रकाश को देख रहे हैं और यहाँ पवित्र आत्मा लोगों में होकर गीत गा रहा है, लोगों से बात कर रहा है। यह एक छोटा सा झुंड है जिसमें आपका प्रकाश समाया है। हमारे मनों में जो ये स्वर्गीय ज्योति चमक रही है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। किस प्रकार से इसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। अब प्रभु, तेरी इस सभा में तेरे लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं, उनकी विनती और इच्छा है जिनका उत्तर आज रात आप उन्हें देंगे। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनमें से प्रत्येक की प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। यहाँ मेज पर निवेदनों का ढेर लगा है और बहुत से निवेदन यहाँ सभी ओर हैं। लोग बीमार हैं, दुख पीड़ा में हैं और इस बारे में बहुत दूर दूर के स्थानों से लगभग 50 टेलीफोन प्रतिदिन आते हैं। हे प्रभु, हम क्या करें? प्रभु, बस आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम नहीं जानते कि हम किधर जाएं और क्या करें, मगर आप इन बातों में हमें रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी विनती को ग्रहण करें, क्योंकि यही हमारी इच्छा है। प्रभु, इस धरती पर हमारा जो ये जीवन है, वह आप ही का दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन से आपकी महिमा करें। अब हे पिता, इन सारी बातों में आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु, जबकि हम यहाँ आज आपके वचन को सुनने, गीत भजन गाने और प्रार्थना करने के लिए जमा हुए हैं, तो आप हमें आशीष दीजिए। हमारी दुआओं को सुनिए और हमारे संग हमारे गीतों में आनंदित होइए। आप वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए, क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप कृपया बैठ जाएं। मैं नहीं जानता कि कोई और ऐसा स्थान हो सकता है जहां खड़ा होकर मैं खुद को इतना सौभाग्यवान समझ सकूं, जितना यहां मंच पर खड़ा होकर अनुभव करता हूं, जबकि इंतजार कर रहे भूखे प्यासे लोगों को जीवन की रोटी तोड़कर दी जाती है, और ये एक बड़ा सुअवसर होता है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या राइट परिवार में से कोई यहां मौजूद है? हैटी या आर्विल या कोई भी? हैटी, क्या आर्विल आपके संग है? अगर वो आया है तो आप जानती हैं जो कुछ मैंने उससे कहा था, उसे कहना शीघ्र घर से होता जाए। जब वो आ सकता है घर आ जाए। उनके पास जो छोटा सा कुत्ता है उसके लिए कुछ लाना था जिसे मैं भूल गया। इसलिए सभा के बाद जो ही आप जाते हैं सीधे घर से होकर जाना। और अब बहन हैटी की बहन एडिस को लीजिए। इसके बारे में हमें पता है कि छुपन से ही वह अपंग हो गई थी और अब वो एक महिला के रूप में बड़ी हो चुकी है और बुरी हालत में है। लगभग एक साल पहले मैं उसके यहाँ गया था जब उसे पहला दौरा पड़ा और दर्द उठा, और फिर परमेश्वर की सहायता और अनुग्रह से मैंने तुरंत जान भी लिया था कि उसकी पीड़ा क्या है। अब देखिए कि उस बच्ची को क्या बीमारी है। उसके शरीर के अंग, हाथ पैर एकदम से जड़ हो गए हैं और वो उन्हें हिला डुला भी नहीं सकती। ऐसा स्नायु और नसों में अत्यंत दबाव आ जाने के कारण से हुआ है। मगर क्या है कि बच्ची में शारीरिक रीति से कोई कमी नहीं है, केवल ये हुआ था कि जब वो 6 माह की थी तब उसे बच्चों वाला पक्षाघात हुआ था। अब से कई वर्ष पूर्व तक, जब तक हमने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी थी, वह सारे जीवन भर रोती चिल्लाती रही थी, और फिर तब से लेकर अब से एक वर्ष पहले तक वह खूब खुशी पूर्वक जीवन बिताती रही। और ये पहले मासिक धर्म का मामला है, या दूसरे शब्दों में उसके जीवन स्थिति का परिवर्तन है, और उसकी नाड़ियाँ बहुत दुर्बल हालत में है। और वो युवती अपने मन में ये सोचने लगी थी कि वह मरने वाली है। वो सोच रही थी कि अब वो 1-2 घंटे की मेहमान है और जीवित नहीं बचेगी। और आप जानते हैं कि स्वस्थ और बलिष्ठ महिलाएं भी ऐसे संकट के समय से गुजरती हैं। कभी कभी उन्हें अस्पताल जाकर हार्मोन की कमी को पूरा करवाना पड़ता है, और कभी उन्हें ऐसे समय में बिजली के झटके आदि का उपचार भी लेना होता है। मानव जीवन में 2 परिवर्तन होते हैं, जब वे एक लड़के से पुरुष में ढलते हैं और जब लड़की महिला के स्वरूप में ढलती है। जब वे 16-17 साल की अवस्था में होते हैं तो तितलियों की तरह से उड़ने वाले झुंड की प्रकृति उनमें होती है। तब उस समय में आपको उनके साथ सहयोग करना चाहिए। इसी उम्र की मेरी पुत्री रिबका है, आप उसके लिए प्रार्थना करना। और बिली है, ओ उस छोटी सी उन्मत्त आजाद अवस्था से हम सभी गुजरते हैं। अतः ये जानकर कि ऐसी अवस्था में से भी उन्हें गुजरना ही है, हमें उनके साथ सहयोग करना चाहिए। और अब एडिथ अपने जीवन के 7 वर्षीय बदलाव में से गुजर रही है। हर एक 7 साल के बाद आपका जीवन बदलता है। जीवन में 7 बार 7 वर्ष बाद 7 गुणा 7 बदलाव आता है। आप समझे, इस परिवर्तन को सहना जरा मुश्किल पड़ता है। ये महिलाओं के लिए बड़ी परेशानी का समय होता है, क्योंकि उनमें संपूर्ण तब्दीली आती है। पुरुष तो ऐसे समय में मौज मस्ती के मूड में होते हैं और कभी कभी अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, मगर इसके बाद महिलाएं प्रजनन शक्ति से रहित बन जाती हैं। हमें सभी को इस हालत से गुजरना होता है। हमें याद रखना चाहिए कि ये सारी बातें होनी है और हमें इन्हें सहन करना है और इन बातों को समझकर एक दूसरे की बातें सह लेनी है और आपस में सहयोग करना है। और छोटी एडिथ इन्हीं हालातों से गुजरी और बहुत कमजोर हो गई है। उसकी दशा खराब दिखाई पड़ रही है। मैं आपसे कहता हूं कि किसी रात आप उनके घर जाएं। आप सभी एक साथ नहीं, वे वहां उस बच्ची के साथ दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। आप उनसे मिलें। आप में से यहां इस आराधनालय से और दूसरे आराधनालयों से, बहनों के उपासना घरों से कुछ लोग थोड़ी देर के लिए उनके घर जाएं। आप में से कुछ लोग वहां जाकर राइट परिवार से भेंट करें। मुझे यकीन है कि वे आपको सराहेंगे। बस उनके घर जाइए, थोड़ी देर वहां बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, हाथ मिलाइए और एक दोस्ताना मुलाकात कर आइए। इस प्रकार से किसी के घर जाने की बात हम भूल जाते हैं, कितना आसान है। और जब हमारे अपने घर में ऐसा होता है तो हम आकर मिलने वाले की सराहना करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दूसरे भी इसको पसंद करते हैं। मुझे यकीन है कि राइट परिवार इसकी सराहना करेगा। मुझे पता है कि अगर आपको इस हालत के बारे में पता होता तो आप उनके घर जरूर गए होते, मगर चूंकि आपको ये मालूम नहीं था इसलिए आज सुबह मैंने आपको इस बारे में बताया है। जाइए, जाकर राइट परिवार से मुलाकात कीजिए और एडिथ को खुश करने का प्रयत्न कीजिए। उससे ये मत कहना कि उसकी दशा खराब दिख रही है, मगर कहना कि वो भली चंगी दिखाई दे रही है। वो ठीक हो जाएगी, यकीनन ठीक हो जाएगी, अगर हम उसे ठीक होने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। वह हमारी बहन है और ऐसा करना हमारा काम है। हम इसीलिए यहाँ हैं और ऐसे समय में हम उस बच्ची के लिए विश्वास को थामे रहें। ठीक वैसे ही जब मैं परीक्षाओं में से गुजरता हूँ तो चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें और मुझे स्थिर बनाएं, और ऐसा ही आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे। राइट परिवार इस सभा में आने वाले लोगों में से सबसे पुराने लोगों में से एक है और उन्हीं के साथ के मैं सोचता हूँ भाई रॉय और स्लाटर और बहन स्लाटर हैं। अभी कुछ क्षण पूर्व मैंने उन्हें देखा था जब वो अंदर आ रहे थे तो हाथ हिलाकर अभिवादन किया था। जब मैं उस कोने में कार से उतरा था तो सोच रहा था कितने वर्षों से मैं भाई और बहन स्लाटर को इस गिरजे में आते हुए देख रहा हूँ। जिंदगी के कितने ही उतार चढ़ाव के बावजूद भी वो संघर्ष करते आगे बढ़ते रहे हैं। ऐसे ही राइट परिवार उन्हीं की तरह से अन्य लोग भी हैं जिनकी आप सराहना करते हैं। हमें उनके प्रति अपनी सराहना प्रकट करनी चाहिए। अब आज मेरे पास एक लंबा सुसमाचार है और यह दोष लगाने या अभियोग से संबंधित है। और फिर मैंने सुना है कि आज रात प्रभु भोज और पांव धोने आदि की रस्म भी होनी है। हमारे पादरी भाई वचन प्रचार करेंगे, हम सभी आएंगे। आप भी अगर यहाँ हो तो आइए और पादरी भाई के द्वारा प्रभु की ओर से दिए सुसमाचार को सुनने का आनंद लीजिए और आज रात प्रभु भोज और पांव धोने आदि में सहर्ष भाग लीजिए। आज की रात अत्यंत भरपूरी की रात होगी। अगर यदि आपको कहीं और नहीं जाना है तो यहाँ आइए, हमें आपको यहाँ पाकर खुशी होगी। हम भाई डॉन रडल की सराहना करते हैं, दूसरे भाइयों की भी, भाई जैक्सन आदि की भी सराहना करते हैं जो सहयोगी मंडलियों से आए हैं। यहाँ पर भाई जैक पावर भी हैं जो जॉर्जिया की कलीसिया का काम देखते हैं। हम पूरे दिल से इन भाइयों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि समय समय पर जब हमारे यहाँ आराधना सभा होती है और मैं यहाँ आता हूँ तो ये सभी लोग हमारे पास मुलाकात करने और सभा में भाग लेने आते हैं। हम उनकी सराहना करते हैं। आज की सुबह मैं अपने अच्छे मित्र डॉक्टर ली वेली और उनकी पत्नी को देख रहा था। सबसे पहले मैंने बहन वेली को देखकर पहचान लिया था और मैं चारों तरफ देख रहा था कि भाई ली कहाँ हैं। दक्षिणी प्रांत की कहावत की भाषा में मैं कहूँ तो कोई काम नहीं था, बस यूं ही काम काम करनी थी। अधिवेशन के समय मैं रोजाना उन्हें ढूंढता था कि वो मेरी मदद करें। मैं कहता था अगर ली आ जाएं तो उन्हें वचन प्रचार करने दें, मैं बस बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। और हम उनको सब तरफ ढूंढ लिया करते थे मगर वे कभी भी नहीं मिलते थे कि ऐसा कर सकें। जब वो मुझसे मिलते तो मुझे उनसे झगड़ा करना पड़ता। आज सुबह भाई और बहन वेली को यहाँ पाकर हमें खुशी हुई है और हो सकता है कि यहाँ बहुत से और भी लोग हों जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। यहाँ एक बहन बैठी है और मेरा ख्याल है कि वे शिकागो से आई हैं। मैं उस मंडली का ठीक ठीक नाम नहीं बता सकता मगर मैं उस मंडली को जानता हूँ, लोगों के नाम नहीं बता सकता। अतः आप जहाँ कहीं से भी आए हैं आप सभी की हम सराहना करते हैं। मैं यहाँ दो नवयुवक भाइयों को देख रहा हूँ जो कि सेवकाई के लिए मखसूस किए जाने हैं। कम से कम सेवकाई के काम में वे छोटे और जवान ही हैं। न्यूयॉर्क के ऊपरी क्षेत्र से हमारे ये दोनों रेड इंडियन भाई अभी अभी यहाँ आए हैं और फिलाडेल्फिया चर्च के द्वारा उन्हें सेवकाई के पारपत्र या विश्वास पत्र जारी किए गए हैं। इस गिरजे को उन्होंने वे कागजात दे दिए हैं कि वे कहाँ से आए हैं। हम उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे कि न्यूयॉर्क में परमेश्वर उनकी सेवकाई पर आशीष दे। मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर हमारी दो या तीन छोटी छोटी कलीसियाएं हैं। उनमें से एक छोटा गल्ला भाई मिलानो का है। हम उनकी सराहना करते हैं और ये दोनों भाई भी वहाँ लोगों के लिए सेवकाई शुरू करने जा रहे हैं। हम इन सारी बातों की अत्यंत सराहना करते हैं। प्रभु आपको अत्यंत आशीष दे। यहाँ मैं चारों ओर देख रहा हूँ कि बहुत से परिचित चेहरे दिखाई दे रहे हैं मगर सबके नामों से परिचित नहीं हूँ, मगर मुझे पता है कि प्रभु आपको जानता है। अब मैं चाहूंगा कि हमारी पियानो बजाने वाली बहन या उनमें से कोई यहाँ आकर ये गीत बजाए। जब जलते हुए अंगारे ने नबी को छू लिया तो जितना हो सकता है उतना पवित्र उसे बना दिया। और जब परमेश्वर की आवाज ने पूछा मेरे लिए कौन जाएगा, तब उसने उत्तर दिया मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज दे। अब हम इन पर हाथ रखकर इन सेवकों को मखसूस करते हैं। अब देखिए कि किसी सेवक को मखसूस करने का पवित्र शास्त्र का तरीका यही है कि उस पर हाथ रखे जाए। और मैं सोचता हूँ कि इसी बात पर हमारे लेटर रैन ब्रदरन या बैटल फोर्ड संस्थागत भाई आदि गड़बड़ा गए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि हाथ रखने से पवित्र आत्मा के दान मिलते हैं। आप देखिए कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हाथ रखने से दानों का मिलना जरूरी है। हम विश्वास करते हैं कि हाथ रखना उन बातों को स्वीकार करना है जो हमने घटित होते देख ली है। समझे आप, यह आमीन कहना है। समझे, अब देखिए कि उन्होंने तिमोथियस और उन भाइयों पर हाथ रखे, उन्होंने देख लिया था कि उन मनुष्यों में दान मौजूद थे। याद रखिए कि आपकी दादी माँ के द्वारा जो गुण आप में पहले से हैं, उसे फेंट कर बाहर निकालिए। ऐसा ही उन्होंने तिमोथियस के अंदर देख लिया था, इसलिए बुजुर्गों ने उस पर हाथ रखकर उसे मखसूस किया था। ऐसा नहीं था कि किसी ऐसे आदमी पर हाथ रख दिए जाते जिसने कभी कुछ जाहिर ही न किया हो, आप समझे। और उन्होंने बस आशीष मांगी और हम सभी इस बात पर विश्वास करते हैं। अतः हम आत्मिक दान प्रदान नहीं करते, हम केवल उन्हें मान्यता देते हैं और हाथ रखकर उन्हें स्वीकृतियां देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने दान देने आदि का प्रबंध लोगों के लिए कर रखा है। आज सुबह मैंने देखा था कि उधर एकदम पीछे भाई मैकिनी बैठे थे। उनका नाम शायद भाई किन्नी है, बैठे थे जो कि मेथोडिस्ट सेवक थे और अभी कुछ समय पहले उनको भी इसी मंच पर मखसूस किया गया था। मैं सोचता हूँ कि ये बात ठीक है। उन्हें भाई डॉक व बहन डॉक के साथ उधर ओहियो में सेवकाई करनी थी। ओह, जब हम एक सम जमा होते हैं तो ये छोटे छोटे स्थान एकदम कितने नजदीक आ जाते हैं, ये अद्भुत बात है। ना कोई नामधारी संगठन है, ना कोई बंधन, कुछ भी नहीं, बस यीशु मसीह को समर्पित। देखा, सभी एक साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। ठीक है बहन, आप पियानो शुरू करें। आइए हम इस गीत की पहली पंक्ति गाएं। जब जलते हुए अंगारे ने नबी को छुआ, आइए अब हम इसे साथ साथ गाएं। जब जलते हुए अंगारे ने नबी को छुआ, उसे इतना पवित्र कर दिया जितना वो हो सकता था। जब परमेश्वर ने आवाज दी और पूछा मेरे लिए कौन जाएगा, तब उसने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज दे। हे मेरे प्रभु बोल, हे मेरे प्रभु कह। अब भाई आप दोनों आगे आ जाएं। हे प्रभु बोल और मैं तुरंत ही तुझे उत्तर दूंगा। अब ये भाई भी आगे आ जाएं जो कि इन पर अपने हाथ रखने जा रहे हैं। आराधनालय के सहयोगी भाई जो यहाँ हैं, भाई रोडल, भाई लैम्ब और आप सभी आ जाएं। प्रभु बोल और मैं उत्तर दूंगा, प्रभु मुझे भेज दे।
ओ
लाखों लोग शर्म और पाप में जीवन से मर रहे हैं।
लिसन टू देयर सैड एंड
उनकी दुखपूर्ण और करुण पुकार सुन ले।
हेसन ब्रदरन,
भाई उन्हें बचाने के लिए शीघ्र, अति शीघ्र आगे आए।
क्विकली आंसर मास्टर,
तुरंत उत्तर दें, स्वामी मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरे प्रभु बोल, मेरे प्रभु कह। बोल, मैं तुरंत तुझे उत्तर दूंगा। मेरे प्रभु बोल, मेरे प्रभु कह, प्रभु तू कह, मैं जवाब दूंगा, प्रभु मुझे भेज दे। भाई आपका नाम क्या है? भाई ऑर्लैंडो हंट, आप न्यूयॉर्क से हैं, क्या ये ठीक है? और आप भाई?
जोसेफ
कॉलमैन। अब मेरे भाइयों आप जरा सभा की ओर मुड़ जाइए। ये भाई हंट और भाई कॉलमैन हैं, जिनके हृदय पर परमेश्वर की पुकार का बोझ है। और जैसे कि अभी हमने वो गीत गाया कि लाखों लाख लोग शर्म और पाप में जीवन में मर रहे हैं, इन लोगों ने वह दुख भरी करुण पुकार सुनी है और हम इनसे कह रहे हैं कि भाइयों उन्हें बचाने में शीघ्रता करें। तुरंत जवाब आया, स्वामी मैं यहाँ हूँ। ये भाई आज सुबह इसी तरह से उत्तर दे रहे हैं। और हम जो इस कलीसिया और झुंड के भाई हैं, हम अपने हाथ इन पर रखकर इस सेवकाई की स्वीकृति देते हैं और अपना दाहिना हाथ उनके साथ अपनी सहभागिता में बढ़ाते हैं। हमारी मदद इनके लिए है कि ये यीशु मसीह के गवाह बने। हम हर उस बात में इनके साथ हैं जो सुसमाचार के प्रकाश में सम्मानीय और ठीक है। हमारी प्रार्थनाएं लगातार इन लोगों के साथ रहेंगी कि परमेश्वर इन्हें अपने आदर के लिए इस्तेमाल करे। काश न्यूयॉर्क में इनकी सेवकाई बड़ी और फलदायी हो। काश इनके जीवन प्रभु की सेवा भाव से भरे रहे। इनके द्वारा परमेश्वर के राज्य में अमूल्य गेहूं के फूले एकत्रित किए जाएं। काश ये लंबा सुखी जीवन जिए। काश प्रभु परमेश्वर इन्हें अपनी अनंत उपस्थिति से सुरक्षा प्रदान करता रहे। वह उन्हें तंदुरुस्ती और सामर्थ्य दे। वह इन्हें तब तक अपनी सेवकाई में शामिल किए रहे जब तक यीशु मसीह उन्हें अनंत घर में स्वर्गीय आराम में न बुला दे। अब हम सेवक गण इन पर अपने हाथ रखने जा रहे हैं, तो आइए पूरी सभा और हम सब अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस भाई पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाथ रख रहे हैं कि हमें इस भाई के बारे में जो भी जानकारी मिली है वह भली और धार्मिकता से भरी है। हम इस सेवकाई की पुकार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इसके जीवन में दी है। प्रभु इस भाई के द्वारा आप बातचीत करें, इसके द्वारा आत्माओं को जीतें और प्रभु जो लोग गुलामी में हैं उन्हें छुटकारा दें, उन्हें दोनों प्रकार की आत्मिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति दें। प्रभु इनको सच्ची सेवकाई प्रदान करें ताकि ये अपने जीवन सफर के अंतिम छोर पर पहुंचकर अपने पीछे एक लंबी कतार को देख सकें, तब ये देख सकें कि परमेश्वर के अनुग्रह से इसने सारे शत्रुओं को बांध लिया है। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु भाई कॉलमैन के ऊपर भी हम अपने हाथों को गवाहों के रूप में रख रहे हैं। हम उसकी पुकार को स्वीकृति देते हैं कि ये कलीसिया, लोगों का ये झुंड विश्वास कर रहा है कि ये भाई मसीह का सेवक है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसे आशीष दें और बड़ी सामर्थ्य से भरी सेवकाई प्रदान करें ताकि ये प्रभु के लिए आत्माओं को जीत सके, ये गुलामों को बंधन मुक्त कर सके और उन लोगों के जीवनों से जिनसे ये जुड़ा है शैतान की तमाम ताकतों को तोड़ सके। प्रभु इस भाई को फलदायी जीवन दे और जब ये मार्ग के आखिरी सिरे पर पहुँचे तो प्रभु होने दे कि ये भी पीछे मुड़कर लंबे चिन्ह देख सके कि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के आदर के लिए किस प्रकार से इसने शत्रु की सभी बेड़ियों को तोड़ डाला। स्वर्गीय पिता, काश ये मनुष्य इसी प्रकार का जीवन जीकर परमेश्वर की कटनी के काम को कर सके। काश आपकी आशीषें इन पर उस समय तक बनी रहें जब तक हम उस महान स्वामी के चरणों में जमा न किए जाएं। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई हंट, परमेश्वर आपको आशीष दे और फलदायी सेवकाई प्रदान करे। भाई आपको भी खुदा आशीष दे और फलदायी सेवकाई प्रदान करे। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार फिर से गाएं, जब अंगारा नबी को छुए वो उसे इतना पवित्र कर दे जितना कर सकता है। जब परमेश्वर पूछे कि मेरे लिए कौन जाएगा, तब उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज दे। हे मेरे प्रभु कहे, मुझसे कहे। काश वो बहुत से नौजवान दिलों से कहे, मेरे प्रभु बोल, जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, और मैं तुझे तुरंत उत्तर दूंगा। मेरे प्रभु कहे, मुझसे कहे।
स्पीक
से कहे मैं तुझे जरूर उत्तर दूंगा। आज रात हम प्रभु के कितने धन्यवादी हैं कि कलीसिया को ये बड़ा सम्मान मिला कि अंत समय में इन सेवकों को सेवकाई के क्षेत्रों में भेजने की वह गवाह बन सकी। मेरे भाइयों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके संग जाए। मैं आशा करता हूं कि वह आपको दुनिया भर में विदेशी क्षेत्रों में भेज रहा है, उन क्षेत्रों में आप यीशु मसीह के ऐसे खजानों का प्रचार कर सकें जहां उसकी जरूरत है और जिसे कोई खुद खोज नहीं सकता। आज दुनिया को इसकी बहुत आवश्यकता है। अब आज इस प्रार्थना सभा में कितनी अच्छी अच्छी बातें, कुछ यहां से कुछ वहां से हमने कर ली हैं। अब आज मैं एक ऐसे विषय पर वचन प्रचार करने जा रहा हूं। कभी कभी आज के इस भयंकर समय के बारे में मैं सोचता हूं कि कुछ न कहूं। अब पिछले रविवार आप में से जो यहां नहीं थे और जिन्होंने मेरा सुसमाचार द थर्ड एक्सोडस यानी तीसरा निर्गमन नहीं सुना था, उन्होंने टेप में द थर्ड एक्सोडस के संदेश का आनंद लिया होगा। यहां क्या है? क्या कोई बीमार बालक है या कुछ कुछ है? ऐसा ही है। परमेश्वर इसे आशीष दे। ठीक है, सभा के ठीक बाद जैसे भी हो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम चाहते हैं कि आप उस थर्ड एक्सोडस तीसरे निर्गमन का सुसमाचार पूरी तरह समझ लें। हो सकता है आपने उसे सुना और समझा हो। तीसरी बार वो प्रकाश प्रभु का वो दूत आया है, उसने बाहर निकलने के लिए लोगों को पुकारा है और उसने इस निर्गमन के समय स्वयं को धरती पर साफ साफ उपस्थित दिखा दिया है। आप समझे? मैं सोचता हूं कि ये थर्ड एक्सोडस का समाचार मेरे लिए विशेष रूप से था जो मुझे आपको देना था। आप उचित समझे तो मैं अपना कोट उतार दूं। यहाँ पर इस आराधना भवन में आज काफी गर्मी है और एयर कंडीशन के नाम पर बस हाथों में पंखा है जिसे आप झुला सकते हैं। आपको अपनी शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ेगा इसे चलाने में। हम कोई योजना बना रहे हैं किसी समय यहाँ वातानुकूलित यंत्र आदि लगवा सकें और जैसे ही संभव होगा हम ऐसा करेंगे। अब अगर आप थर्ड एक्सोडस वाला सुसमाचार सुनना चाहेंगे तो हमें खुशी होगी। हमारे लिए कई प्रकार के निर्गमन हुए हैं मगर निश्चित रूप से हम तीन निर्गमन या एक्सोडस के समय और स्थान की पहचान कर सकते हैं। परमेश्वर आग के खंभे के रूप में नीचे आया और उसने लोगों को बुलाया और उन्हें अलग किया और अब भी वो लोगों को अलग इकट्ठा कर रहा है। हम पाते हैं कि जब उसने पहली बार अलग किया या पहला निर्गमन हुआ, वह तब एक आग के सतून में उनके आगे आगे चला और उस देश में उन्हें ले गया और फिर बाद में वह उनके मध्य में एक मनुष्य यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ। वह परमेश्वर में से आया था और उसी के पास लौट गया और लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया और उसके बाद वो फिर से लोगों को उस दुनियावी हालत से बाहर बुलाने को आया जिसमें लोग चले गए थे। यह हालत ठीक वैसी ही थी जब लोग मिस्र में थे और मिस्रियों के रीति रिवाजों पर चलकर पापों में फंस गए थे और तब परमेश्वर ने उनमें से उन्हें बाहर बुलाया था। दूसरी बार हम देखते हैं कि वे लोग रोमन राज्य की गुलामी में थे और वे मतों और सिद्धांतों में फंसकर सच्ची और वफादारी भरी उपासना से परे हट गए थे। तब परमेश्वर ने एक और निर्गमन किया और वो खुद एक मनुष्य के रूप में आया और उसने मनुष्यों का मार्गदर्शन किया। पहले निर्गमन में वह आग का सतून था, तब जब वो धरती पर आया तब मेमना बना। वह लोगों को किधर ले गया? सहस्त्राब्दी या मिलेनियम की ये कितनी सुंदर प्रतिछाया है जहां वह आज अपनी कलीसिया को ले जा रहा है। तब हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसकी तरह से महिमा में देह प्राप्त करेंगे और आज उसी आग के सतून में से सुसमाचार का प्रकाश हमारे मध्य है। आग का वो खंभा साफ तौर पर हमारे बीच दिखाई दिया है। विज्ञान ने उसे देखा है और उसका चित्र पत्रिकाओं में छपकर सारी दुनिया में पहुंच चुका है। वैज्ञानिक और आत्मिक दोनों तरीकों से ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि यह वही आग का सतून है। इसके द्वारा हमेशा वैसे ही चिन्ह और काम प्रकट होते हैं जैसे पहली बार हुए थे। और अब ऐसे दिनों में जब बहुत सारी सनकी और पागलपन की बातें चल रही हैं, परमेश्वर अपनी पहचान अलग से प्रमाणित करता है। अब हम ये पाते हैं और इसको जानना कितना शानदार है कि ये दुनियावी डेरा, ये दुर्बल पुराना शरीर जिसमें हम बीमार और दुखी रहते हैं, एक दिन बदल जाएगा। तब ये उसकी तरह महिमा में देह में ढल जाएगा। तब हम उसे वैसा देखेंगे जैसा वो है और उसके संग उस देश में रहेंगे जिसमें आज हम जाने के लिए आस लगाए बैठे हैं। ओ, मैं अनुभव करने लगा हूँ, मन चाहता है कि यहाँ खड़े होकर वह गीत गाने लगूं। मैं प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा रहा हूँ। वे लोग शायद बपतिस्मे देने के समय इस गीत को तो गाएंगे ही, क्योंकि ये हमारा बपतिस्मे के समय गाया जाने वाला गीत है। अब वे भाई सुने जो यहाँ हैं या बाहर दुनिया भर में कहीं भी हैं जहाँ तक ये टेप जाती, यह सुसमाचार किसी एक व्यक्ति को संबोधित नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि लोग ये सोचें कि हम किसी तरह का कोई अलग झुंड हैं या कुछ सनकी किस्म के लोग हैं जो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, जिन्होंने बस अलग पहचान बनाने के लिए स्वयं को अलग कर लिया है और देखने में उनमें कोई विश्वास नहीं, या कि हमने खुदा, गिरजे या किसी और के विरुद्ध स्वयं को अलग कर लिया है। नहीं, हम गिरजे के लिए हैं, मगर हम पवित्र आत्मा और उसकी सहायता से आज के इस अलगाव के कारण बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अलग रहने में विश्वास नहीं करते, हम इसमें विश्वास करते हैं कि सारे गिरजे एक जगह एक संग सहभागिता करें और अलग न रहें। हम चाहते हैं कि मेथोडिस्ट झुंड और बैप्टिस्ट झुंड सभी अलग अलग न रहें, वरन एक संग रहें। वननेस, स्त्री एकता वाले और बाकी जितने भी गिरजे यहाँ हैं, सभी अलग अलग बटे हुए हैं। हम विश्वास करते हैं कि इन सभी से मिलकर यीशु मसीह की एक बड़ी देह बननी चाहिए जो उसकी महिमा में आगमन की बाट जोहती रहे। इनको अलग अलग नहीं बटना चाहिए। वह क्या है जो हमें अलग करता है? कुछ आधारभूत कारणों का होना जरूरी है जिसकी वजह से हम एक संग नहीं हैं। और इस बात का अध्ययन करने पर मैं महसूस करता हूं कि यह कारण हमारे जिस्मों का अलग अलग रंग नहीं है, क्योंकि विभिन्न संगठनों में काले, गोरे, भूरे, पीले सभी तरह के लोग हैं। न ही ये विभिन्न तरह का भोजन है, हम सब एक ही प्रकार का भोजन करते हैं और एक ही तरह के वस्त्र पहनते हैं, वगैरह वगैरह। अगर मैं देखता हूँ कि आधारभूत कारण ये है मनुष्य, जो कि सुसमाचार की शिक्षा की लय ताल से उसके पथ से भटक गया है। हर मनुष्य गलत चल रहा है और कोई न कोई ऐसा तरीका जरूर होना चाहिए जो ये दिखा सके कि क्या सही है और क्या गलत। और ऐसा जानने के लिए आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि वचन के बारे में अपने अलग अर्थ लगा लें। केवल उसको वैसे ही पढ़ें जैसा लिखा है और उस पर विश्वास करें। एक मनुष्य जब उसका अपना निजी अर्थ लगाता है तो वह फिर कुछ विभिन्न बात कहने लगता है। यह विषय हमें वापस कैथोलिक चर्च के मूल धार्मिक संगठन तक ले जाता है। इसमें कैथोलिक चर्च का विश्वास है कि परमेश्वर अपने गिरजे में रहता है और वचन से कुछ लेना देना नहीं है, परमेश्वर तो अपने गिरजे में रहता है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में पाते हैं, हम प्रोटेस्टेंट लोग सभी उस बात और उस मत के ढेर में शामिल हैं। और देखिए कि कैथोलिक चर्च सभी नामधारी धार्मिक संगठनों की माता थी। हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट गिरजों की अंधेपन के कारण वही स्थिति है। वे कैथोलिक गिरजों की ही तरह से सोचते हैं, उनकी प्रकृति वैसी ही है। पवित्र शास्त्र कैथोलिक गिरजे को वैश्याओं की माता और प्रोटेस्टेंट गिरजों को वैश्याएं या पुत्रियां बताता है। वचन बताता है कि रोमन कैथोलिक गिरजा वैश्याओं की माता वैश्या है। लोग जो कि उस बदनाम महिला स्त्री की तरह हैं, जो अपने विवाह के कस्मों वायदों के प्रति सच्ची नहीं रही, और हम सभी अपने को मसीह की दुल्हन होने का दावा करते हैं और इस पर भी इतने अधिक झूठे हैं, दगाबाज हैं। क्या बातें झूठा और दगाबाज बनाती हैं? उस आचार संहिता या आदेशों के विरुद्ध जीवन जीना जो परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को जीने के लिए दिए हैं, जो पवित्र शास्त्र में है। ये मेरा विचार, मेरा विश्वास है कि पवित्र शास्त्र खुदा का वचन है जो कभी टूटता नहीं। अतः हम पाते हैं कि प्रोटेस्टेंट गिरजों ने इसलिए कि वे अपना धार्मिक संगठन अलग बना सकें, खुद को अलग कर लिया, यहाँ तक कि उन्होंने संगठन बनाने हेतु स्वयं को वचन तक से अलग कर दिया। उन गिरजों के सेवक गण जो मखसूस किए हुए हैं, किस प्रकार से अपनी मान्यताओं को थामे हैं। वे सैकड़ों की तादाद में मेरे कमरे में, मेरे अध्ययन कक्ष में आकर मुझसे कहते हैं, भाई ब्रहनम, आप लोगों को ललकारते हैं, कोई भी इन बातों के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता जो आप कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्चाई यही है। मैं उनसे पूछता हूँ कि फिर क्यों आप ऐसा नहीं करते? भाई, आप देखें कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो रोटी के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। मेरे पास कोई और साधन नहीं है, मेरी सेवकाई है, मुझे लोगों को प्रभु तक लाना है, मुझे लोगों को भी खींचना है, और मेरा कोई और सहारा नहीं है। मगर भाई, क्या आप सिर्फ ये अनुभव कर सकते हैं कि मसीह हमारा सहारा है, पवित्र शास्त्र हमारा सहारा है, समझे? मगर आप देखिए कि प्रोटेस्टेंट गिरजे भी एकदम वैसे ही हैं जैसे कैथोलिक गिरजा है। वे कहते हैं कि कैथोलिक चर्च ऐसी बातों की परवाह नहीं करता। मैं इतने अशिष्ट ढंग से ये नहीं कह सकता कि वे लोग इसकी परवाह नहीं करते कि पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है। वे पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं, मगर देखिए कि कैथोलिक चर्च प्रेरितों के उत्तराधिकार प्रथा पर आधारित है। वह पतरस को अपना पहला पोप मानते हैं और फिर उससे शुरू करके नीचे को उत्तराधिकार प्रथा से पोप बनाते चले आए हैं। देखिए कि उनका ऐसा ही विश्वास है, वे जोर देकर इसी को मानते हैं। और प्रोटेस्टेंट लोग देखिए कि एक साथ इकट्ठे होकर ठीक जैसा उन्होंने नाइजीन रोम में किया था, अपने लिए उन्होंने नामधारी धार्मिक संगठन बना लिया है। नाइजीन सभा में वहाँ कैथोलिक चर्च गठित कर लिया गया था। हम पाते हैं कि ये दोनों एक से हैं, एक ही से हैं। एक धार्मिक संगठन बनाने के लिए उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है। और जब बहुत सी वचन की सच्चाइयाँ उन्हें बताई जाती हैं, तो आज वे उन्हें अजीब लगती हैं। वे उनके लिए अनजानी बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो रस्म रिवाजों को ही सिखाया गया है। हमारे पास कोई रस्म प्रथा नहीं है, केवल पवित्र शास्त्र है। हमारे पास और कुछ नहीं, बस परमेश्वर का पवित्र वचन है और हम उसी में कायम हैं। और आज बस थोड़ी देर में मैं वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। यह वचन परमेश्वर के पवित्र वचन की लूका की पुस्तक में है।
And I want to read one verse. That's all I need for this basis this morning to place it up on. Now, we read the 23rd chapter, the 33rd verse of the 23rd chapter. And when they came to the place which is called Calvary, there they crucified him.
और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। अब मैं इनमें से चार शब्द लेना चाहता हूँ। इस पढ़े गए वचन में से चार शब्दों को आधार बनाकर कुछ कहना चाहता हूँ। यानी वहाँ उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया। अंग्रेजी में चार शब्द हैं। और आज का मेरा विषय है मैं आज के इन नामधारी गिरजों और स्वतंत्र धार्मिक संगठन वाले बहुत से गिरजों पर अभियोग लगा रहा हूँ। दोष यह है कि वे यीशु मसीह को आज के दिन फिर से सलीब पर चढ़ा रहे हैं। आज सुबह का वचन अभियोग कहलाएगा और मैं इसे उसी प्रकार से लूंगा मानो यह अदालत का कमरा हो। ऐसे भी ये मंच या गिरजे की वेदी एक अदालत के कमरे की तरह से ही होती है। पवित्र शास्त्र बताता है कि ये न्याय आसन है और न्याय प्रभु के भवन से ही शुरू होता है। और यहाँ ये न्याय आसन है जहाँ पर न्यायाधीशों की खंडपीठ और गवाह आदि सभी हैं। और आज मेरे पास गवाह के रूप में परमेश्वर का वचन है। और मेरा अभियोग आज के नामधारी गिरजों के विरुद्ध है। अब मैं पापी को यहाँ नहीं ला रहा हूँ, मैं ये सब केवल गिरजों से कह रहा हूँ। और अब ये सब टेप कर लिया जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि शीघ्र ही अपनी बात कह सकूँ। मैं इस पीढ़ी पर यीशु मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ाने का अभियोग लगाता हूँ। और इस काल और समय में जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसा करने या कहने के लिए मुझे गवाह की यानी सबूतों की जरूरत है। अगर मुझे कोई अभियोग लगाना है तो सबूत पेश करना होगा कि अपराध किया गया है। आरोप लगाने के लिए मुझे आरोपों को साबित करना होगा ताकि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो मुख्य न्यायाधीश को उचित जान पड़े। और इस अभियोग को लगाते हुए मैं अभियोजन पक्ष की ओर से वकील हूँ। परमेश्वर का वचन मेरा गवाह है और मैं इस पीढ़ी पर यीशु को सलीब देने का अभियोग लगा रहा हूँ। मुझे ये दिखाना चाहिए और मैं दिखाऊंगा कि आज लोगों पर वही आत्मा छाया हुआ है जिसने पहले उसे सलीब दी थी और लोग पहले की तरह से ही व्यवहार कर रहे हैं। मुझे ऐसा करना ही चाहिए अगर ये सलीब देने का मामला है और उन्होंने उसे फिर क्रूस पर चढ़ाया है। मुझे लोगों को ये दिखाना चाहिए कि आत्मिक रीति से आज भी लोगों का व्यवहार वही है और वो वैसा ही कर रहे हैं, जैसा उन्होंने भौतिक रूप में तब किया था। तब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु को शारीरिक रूप में क्रूस पर चढ़ाया था और अब आज उसी वचन और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा उसी वचन की सहायता से मैं गिरजों को ये दिखाना चाहता हूँ कि वे कहाँ खड़े हैं। वे आज फिर से वैसा ही कर रहे हैं और वचन बताता है कि वे ऐसा ही करेंगे। मैं ये भी साबित करूंगा कि आज का ये समय ही जिसमें हम रह रहे हैं वही समय है जब वो ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ साल पहले नहीं किया जा सकता था। मैं कहता हूँ कि 50 साल पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था, मगर आज वैसा करने का समय है। और शायद 10 साल पहले भी ऐसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज ये किया जा सकता है क्योंकि अब समय समाप्त हो चुका है। हम अंत के समय में आ पहुँचे हैं और प्रभु का एक दास होने के नाते मैं विश्वास करता हूँ कि हम बस इस धरती से किसी दूसरे नगर को जाने ही वाले हैं। इसीलिए किसी देश के लिए पश्चाताप का समय बीत चुका है। मैं सोचता हूँ कि ये राष्ट्र अब पश्चाताप नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ कि इसने न्याय और करुणा के मध्य की रेखा पार कर ली है। मैं सोचता हूँ कि वह अब तराजू में ऊपर नीचे झूल रहा है। भाई ब्रैनम, इससे पहले कि आप अपना मुकदमा शुरू करें, आप उसे साबित किस प्रकार करेंगे? मैं इस तरह करूंगा कि हम उन्हीं पापों के अपराधी हैं जिनके कारण परमेश्वर ने महापर्वत से पूर्व की दुनिया को नाश कर दिया था। हम उन्हीं पापों के अपराधी हैं जिनके कारण उसने सदोम और अमोरा को बर्बाद किया था, और उससे संबंधित सारे सबूत हमारे सामने खुले पड़े हैं, और इन सभी आत्मिक प्रमाणों को सारी दुनिया जानती है जिसके कारण परमेश्वर की करुणा दया उस समय के लोगों पर से हटा दी गई थी। दया को अस्वीकार करने के कारण ही वहाँ न्याय आ पड़ा था। अतः अगर इस पीढ़ी ने भी उस दया को ठुकरा दिया है जो पिछले दिनों इस पर करी गई थी, तो अगर परमेश्वर इन पर अपना न्याय न लाए और इन्हें छोड़ दे तो वह अन्यायी कहलाएगा। जैसा कि मेरे एक मित्र जैक मूर ने एक बार कहा था, अगर ये देश परमेश्वर के दंड से बच जाता है तो परमेश्वर इसके लिए मजबूर होगा कि वह सदोम और अमोरा को फिर से उठाकर खड़ा करे और उन्हें जलाने के लिए उनसे क्षमा मांगे। अब हम इस बात को जानते हैं कि आत्मिक रीति से लोग आज फिर वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि वे उसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैसा कर रहे हैं। उसी तरह से वे ये सब कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने प्रभु को शारीरिक रीति से क्रूस पर चढ़ाते समय किया था। वे जलन की वजह से ऐसा कर रहे हैं, आत्मिक अंधेपन की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वे कुछ देखना नहीं चाहते, इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने अपनी इस धरती की यात्रा के समय कहा था, क्या यशायाह नबी ने तुम्हारे बारे में नहीं कहा था कि वे आंखें होते हुए भी नहीं देखते और कान होते हुए भी नहीं सुनते? आप समझे, आज भी वही कारण है, वही उद्देश्य और वही तर्क है। वे लोग फिर से दोबारा यीशु के लिए सलीबी मौत ला रहे हैं, जैसा कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। यह सब उन्हीं कारणों से है जिनकी वजह से तब हुआ था। उन्हें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था। वे उसकी बातों को गलत साबित करने की ललकार का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, और वो जानते थे कि वहाँ सबूत है, और उन्हें पता था कि जो कुछ वो कहता है उस सच्चाई का पवित्र शास्त्र अनुमोदन करता है, और उसके खिलाफ वो बस ये कह सकते थे कि उसकी निंदा करें। आज भी ठीक वैसा ही है, आज भी ठीक वैसे ही वजूहातें हैं, कारण हैं। और अब इन आधारों पर मैं इस पीढ़ी को ललकार रहा हूँ कि उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। मैं कह रहा हूँ कि वे उसे सलीब देने के कसूरवार हैं। नामधारी धार्मिक गिरजों के गंदे, दुष्ट और स्वार्थी हाथों ने जीवन के उस शहजादे को सलीब पर चढ़ाया है जो खुद को अपने को लोगों के लिए देना चाहता था। आप पूछेंगे कि उसी मनुष्य को, यीशु को? आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ था, वचन प्रकट हुआ था, वचन देह के रूप में प्रकट हुआ था, और उन्होंने उस देह को दोषी ठहराकर मृत्यु दंड दे दिया था, उसे मार दिया था। ऐसा इसलिए था कि वचन जाहिर हुआ था। इब्रानियों 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ये वही वचन है, आप समझे, और उन्हीं कारणों से वे वचन को सलीब पर चढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब मैं फिर से अपने उस विषय पर आता हूं जो मैं लेना चाह रहा था। उन चार शब्दों में से पहला है देयर यानी वहाँ। आइए हम इस शब्द वहाँ को समझें। वहाँ यानी कहाँ? जो दुनिया का सबसे पवित्र नगर था यरूशलेम में। वहाँ यानी जो दुनिया का सबसे धार्मिक नगर था। वहाँ उन्होंने यानी दुनिया के सबसे अधिक धार्मिक लोगों ने एक धार्मिक पर्व के समय जो फसह का पर्व था, वहाँ पर जो कि सबसे अधिक धार्मिक स्थल था, धार्मिक नगर था, जो कि सभी धार्मिक संगठनों का सरगना था, सब में प्रमुख था, वहाँ उन्होंने जो कि दुनिया के सबसे अधिक धार्मिक लोग थे और जो सारी दुनिया से वहाँ जमा हुए थे, उन्होंने मृत्यु देने की सबसे अधिक शर्मनाक विधि चुनी जिससे किसी व्यक्ति को शर्मिंदगी की मौत मारा जा सके। उन्होंने उसे वस्त्रविहीन किया, निंदा को, कलंक को और अधिक तिरस्कृत किया। उन्होंने उसके कपड़े उसके शरीर से उतार लिए और एक चिथड़ा शरीर पर लपेट दिया। किस कदर शर्मनाक हालत थी ये। वहाँ पर जो कि बड़ा धार्मिक नगर था, उन्होंने जो कि सबसे अधिक धार्मिक लोग थे, सलीब पर चढ़ाया यानी जो कि सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाली मृत्यु थी, उसे मारा जो कि सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य था। क्या इस पीढ़ी पर दोष लगाने के लिए ये काफी नहीं है? वहाँ पर जो सबसे अधिक धार्मिक संगठन था, सारे गिरजों में से सभी बड़े बड़े गिरजे एक जगह जमा हुए थे, उन्होंने जो सारी जातियों में सबसे अधिक धार्मिक लोग थे, वे लोग जिनसे उम्मीद करी जाती थी कि वे परमेश्वर के सबसे अच्छे उपासक हैं, वे लोग उस महान फसह के पर्व के लिए वहाँ जमा हुए थे कि अपने पापों से शुद्ध हों। जब वो दासता से स्वतंत्रता में प्रवेश कर रहे थे, तब वहाँ उस समय में उन्होंने जो अत्यंत धार्मिक लोग थे, अपने उस अत्यंत पावन पर्व पर, अत्यंत धार्मिक नगर में ये सब किया। वहाँ जीवन के राजकुमार के विरुद्ध इतना घृणित काम किया जिसकी था नहीं। एक व्यक्ति को नंगा करके एक पेड़ पर लकड़ी पर लटका दिया, क्योंकि उनकी व्यवस्था में लिखा था, जिसे वो मानते थे, कि वह शापित हो जो पेड़ पर लटकाया जाए, और उसे हमारे लिए शापित ठहराया गया। उस स्वर्ग के परमेश्वर को नंगा कर दिया, उसे मारा, कूटा और उसका उपहास उड़ाया, उसके वस्त्र उतार कर उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। वहाँ पर उन्होंने रोमन राज्य के कठोर दंड के तहत उस यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया। किसी को गोली मार देना आज शर्मनाक मृत्यु नहीं गिना जाएगा। किसी के ऊपर कार चढ़ाकर उसे मार देना आज शर्मनाक मृत्यु नहीं होगी। आग में जलाकर, जल में डुबाकर मारना भी नहीं। मगर आज सबसे शर्मनाक मौत सार्वजनिक रूप से दिया गया कठोर दंड गिना जाएगा, और वैसा तब होगा जब पूरी दुनिया आप पर दोष लगाए और अपराधी ठहराए। वहाँ पूरी दुनिया ने उस मनुष्य को अपराधी मान लिया था जबकि वो निर्दोष था, और वो शत्रुओं के हाथों मारा गया। वह अपने मित्रों या अपनी व्यवस्था के आधार पर नहीं मारा गया, वरन वह शत्रु की सलीब पर चढ़ाया गया। उस जीवन के राजकुमार को मारा जो इतना मूल्यवान व्यक्ति था, जितना मूल्यवान पहले कभी न हुआ न होगा। उस यीशु मसीह को मार दिया जो अत्यंत मूल्यवान व्यक्ति था। इन बातों को दिमाग में रखिए जबकि हम आज के मामले का ढांचा खड़ा करने जा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यरूशलेम जैसे शहर में ये हुआ, जहां 2500 वर्षों या इससे भी अधिक से लोगों को इंतजार था, सैकड़ों वर्षों से, शायद मैं कुछ अधिक बता रहा हूँ, लगभग 800-900 या कुछ इतने ही वर्षों से इंतजार था। मुझे नहीं मालूम कि सुलेमान के मंदिर बनाने के बाद से कितना वक्त गुजर चुका था। मैं सोचता हूँ लगभग 800 वर्षों का समय बीता होगा, और इस सारे समय में वे लोग एक आने वाले मसीहा की प्रतीक्षा करते रहे। उस समय वे वहाँ फसह के पर्व में जमा हुए थे। जरा आप इस बात पर सोचिए, फरीसियों, सदूकियों और वहाँ जो भी थे उनके प्रमुख सब वहाँ जमा थे। परमेश्वर की उपासना करने के लिए एक बड़ी भीड़ वहाँ जमा थी। यरूशलम में वहाँ जो अत्यंत पवित्र नगर था, वहाँ प्रभु का मंदिर था, और प्रभु के अपने लोगों ने प्रभु ही को पकड़ लिया और उसे कठोरतम दंड देकर क्रूस पर चढ़ा दिया। ऐसा हो गया। अब उन चारों शब्दों को देखें, देयर यानी वहाँ, दे यानी उन्होंने, हिम यानी उसे, क्रूसीफाइड यानी सलीब दी, वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी। अब आप आज भी पवित्र शास्त्र में देख लें, आप पाएंगे कि अंग्रेजी के यही चार शब्द हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र में इनकी सत्यता छुपी है। अब देखिए कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसे समझाने के लिए मुझे तो इधर उधर से बहुत सी बातें कहनी ही पड़ेंगी, मगर पवित्र शास्त्र को इनकी व्याख्या करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये सब एकदम सच है, सच्चाई है। इसलिए पवित्र शास्त्र को जरूरत नहीं है कि उसमें इनकी व्याख्या दी जाए, जरा भी नहीं। उसे इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब सत्य है। ये चारों शब्द बड़ी सच्चाई की कड़ियां हैं। मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर इनको साफ साफ समझाने के लिए कहा जाए तो कही गई बातों से तो एक पुस्तकालय ही बन जाएगा। उन चारों शब्दों को समझाने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है, मगर अब उसकी सहायता से इसे समझें जिसने ये शब्द लिखवाए हैं। हम इन चारों शब्दों की व्याख्या करने की इस प्रकार से कोशिश करें कि लोग इन्हें समझ सकें। अब हमारे सामने क्या तथ्य उभर कर आया है? हमारे सामने पहले क्रूस है जो सर्वाधिक पवित्र नगर में दिया गया। अत्यंत धार्मिक लोग हैं, शर्मिंदगी से भरी मौत जो अत्यंत मूल्यवान व्यक्ति को दी गई है। ओह, ये कैसा विरोधाभास है मेरे प्रभु! ओह, ये कितना कलंकित है ये सब। आइए हम सबसे पहले शब्द यानी वहाँ, देयर यानी वहाँ को लें। आइए इससे पहले कि हम अभियोग लगाएं, हम इसके बारे में कुछ मिनट बातचीत करें। हम इसकी गहराई में जाकर देखें कि वे वहाँ क्या कर रहे थे, तभी हमको पता लगेगा कि मेरा अभियोग लगाना सही है या गलत। वहाँ यानी यरूशलम में वो अत्यधिक पवित्र स्थान था क्योंकि वहाँ परमेश्वर का मंदिर था। क्योंकि वहाँ मंदिर था इसलिए वो स्थान परम पवित्र गिना जाता था। सारी दुनिया से यहूदी लोग वहाँ उस एक स्थान में जमा होते थे ताकि परमेश्वर की आराधना करें। सबसे बड़ा स्थान जहाँ उपासना करी जाती थी वह यरूशलेम ही था क्योंकि वहाँ मंदिर था। जैसा कि लिखा है कि सभी मनुष्य को यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए, ठीक बात है, क्योंकि यह उपासना करने का केंद्र था। और आज आप लोगों को कहता सुनते हैं, कोई कहता है, ओ हम इन नामधारी गिरजों के बड़े भारी अधिवेशन में आए हैं, और फिर हम देखते हैं कि वेटिकन नगर है जहां पोप आदि की दीक्षा वगैरह होती है। हमें बड़ी फरक बातें सुनाई देती हैं, सुनाई पड़ता है जब कोई कहता है हमें मैथोडिस्ट के बड़े अधिवेशनों में जाना चाहिए, कोई बैप्टिस्ट अधिवेशन की बात करता है, या कोई कहता है कि हमें रोम चलना चाहिए, और ऐसे ऐसे स्थानों को लोग मसीहत का बड़ा केंद्र मानते हैं। पिछले युद्ध के समय में जब रोम का पतन हुआ था तब इन जर्मनी सिपाहियों ने, जिनके बारे में आप में से बहुत से नवयुवक जानते हैं, वे जर्मनी सिपाही वेटिकन नगर में दाखिल हो गए थे और आगे बढ़ते हुए उन्होंने अमरीकी लोगों पर गोलियां चलाई थीं। भाई फैंक, भाई रॉबर्टसन, भाई बीलर और बहुत से भाइयों को पता है, बहुत से भाई जो लड़ाई में शामिल थे उन्हें यह मालूम है। और क्या आप जानते हैं कि हमने आदेश दिए थे कि आप उस शहर वेटिकन पर गोली नहीं चला सकते? अमरीकी लोग यानी अमरीकी सिपाही अगर वहाँ खड़े हैं तो वो उनका निशाना बन सकते हैं। इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर एबे पर आप गोली चलाते हैं तो चल जाएगा, ठीक है, वहाँ प्रोटेस्टेंट लोग जमा होते हैं इसलिए उन पर गोलियां चलाना उचित ठहरेगा, मगर वेटिकन पर गोलियां नहीं चलानी है। क्योंकि मैंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट का उस रात का भाषण सुना था जो प्रसारित किया गया था, जिसे युद्ध स्थल की बात के नाम से पुकारा गया था। जब रोम का पतन हुआ तब उन्होंने कहा था, कितने शर्म की बात है क्योंकि रोम सारी मसीहत का प्रमुख था, सरगना था। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रोटेस्टेंट आदमी ऐसा कह रहा था। अतः मसीही धर्म का वह यानी यरूशलेम एक बड़ा केंद्र था, और अगर आप चाहें तो इस रोम को, अगर आप चाहें तो हम उसे यरूशलेम के से स्तर पर रख सकते हैं, जैसे यरूशलेम तब था वैसे आज ये है। अगर आप ऐसा चाहें तो आइए हम रोम को यरूशलेम की जगह रख लें, वह बाकी सबका प्रमुख है, सरगना है। यरूशलेम भी उन सब फरीसियों, सदूकियों और वहाँ की महासभा का केंद्र था, सभी लोग वहीं जाते थे और वह वास्तव में मुख्य कार्यालय था। आज के इस धार्मिक संगठनों के काल में आपको मानना होगा कि रोमन कैथोलिक चर्च सबकी माँ है, वास्तव में वो है। इसकी शुरुआत पेंतेकुस्त से हुई थी क्योंकि वहीं से शुरू होकर बाद में वे संगठन में ढले थे। अब हम प्रोटेस्टेंट तो उस गिरजे की बहनों के समान हैं। और अब हम कहेंगे कि आज वेटिकन में भी ऐसा ही है, या वहाँ यरूशलेम में जैसा था वैसा है कि सभी लोग वहाँ आराधना के लिए जाया करते थे। यीशु के समय में वे ऐसा क्यों कर रहे थे? वे ऐसा क्यों कहते थे कि सभी लोगों को यरूशलेम में उपासना करने जाना चाहिए? क्योंकि केवल एक ही जगह ऐसी होती है जहां परमेश्वर लोगों से सहभागिता करता है और वो है बलिदान के लहू के नीचे। यही वजह थी कि उन्हें यरूशलेम में आना होता था। परमेश्वर मनुष्य से लहू को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता। जब आप लहू का इनकार करते हैं तब परमेश्वर से आपके मिलने की जगह छीन ली जाती है। परमेश्वर ने अपना पहला फैसला अदन की वाटिका में यही लिया था कि मनुष्य उसकी उपासना बलि चढ़ाए लहू के साय में ही किया करेगा, और तब से वही एक जगह है जहां वह मनुष्य से मिलता रहा है। वही एकमात्र स्थान है जहां कभी भी वह किसी मनुष्य से मिला है, और एकमात्र जगह है वही जहां वह मनुष्य से आज भी मिलता है, और वो स्थान बलि चढ़ाए हुए लहू के नीचे है। आप समझे, मैं परवाह नहीं करता कि आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या प्रेस्बिटेरियन कोई भी हैं। अगर आप अपने मत भेदों को भुला सकते हैं, चाहे आप रोमन कैथोलिक वगैरह कोई भी क्यों ना हो, और बाहर वो इस बलि किए लहू के नीचे आएंगे तो परमेश्वर हम दोनों ही से वहाँ मिलेगा। ये वही जगह है जहाँ हम सभी मिल सकते हैं और उसी आधार पर सहभागिता कर सकते हैं। अगर इसके अलावा वो आपसे इसलिए ही नहीं मिलेगा कि आप केवल मेथोडिस्ट हैं, वह आपके पेंतेकोस्टल होने के कारण ही से आपसे नहीं मिलेगा। वह आपसे केवल एक शर्त पर मिलेगा, और वो शर्त है बहाया हुआ लहू। जब आपके पापों का प्रायश्चित हो चुका है और उसकी उपस्थिति में उन्हें साफ किया जा चुका है, और लहू के द्वारा ये हुआ है, और लहू सदा उसके सामने रहता है, इसीलिए वह आपको केवल बहाए गए लहू में से होकर ही देखता है। और पापों का प्रायश्चित करने के बाद आप बर्फ की तरह सफेद पवित्र बन जाते हैं, समझे, वरना जान लें कि आप उसके सामने पहुँच ही नहीं पाए, और उस हालत में आप फिर उससे सहभागिता नहीं कर सकते। यही वजह है कि आप गिरजों में बहुत सी बातों को घटित होते नहीं देख पा रहे हैं। वे लहू पर यकीन तो करते हैं, मगर वे उस रास्ते से, उस मार्ग से, उस प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते, उसे ठुकरा देते हैं जो लहू तक ले जाता है, और वो है वचन। समझे, एक ही तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर वचन को पूरा करता है। ये कहकर कि मैं एक रोमन कैथोलिक हूँ, आप कभी भी वचन को सम्मान नहीं दे सकते। मैं कैथोलिक हूँ, मैं कहता हूँ कि ऐसा हो जाए, आपके लिए वैसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंतेकोस्टल बनकर आप ऐसा नहीं कर सकते। एक तरीका है केवल जिससे आप ऐसा कर सकते हैं, और वो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसकी करुणा में होकर। ऐसा उसके यानी यीशु मसीह के बहाए लहू में होकर हो सकता है। आप कहिए, प्रभु मैं आपकी दी हुई प्रतिज्ञा के पूरा करने का दावा करता हूँ, समझे, और तब अगर आप वास्तव में उस लहू के अंदर हैं, तो वह अपना वचन पूरा करने के लिए बाध्य होगा। मगर पहले आपको उस लहू के तले आना होगा। क्या आप अब इस बात को समझ रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि वे आज चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर पाते। ताज्जुब नहीं कि आप अलौकिक बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं है कि वे इन्हें नकार देते हैं। जिन वजूहातों से उन्होंने इन्हें तब दंडनीय माना था, उन्हीं कारणों से वे इन्हें आज भी दंडनीय मानते हैं। आप जितने भी हो सकते हैं उतने ही दोषी हैं, क्योंकि केवल लहू के तले आना है। और लोगों को जो ऐसा करने का साहस करते हैं, ये क्या समझते हैं? कोई भाई जो नम्र और दीन हो और परमेश्वर के वचन को थामने का साहस कर उसे पुकारे और उसके सम्मुख जाकर अपने पापों को माने और बाकी सारे मत और सिद्धांतों को भूल जाए और वहाँ लहू के तले खड़े होकर उस वचन पर विश्वास करे, तब ऐसे मनुष्य को वे सनकी कहना चाहते हैं। ऐसे शख्स को जिस तरह से वो गिनते हैं, ऐसे शब्दों को गिरजे में कहना ठीक नहीं है, मगर मैं इसलिए कहूँगा कि आप समझ सकें। वे उसे अजीब और गरीब बेमेल व्यक्ति कहते हैं। एक प्रकार से क्या हम सभी अजीब गरीब नहीं हैं? देखिए कि एक विश्वासी गैर विश्वासी के लिए अजीब गरीब ही है, और अविश्वासी जन विश्वासी के लिए बेमेल है। तब बेमेल कौन हुआ, क्या समझे? एक व्यापारी के लिए किसान बेमेल व्यक्ति है, एक व्यापारी किसी किसान के लिए अजीब है, आप समझे। अतः फिर कौन है, छोड़िए, मैं आपसे कहता हूँ कि उद्धार किसी मनुष्य और परमेश्वर के बीच का निजी मामला है। एक व्यक्ति आज थरथराते और भय से कांपते हुए हमारा अपना उद्धार खोज रहा है, और आज रात मसीह का सेवक या एक शिक्षक के रूप में मैं और किसी बात को आधार नहीं बना रहा हूँ। मैं सभी कुछ वचन पर आधारित कर रहा हूँ। मैं और किसी भी बात पर अपनी बात टिका ही नहीं सकता। अब हमने देखा कि तब परमेश्वर केवल लहू के तले ही किसी आराधक से मिला करता था, तभी वे यरूशलेम में जमा हुए थे, और यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से दिया गया बलि का मेमना है, और आज केवल एक जगह है जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलेगा, और वो है यीशु मसीह के लहू के तले। अन्य किसी भी जगह को नकार देगा, परमेश्वर कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। आप चाहे कितना भी भावना में आए, कोई सा भी तौर तरीका सिद्धांत क्यों ना अपनाए, वह नहीं सुनेगा। कितना ही क्यों ना उछलें, हिले डुलें, कितना ही लहू आग धुएं का प्रदर्शन क्यों ना करें, कुछ भी नहीं होगा जब तक आपका जीवन वचन के तले नहीं आएगा और परमेश्वर उसकी पुष्टि नहीं कर देगा, कुछ भी नहीं होगा। तब इन बातों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यदि जीवन वचन में नहीं है तो समझें कि आप बाहर हैं। खुदा तब तक आपसे नहीं मिलेगा जब तक आप उस लहू की देखभाल के तले न आ जाएं। ये बात ठीक है। अतः आप देखिए कि पवित्र शास्त्र में हमारे पास एक यरूशलेम दिया गया है, कलीसिया में वो है। वह स्वर्गीय यरूशलेम है जहाँ परमेश्वर को परमेश्वर माना जाता है। और आज ऐसा नहीं है कि हम किसी मत या सिद्धांत या कुछ ऐसा ही लेकर यरूशलेम बनाने की कोशिश करें। मैथोडिस्ट वाले चाहते हैं कि मैथोडिस्ट के प्रधान कार्यालय को यरूशलेम बना दिया जाए। कैथोलिक रोम को यरूशलेम बनाना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ भी हमारे गिरजों के प्रमुख कार्यालय हैं, हम उन्हीं स्थानों को यरूशलेम बना देना चाहते हैं। मगर पवित्र शास्त्र बताता है कि हमारा यरूशलेम ऊपर स्वर्ग में है, जो कि सारे विश्वासियों की माता है। देखिए कि मसीह परमेश्वर के द्वारा दिया गया मेमना है। ध्यान दें कि ये बात तब कितनी उचित थी और है कि वह धरती वाला यरूशलेम समाप्त हो रहा है। ऐसा कब हुआ? उस समय तक तो वह प्रभावी था। मेमने का लहू उस क्षण तक तो काम का था, मगर सलीब दिए जाने के बाद हालात बदल गए हैं। पुराना प्रबंध और तरीका और व्यवस्था और वो बात खत्म हो गई और एक नया प्रबंध शुरू हो गया। परमेश्वर का अपना मेमना बलिवेदी पर पहुंच गया था। वह मेमना जिसे कुर्बान होना था बलिवेदी पर खड़ा था। वे लोग उसे अपराधी ठहरा रहे थे और वही सब कुछ कर रहे थे जो उन्हें करना था। ये सच है। परमेश्वर आशीषित है कि इन अंतिम दिनों में उसने उस अद्भुत स्वर्गीय प्रकाश को दिखाया, क्योंकि गिरजे आज उसी तरह के काम कर रहे हैं जैसे उन्होंने तब किए थे। इस समय तक जबकि ये नामधारी संगठित गिरजों का धर्म अपराधी गिना गया और ये साबित हो गया कि ये लोग मसीह के वचन को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, तो उस समय से ही हमें केवल वचन, शुद्ध वचन ही दिया जाने लगा है। वह पुराना फसह का मेमना चला गया और मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन से हमारा मेमना बन गया है। और जिस दिन से इन नामधारी गिरजों ने परमेश्वर के वचन को क्रूस पर चढ़ाया और उसकी जगह अपने मतों सिद्धांतों को रख दिया, उसी दिन से वचन अपने पूरे प्रभाव के साथ उतर आया है। अभी कुछ समय पूर्व ही ऐसा हुआ है। दूसरी बात पर ध्यान दें, पहले तो वहाँ देर यानी यरूशलेम, दूसरी बात उन्होंने यानी दे कौन, किन्होंने? यहूदियों ने जो उपासक थे। जरा इसके बारे में सोचिए कि आराधना या उपासना करने वाले उसी परमेश्वर को घात कर रहे थे जिसकी वे आराधना कर रहे थे और जिसके उपासक होने का वे दावा कर रहे थे। क्या आप उन याजकों सरीखे बुद्धिमान लोगों से ऐसा करने की कल्पना कर सकते हैं? वे लोग धार्मिक शिक्षा प्राप्त थे और उनके पास धार्मिक डॉक्टर्स की डिग्रियां थीं और याजक बनने के लिए उन्हें किसी विशेष गोत्र में से होना जरूरी था। उनका लेवियों में से होना अनिवार्य था। उनके पिता याजक थे, दादा याजक रहे थे, उनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा आदि सभी याजक रहे थे और उन्हें इतना समर्पित जीवन बिताना होता था कि उनके विरुद्ध एक धब्बा या बिंदु भी पाया जाने पर उन्हें पत्थरवा कर दिया जाता था। उन पर कोई दया नहीं करी जाती थी। पवित्रता, वास्तव में पवित्र थे, मगर वह पवित्रता उनकी अपनी बनाई हुई थी। उन्हें वैसा जाहिर करना पड़ता था ताकि वे अपनी कलीसिया को मुंह दिखा सकें। मगर अंदर से यीशु ने उनसे कहा था, तुम भीतर से मुर्दों की हड्डियों से भरे हुए हो। किस तरह से? आसानी से। मैं उस आदमी पर अभियोग लगा सकता हूँ जो ये जानता है कि ये वचन सत्य है और जो इस सच्चाई से समझौता करके इसे अस्वीकार करता है ताकि किसी धार्मिक संगठन में अपना चेहरा दिखा सके। परमेश्वर के वचन पर उन लोगों के प्रति, उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगाने का मुझे पूरा अधिकार है। ये ठीक बात है। उन्होंने यानी दे, उन्होंने इस शब्द पर ध्यान दीजिए, वे लोग उपासक थे जो प्रतिज्ञा पूरा होने की बाट जो रहे थे। वे मनुष्य जो वर्षों से काफी समय से इसकी राह देख रहे थे और वे बस धार्मिक शिक्षा या धर्म शास्त्र का लगातार अध्ययन करते रहते थे, मगर उन्होंने धर्म शास्त्र की शिक्षा को धार्मिक स्कूलों की शिक्षा के अनुसार बांट दिया था और उन्होंने वचन की सत्यता खो दी थी। वे लोग जो याजक थे और उस समय की सेवकाई कर रहे थे, उन्होंने वहाँ अपने प्रधान कार्यालय में, मुख्यालय में, वही लोग वहाँ उस परमेश्वर को, उस मेमने को घात कर रहे थे। एक उसी को वे लोग मार रहे थे जिसकी आराधना करने का उनका दावा था। और आज मैं मखसूस किए गए इन सेवकों के झुंड पर अभियोग लगाता हूँ। वे लोग अपने मतों और सिद्धांतों में नामधारी गिरजों के संगठनों में लोगों के लिए वे उसी परमेश्वर को क्रूस पर मार रहे हैं जिसकी सेवा करने व जिसे प्रेम करने का वे दावा करते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सेवकों पर अभियोग लगाता हूँ, उनके उन सिद्धांतों पर अभियोग लगाता हूँ जो ये दावा करते हैं कि अद्भुत चमत्कार होने के दिन बीत गए, जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम में जल द्वारा डुबकी का बपतिस्मा काफी नहीं है, ठीक नहीं है। उन किसी भी वचन के ऊपर जिसकी जगह उन्होंने मत और सिद्धांत बना लिए हैं, मैं उन पर अभियोग लगाकर उन्हें अपराधी ठहराता हूँ और प्रभु यीशु को दोबारा सलीब पर चढ़ाने के लिए कहता हूँ कि यीशु मसीह का लहू उनके हाथों पर है। लोगों के लिए वे मसीह को सलीब दे रहे हैं और उन्हें उस चीज से महरूम कर रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, और उसकी जगह वे उन्हें कुछ और दे रहे हैं। वे लोकप्रियता के लिए उन्हें गिरजों के अपने बनाए मत और सिद्धांत दे रहे हैं। वहाँ उन्होंने किन्होंने जिन्हें बेहतर जानकारी होना चाहिए थी। अगर किसी को सारी बातें ठीक ठीक मालूम होनी चाहिए थीं, तो वे सेवक गण या याजक ही थे। अगर किसी को इन बातों का वचन का बेहतर ज्ञान होना चाहिए तो वे आज के पादरी लोग ही हैं। अगर किसी को ज्ञान होना चाहिए तो वे बिशप, आर्क बिशप, सेवक, दिव्य धर्म पंडितों को ही होना चाहिए। उन्हें आम लोगों से भिन्न ज्ञान होना चाहिए, मगर उन्हें ये ज्ञान क्यों नहीं है? ओह, कैसा विरोधाभास है! आज हमारे सामने विरोधाभासों के अलावा कुछ भी नहीं है। वे लोग दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की उपासना करते हैं और जीवन के राजकुमार को मार रहे हैं। वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और आज फिर से वे वही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वचन है। वह तो केवल वचन की प्रतिछाया है और आज वह यही है, यानी वचन की प्रतिछाया। और वो कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा जन मिले जिसके द्वारा वो अपनी प्रतिछाया जाहिर कर सके। और ये लोग सभा को परमेश्वर से अलग रख रहे हैं, और अगर सभा में कुछ अच्छा घटित होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ कहा जाता है, तो ये लोग मंच से उसकी निंदा करते और कहते हैं कि यह सनकीपन है, इससे बचे रहें। ऐसा करके उन्होंने 1963 में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और अब वे उतने ही अपराधी हैं जितना उस जमाने के लोग थे। ये एक भयंकर बयान है, मगर ये सच्चाई है। ठीक ऐसा ही आज वो कर रहे हैं। इस आधार पर, मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के आधार पर, लोगों से उनके लिए वचन को छीन लेने के आधार पर, जो वे कर रहे हैं वह ठीक वैसा ही है जैसा वे तब कर रहे थे। परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा वचन का प्रकाश देकर प्रमाणित कर रहा था कि वह उसी का पुत्र है, और वो वही था जिसके लिए उनका दावा था कि वे उससे प्रेम करते हैं। वो यहोवा जिसने स्वयं को पवित्र शास्त्र के लेखों में प्रकट कर दिया था, उसके लिए परमेश्वर ने जैसा कहा था वह वैसा करेगा। उसने ठीक वैसा ही किया था और सभी कुछ उनके सामने प्रकाशित कर दिया था। मगर अपने गिरजों, अपने धार्मिक झुंडों के प्रेम के कारण उन्होंने जीवन के राजकुमार को दंडित कर दिया। मैं आज उसी समूह को अपराधी ठहराता हूँ और परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाकर उन्हें इस बात का कसूरवार ठहराता हूँ कि वे आज भी वही कर रहे हैं। यह पीढ़ी अभियोग ग्रस्त है। इब्रानियों 13:8 याद रखिए कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उन्होंने उस पर दोष कैसे लगाया? क्योंकि उनके मतों और सिद्धांतों ने उसे स्वीकार नहीं किया था, और अपने अपने हृदयों में उनके विचार भिन्न थे। क्या यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदिमस ने इस बात को भली प्रकार नहीं कहा है? हे रब्बी, हम प्रचारक, शिक्षक, फरीसी जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। देखा आपने, उन्होंने अपने एक मशहूर व्यक्ति के द्वारा उन बातों की सार्वजनिक रूप में गवाही दी थी, और इसके बाद भी अपने मतों के कारण उन्होंने मसीह को सलीब दी थी। और आज कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेरितों के काम 2:38 को और बाकी वचन को वैसे ही ना पढ़ सकता हो जैसे कि मैं पढ़ सकता हूँ। मगर उनके मतों और नामधारी गिरजों के सदस्यता पत्रों के कारण जो उनकी जेबों में पशु के चिन्ह के रूप में पड़े हैं, वे इन्हीं बातों के कारण अपने लिए यीशु मसीह को फिर से सलीब दे रहे हैं। वे उसे लोगों के सामने क्रूस पर चढ़ाते और उसी परमेश्वर की निंदा करते हैं जिसने उन अद्भुत कामों को करने का वायदा किया था। जिस प्रकार वे अपनी जाति पर दंड लाते हैं, वहाँ पर उन्होंने ये किया जो पापी नहीं थे। उन्होंने जो कि उस समय का गिरजा था, उन्होंने उस मनुष्य में दोष ढूंढा जो स्वयं वचन था। क्या ये बात ठीक है? उन्होंने उस मनुष्य में दोष निकाला जो वचन था। अब वे उस वचन में दोष निकाल रहे हैं जो मनुष्यों के द्वारा काम कर रहा है। देखिए कि आज बस उसका उल्टा हो गया है। आज पवित्र आत्मा व्यक्ति में होकर काम कर रहा है और यह परमेश्वर का प्रकटीकरण है। वे किस तरह से जान सकते थे कि वह मसीह था? इस तरह कि उसके काम साबित करते थे कि वे क्या था। उसने कहा था कि तुम में से कौन मुझ पर पापी होने का दोष लगा सकता है? क्या मैंने वैसा ही नहीं किया जैसा धर्मशास्त्र बताता है कि मैं करूंगा? कोई मुझे बताए कि मैंने क्या वे सारे चिन्ह नहीं दिखाए? क्या मैं कहीं ये दिखाने में असफल रहा कि मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही वह हूँ जिसकी प्रतिज्ञा तुमसे करी गई थी? उन्होंने कहा था, हम मूसा पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, अगर तुमने मूसा पर विश्वास किया होता तो मुझ पर भी करते। मूसा ने मेरे दिन को देखा था और इस दिन में जीने की इच्छा की थी। मूसा ने बहुत दूर से इसे नबियों में से देख लिया था, और आज तुम ठीक उसी समय में हो और उसे अस्वीकार कर रहे हो। उसने कहा था, पाखंडियों, तुम आकाश के चिन्हों को समझ सकते हो मगर समय के चिन्हों को पहचान नहीं पाते। यही बात है, समय का चिन्ह है। उन्होंने उसे क्या कहा? एक सनकी, एक पागल। हाँ, उन्होंने उस आदमी में दोष निकाला जो कि वचन था, वह स्वयं वचन था। यूहन्ना का पहला अध्याय इस बात को साबित करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वह परमेश्वर का जीव था, वचन था, क्योंकि वह अपने द्वारा परमेश्वर को जाहिर कर रहा था। और इस तरह से, इस प्रकार से वचन को समर्पित वह उसमें एकाकार था कि वह और वचन एक हो गए थे। और आज भी ऐसा ही होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन और उसकी कलीसिया एकाकार हो। जब आप व्यवहारिक रीति से उस वचन को पूरा ही अस्वीकार करते हैं तो आप उसका हिस्सा कैसे हो सकते हैं? और ऐसी हालत की वजह लोग नहीं हैं। और यही कारण है कि मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि इन लोगों को मैं भूसे का ढेर और सूखी हड्डियों वाले लोग कहकर पुकारूं। यह उन स्वार्थी नामधारी धार्मिक संगठनों के कारण है जिन्होंने लोगों के जीवनों को ऐसा बना दिया है जैसा जीवन में जी रहे हैं। उन लोगों ने सत्य को क्रूस पर चढ़ाया है और लोगों ने उसे निंदा के नाम दिए हैं, वरन उन्हें निंदा बनाया है। वे लोग इन सच्चाइयों को सनकी और पागलपन कहते हैं और नहीं जानते कि वे उसी परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं जिसकी सेवा करने वे गिरजों में जाते हैं। इसीलिए आज मैं धर्म पादरियों के इस समूह पर अभियोग लगाता हूँ। मैं उस परमेश्वर के वचन के अधिकार में यीशु मसीह के नाम में इस पीढ़ी पर अभियोग लगाता हूँ कि तुम उसे फिर से सलीब पर चढ़ा रहे हो। ध्यान दें कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर का वचन एक मनुष्य में जीवंत प्रकट हुआ। दोनों सलीबों और उनके दोष पत्रों की तुलना कीजिए। याद करिए, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं को परमेश्वर कहता है, हम इसे अपने ऊपर शासन नहीं करने देंगे। जब उन्होंने यीशु को सलीब दी तो उस सभा में उनको उस पर लगाने के लिए कौन सा दोष मिल सका था? यही कि वह स्वयं को परमेश्वर बनाता है। वो परमेश्वर था। उसने सबत को क्यों तोड़ा था? क्योंकि वह सबत का प्रभु था। उन्होंने उसे इसलिए दंड दिया क्योंकि वह स्वयं को परमेश्वर ठहराता था। वे कहते थे, तुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। अरे, हमारा प्रधान याजक है, अगर कुछ आना है तो वो हमारे याजकों के द्वारा ही आएगा। अब इसको आज के कलवरी से मिलाकर देखिए। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को ये पसंद आया कि वह अपने पुत्र को यहाँ भेजे। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का साया मरियम पर किया तो उससे एक देह बनी जो उसके उद्देश्य को पूरा कर सके, उसकी सेवा कर सके। तब परमेश्वर मसीह में आ गया। परमेश्वरत्व की पूर्णता देह सहित उसमें आकर परमेश्वर को उस रूप में जाहिर करने लगी जो वह मनुष्यों के लिए है। सारी दुनिया को ये बताने लगी कि परमेश्वर प्रत्येक जन से क्या चाहता है, उन्हें बेटे बेटियां बनाना चाहता है। उसने एक मनुष्य के द्वारा ये सब कर दिया, और सिर्फ इस वजह से कि उसने उनके धार्मिक संगठन के साथ गठबंधन नहीं किया, उन्होंने उस पर दोष लगाकर उसे सलीब पर चढ़ा दिया। अब उस कलवरी की तुलना आज से कीजिए। अपने धार्मिक संगठन के पक्षपात के कारण सलीब दी जा रही है। जिन्हें परमेश्वर का वचन और योजना का ज्ञान होना चाहिए, उन्हीं पवित्र शास्त्र के शिक्षार्थियों के मतभेद के कारण ऐसा है। इसका कारण ये भी है कि परमेश्वर एक छोटे गल्ले में थोड़े से लोगों को कहीं पर जमा करके उनके बीच खुद को जाहिर कर सकता है, प्रतिबिंबित कर सकता है। वे लोग वचन के लिए खुद को नम्र और दीन बनाते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कह सके कि परमेश्वर ने वो काम नहीं किया है। उनकी सभा उन कामों की गवाही देती है। उनके सामने वे काम हुए, वे उनका इंकार नहीं कर सकते। वे परमेश्वर के दावे का इंकार नहीं कर पाए, क्योंकि ठीक वही वचन जो उन्होंने कहा और उस पर विश्वास किया, वह वही वचन है जो उसे स्वयं सत्य प्रमाणित करता है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन को लिया जिसे स्वयं मसीहा बनकर आना था और उसे एक मनुष्य के द्वारा प्रकट करना था। उन्होंने उसे घात किया, उन्हें उससे पीछा छुड़ाना ही था, ताकि वो अपनी रीति पर चलते रहें। इसके लिए यही एकमात्र तरीका था कि वे मसीह से पीछा छुड़ा लें। और अपनी सारी शिक्षा के बावजूद उन्होंने अंधेपन और अज्ञानता में वैसा ही किया। दुनियावी दृष्टि से कहा जाए तो वे लोग चुस्त और बुद्धिमान थे। ऐसी तुलना हमने उस रात करी थी जब उस नवयुवक धनी सरदार पर वचन का प्रकाश पड़ा, तो उसने क्या किया? उसने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह तेज चुस्त व्यक्ति था। एक और चुस्त व्यक्ति पौलुस ने क्या किया? जब उस पर प्रकाश चमका, उसने उसे ग्रहण कर लिया। मसीह को जानने के लिए उसने अपना सारा ज्ञान भुला दिया। इससे उसका जीवन सुसमाचार के योग्य बन गया था। पिछले रविवार रात को यही सुसमाचार प्रचारा गया था। आज यहाँ ऐसा ही है। मान लीजिए कोई मनुष्य परमेश्वर की पुकार को अपने लिए महसूस करता है। वह किसी धार्मिक स्कूल में जाकर वहाँ के मत और सिद्धांत सीखता है, तो फिर उसे या तो उन मतों सिद्धांतों को मानना पड़ेगा या उनकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अगर वह उनकी सहभागिता छोड़ता है तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। उसे फिर कोई अपने यहाँ नहीं बुलाएगा, क्योंकि वह कभी किसी और जगह था और अब उन्हें छोड़ चुका है। और लोग सोचते हैं कि इस आदमी में कोई खराबी है और वे उसे फिर अपनी सभा में नहीं आने देते। उनकी सभा तो बस केवल ये बात देखना चाहती है कि क्या वह उसी विश्वास का है जिसकी वह सभा है। क्या उसके पास कोई सदस्यता का कार्ड है? क्या वह मेथोडिस्ट का है? क्या उसके पास कहीं और का सदस्यता पत्र है, या वननेस, या त्रिएकता, या चर्च ऑफ गॉड, या कहीं किसी और सदस्यता का कार्ड उसके पास है या नहीं? वे देखते हैं कि उसके पास पेंतेकोस्तल गिरजे का कोई पद आदि का कार्ड है। अगर उसके पास कोई परिचय पत्र होता है तो वे मानते हैं कि प्रधान कार्यालय ने उसे देखकर उसको पास कर दिया है। और ये कि उन्होंने उसे परख लिया है, उसके मस्तिष्क की जाँच कर ली है, उसकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा कर ली है, और उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की जाँच कर ली है कि वह काफी उच्च है और उनके सामने बोलने में सक्षम है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो उसे भगा देते हैं। ये सच है। मगर आप देखिए कि परमेश्वर का हाथ ऐसे मनुष्य के ऊपर है या नहीं। सभा को यह देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि प्रमुख ने, प्रभु ने उसे मखसूस किया है अथवा नहीं। मगर आज वे परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक मनुष्य परमेश्वर का बुलाया हुआ कहा जा सकता है। ऐसा तब है जब वो खुदा को अपने द्वारा प्रतिबिंबित होने दे। उसने कहा है कि जो काम मैं करता हूँ वही तुम भी करोगे। ध्यान दें कि हम कैसे अजीबो गरीब दिनों में जी रहे हैं। आज सुबह हम कह सकते हैं कि वे वही सलीब उन्हीं कारणों से उसे फिर से आज दे रहे हैं। अब देखिए कि उन्हें पता था कि सच्चाई वही है, मगर जलन और पक्षपात के कारण उन्होंने वैसा किया। यीशु ने उनसे कहा था, अगर मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम किसकी सहायता से निकालते हो? तुम ही इसका न्याय करो। देखा आपने, अगर मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। अब जैसा कि आप उन्हें यह सवाल पूछते हुए सुनते हैं कि क्या तू साबित कर सकता है कि यह परमेश्वर की सामर्थ्य से कर रहा है, मैं उस सवाल को सुनना चाहता हूँ जो उन्होंने उससे किया। वे लोग ऐसे सवाल पूछने में बहुत तेज थे। ध्यान दें कि उसने स्वयं को परमेश्वर बताया या उसके तुल्य ठहराया, और वह परमेश्वर ही था। लोग कहते थे, हम उसे अपने ऊपर शासन नहीं करने देंगे। मगर आज वही पुरानी बात फिर से कही जा रही है। वे कहते हैं कि पवित्र शास्त्र मनुष्यों ने लिखा था। हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन बिताना जरूरी नहीं है। ये पवित्र शास्त्र तो उसका वचन है, यह स्वयं परमेश्वर है। मैं कल एक आदमी से बात कर रहा था। उसने कहा कि भाई, ये बाइबल पवित्र शास्त्र किसी मनुष्य ने ही लिखी होगी। मैंने कहा, हाँ, एक आदमी ही ने लिखी है और उसका नाम हम जानते हैं, और उसका नाम है परमेश्वर। इसको अय्यूब की पुस्तक के पहले से लेकर नए नियम तक लगभग 4000 वर्षों में अलग अलग समय पर लिखा गया है, और इसकी किताबों के बीच में सैकड़ों वर्षों का अंतर है। और ये उन अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, और इसे विभिन्न स्थानों पर अलग अलग लिखा गया, मगर एक भी शब्द एक दूसरे को नहीं काटता, एक भी शब्द एक दूसरे के विरोध में या विपरीत नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई भी सामने आने का साहस करे और इसमें दिए गए वादों, प्रतिज्ञाओं को प्रभु यीशु के लहू में पूरा होते देखे। परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है, बाध्य है। मगर वे लोग ऐसा करना ही नहीं चाहते। वे आएंगे और कहेंगे, प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा वरदान दीजिए, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, मैं सोचता हूँ कि मुझे वो दान मिल गया, हालेलुया। ऐसे कभी कोई काम नहीं चलेगा। आप चाहे इसमें कितने भी मनोविज्ञान लगा लें, मगर काम नहीं चलने वाला। परमेश्वर को आपके पश्चाताप को पहले पहचानना है। परमेश्वर को ऐसा ही करना है। इस बारे में हम बहुत सी बातें कह सकते हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझ रहे हैं। अब देखिए कि वे वचन को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने देंगे। मैं कहता हूँ कि आप में से हर एक जन वापस फिरे, क्योंकि आपका बपतिस्मा गलत हुआ है। आपको कैथोलिक गिरजे के मत वाला बपतिस्मा दिया गया है। वे पूछते हैं कि ऐसा कहने वाले तुम कौन होते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। वे कहते हैं, मगर हमारा विश्वास तो ये है। मैं परवाह नहीं करता कि आपका विश्वास क्या है, मगर पवित्र शास्त्र ऐसा कह रहा है। भाई, हम तो उसके अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहते। आपको करना है तो फिर पवित्र शास्त्र के अनुसार करिए, वरना आप इसके न्याय के तले आ जाएंगे, क्योंकि लिखा है कि जो कोई इसमें से एक शब्द भी बढ़ाए या घटाए तो उसका भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा, चाहे वो सेवक, पादरी, बिशप आदि कोई भी हो। आपको इस वचन के अधिकार में, नियंत्रण में आना ही है, क्योंकि यह स्वयं परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बताता है कि यह वचन खुद ही परमेश्वर है, और वे कहते हैं कि हम इसे अपने ऊपर शासन नहीं करने देंगे। वे अपने मतों, सिद्धांतों को, नामधारी गिरजों को थामे हैं। उन छोटी छोटी बातों को वे लोग पकड़े बैठे हैं और उन पर विश्वास करते हैं जिन्हें मनुष्यों की सभा ने अपना लिया है, और उन सारी बातों को वे लोग परमेश्वर के वचन के बजाय अपना रहे हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक कातिल व्यक्ति को, बरब्बा को चुन लिया था। पहली सलीब के समय परमेश्वर के पुत्र के बदले उन्होंने कातिल को चुना था, और आज वे किसी मनुष्य की बातों को चुन रहे हैं जो कि झूठ है और मौत का रास्ता है, और वे जीवन के उस रास्ते को चुनना अस्वीकार कर रहे हैं जो कि परमेश्वर का वचन है। मैं इस पीढ़ी को अपराधी ठहराता हूँ और प्रभु के वचन में होकर उन पर अभियोग लगाता हूँ कि वे लोग गलती कर रहे हैं। वे वचन को सलीब दे रहे हैं या देने की कोशिश में हैं। पवित्र आत्मा को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। वे सभी जगह बेदारी की पुकार देते हैं। जब वचन ही लोगों में होकर काम नहीं कर सकता, तब आपको बेदारी किस तरह मिलेगी? मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे इस बात का जवाब दे। ये कैसे हो सकता है जब आप आई हुई बेदारी ही को अस्वीकार कर रहे हैं? नबी ने इनके बारे में उचित ही कहा है कि वे भक्ति का वेश भर रहे हैं। उनके अपने रस्म रिवाजों ने तब उस समय जीवन के वचन को अस्वीकार कर दिया था। उनके अपने तरीके आज उन बातों का इनकार कर रहे हैं जिनके द्वारा उन्हें बेदारी मिल सकती है। जी हाँ, उनके मत, उनके तौर तरीके बीच में आड़े आ रहे हैं। वे अपने नामधारी संगठन और सिद्धांतों को वचन के बजाय ज्यादा पसंद करते हैं। इससे परमेश्वर का वचन घात होकर लोगों के लिए प्रभावहीन बन जाता है। जब वे परमेश्वर के वचन को सजीव प्रकट होते देखते हैं, जब ऐसा होता है तो यही जाहिर होता है कि परमेश्वर ने जो कुछ करने की प्रतिज्ञा की थी वही वह कर रहा होता है, और वे लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, उससे परे हट जाते हैं, और यह निंदा करना ही है, और वे वचन को ही क्रूस पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे उसे सलीब क्यों देते हैं? वे वचन को क्रूस पर उसी तरह से घात नहीं कर सकते जिस तरह वे परमेश्वर को सलीब पर नहीं मार सकते। वे तो केवल उस देह को घात कर पाए थे जो परमेश्वर के पुत्र की देह थी, जिसमें परमेश्वर था। वे उस देह को मार सके थे, परमेश्वर को वे नहीं मार सकते, और उस देह को उस समय बलिदान चढ़ाया जाना ही था ताकि परमेश्वर के बहुत से पहले से चुने पुत्र अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। उन्हें तब ऐसा करना ही था, मगर आज वे वैसा नहीं कर सकते। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वचन स्वयं जीवित रहेगा। वे क्या कर रहे हैं? किस प्रकार उन्होंने यह अपराध किया है? प्रचारक महोदय, आपको क्या कहना है? किस प्रकार से आप अपने मुकदमे को खड़ा करना चाहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया है? वे लोग अपने मतों, सिद्धांतों के द्वारा सुसमाचार के प्रभाव को लोगों के लिए खत्म करके उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। यही सलीब देना है, यही क्रूस है कि लोग उन बड़े बड़े कब्रिस्तानों में बैठे हैं जिन्हें गिरजे व धार्मिक नामधारी संगठनों के नाम से पुकारा जाता है, और वहाँ उनके बीच मतों की रेखाएं खिंची हैं। परमेश्वर का वचन उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता क्योंकि वे उन्हीं बातों को नकार देते हैं जिनके लिए मसीह ने कहा था कि वे घटित होंगी। ये बातें उनके मतों और सिद्धांतों के द्वारा नहीं आती, और न ही यीशु का आगमन उनकी समझ के अनुसार हुआ था। वह ठीक उसी रीति से आया था जिस तरह परमेश्वर ने उसे भेजा, और वह एकदम वचनों के अनुसार आया था। इसमें क्या ताज्जुब कि यीशु ने कहा था कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। क्या आप समझ रहे हैं? ओह, उन लोगों ने वचन के प्रभाव को क्रूस पर चढ़ा दिया है। मेरे पास यहाँ वचन में से ढेर सारे पद हैं जिनमें से मैं दो या तीन पढ़ूंगा या उनका उल्लेख करूंगा। आप कहेंगे उन्होंने किस प्रकार वचन को क्रूस पर चढ़ाया है। यीशु ने कहा था कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, इब्रानियों 13:8। तब वो कहते हैं कि एक प्रकार से वो है, समझे आप, ठीक है। और यीशु ने कलीसिया को अंतिम आदेश दिया था कि सारी दुनिया में जाओ, मरकुस 16, सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार प्रचार करो और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। सारी दुनिया में जाकर सारे प्राणियों को प्रचार करना है और अभी आधी दुनिया तक भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है और लाखों लोग हर साल ऐसे मर जाते हैं जिन्होंने यीशु का नाम तक नहीं सुना होता। अतः यह अभी भी सभी के लिए आदेश है, यह परमेश्वर की आज्ञा है। सारी दुनिया में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को वचन प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा और जो विश्वास न करे वह दोषी ठहर चुका। जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे और अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। अगर वे सांपों को उठा लें और जहरीली वस्तुएं भी पी लें तो उन्हें कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और लोग कहते हैं कि ये बातें तो उस समय की पीढ़ी के लिए थीं, और ऐसा कहकर वे परमेश्वर की आज्ञा को प्रभावहीन बना देते हैं और लोगों के लिए वे वचन के प्रभाव को समाप्त कर उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं। आमीन। पिंतेकुस्त के दिन पत्रस ने कहा था और ये कथन उस कुंजी पर आधारित था जो स्वर्ग की कुंजी यीशु ने उसे कुछ समय पहले ही दी थी। यीशु ने कहा था कि जो कुछ तू यहाँ कहेगा वही मैं ऊपर स्वर्ग में करूँगा। और पिंतेकुस्त के दिन लोगों ने उससे पूछा कि पवित्र आत्मा पाने के लिए वे क्या करें। वे लोग उनकी स्थिति से आनंद मगन हो रहे थे, जेलों के व्यवहार को देख रहे थे जिनको उन्होंने पागलपन बताया था। वे लड़खड़ाती जुबान से बोल रहे थे, उछल रहे थे, गिर रहे थे और जान पड़ता था कि वे मदिरा के नशे में हैं। ये देखकर लोगों ने कहा था कि ये लोग नई मदिरा के नशे में हैं। मगर उनके बीच से एक आदमी उठ खड़ा हुआ जिसका नाम पतरस था और जिसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजी थी। उसने कहा, जैसा तुम सोच रहे हो ये मदिरा के नशे में नहीं है, अभी तो तीसरा पहर ही है, मगर यह वह बात है जिसके बारे में नबी ने कहा था। समझे आप, वह एकदम वचन पर आ गया। उसने दिखाया कि पवित्र आत्मा आज भी वचन है और परमेश्वर का वचन आज भी पवित्र आत्मा है, जैसा योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि ऐसा होगा। योएल 2:28 देखिए, परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। उस नबी को देखिए, उसकी सुनिए जो वहाँ खड़ा है, उसे देखिए, वह निडर वहाँ खड़ा उन लोगों के झुंड पर अभियोग लगा रहा है, उन्हें अपराधी ठहरा रहा है, उन पर अभियोग लगा रहा है। उसने कहा, ये वचन है, ये वही बात है जो नबी के द्वारा कही गई थी कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। वचन से ये साबित किया गया कि ये वचन है और लोग हंसे और उनका मजाक उड़ाया। वे लोग न्याय में डाले गए, उनका नगर जला दिया गया और उन्होंने एक दूसरे के बच्चों तक को खाया, और आज वे लोग सारी दुनिया में बिखेरे गए लोग हैं। इससे दिखाया गया है कि पवित्र आत्मा आज भी परमेश्वर का वचन है जो उसे प्रकट करके अनंत काल तक जीवनदायी बनाता है। यीशु मसीह व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर था। हालेलुया। वह परमेश्वर का प्रकटीकरण था, वह परमेश्वर था जो कि एक देह में था और उस समय के लिए परमेश्वर के वचन को प्रकाशित करने के लिए था, ताकि उस काल के लिए दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा को वह काल देख सके। और पवित्र आत्मा भी आज उसी रूप में है। यह लिखित वचन परमेश्वर का आत्मा है जो किसी ऐसे जन को तलाशता है जिसके द्वारा वह खुद को इस काल के लिए जाहिर कर सके, ताकि वह साबित कर सके कि वे कल आज और युगानुग एक सा है। संत यूहन्ना 14:12 कहता है कि जो काम मैं करता हूँ वह तुम भी करोगे। यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सा है। समझे, पवित्र आत्मा स्वयं को लोगों पर जाहिर करने के लिए लगातार साधन ढूंढने की कोशिश कर रहा है और लोग वो माध्यम नहीं बन सके। लोग अपने नामधारी गिरजों के बारे में ज्यादा सोचते रहे हैं, उनके अपने छोटे छोटे घोंसले हैं जिन्हें वे गिरजे कहते हैं, और इसीलिए वे प्रभु की बातें नहीं सुनते। आज भी वो वैसा ही कर रहे हैं, दोबारा उसे सलीब दे रहे हैं। पिंतेकुस्त के दिन पत्रस ने कहा था, तुम जो यरूशलम और यहूदिया के रहने वाले हो, मेरी बात सुनो कि ये लोग मदरा पिए हुए नहीं हैं। अगर तुम चुपचाप मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब क्या हैं। और फिर उसने आगे सारी बातें उनको समझाई। जब उनके हृदय छिद गए और उन्होंने ये सब सुना, तब उन्होंने कहा, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, इसको पाने के लिए हमें क्या करना है, हम मान गए हैं कि तेरी बातें ठीक हैं। उसने कहा, पश्चाताप करो और तुम में से प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों वरन उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यही था जो उन्हें करना था, पश्चाताप करना था और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना था। और आज रोमन कैथोलिक गिरजे ने उस नाम की जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधियां रख दी हैं, उस पवित्र प्रभु भोज के स्थान पर जुबान से उस पतले से बिस्कुट को खाते और पादरी स्वयं दाखरस पीते और कहा जाता है कि हम सब एक हैं। प्रभु भोज में पवित्र आत्मा के स्थान पर वह पवित्र देह शब्द का प्रयोग करते हैं और उनके पास पिता पुत्र पवित्र आत्मा का त्रि एकता वाला बपतिस्मा है जिसका वर्णन तक पवित्र शास्त्र में नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम ही तो प्रभु यीशु मसीह है और जैसा पत्रस ने कहा था कि तुम इस हटी जाति से बचकर रहो, जब ये सारी बातें इस हटी जाति को दिखाई जाती हैं, तो वे क्या करते हैं? वे उपहास उड़ाते और कहते हैं कि हमारा गिरजा ऐसी शिक्षाएं नहीं देता। ऐसी हालत में आप कसूरवार ठहरते हैं, तब आप यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के अपराधी होते हैं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ को लोगों से अलग करते हैं। आप वचन ही को उन लोगों के लिए घात करते और अपनी सभा के साथ दंड के भागी होते हैं। यह एक प्रकार से उनको मौत के फंदे में फंसाना है। जैसा कि मैंने पिछले रविवार उस सेवक के बारे में कहा था, वह मार्टिन लूथर किंग के बारे में था जिसके साथ मूल्यवान लोग हैं, वह उन्हें ठीक मृत्यु के फंदे में ले जा रहा है। काश कोई आदमी को समझा सकता। मैं चाहता हूं कि उससे बात करूं। केवल एक स्कूल को ऊपर उठाने की गणनाएं हैं, हिसाब किताब है, समझे? इसमें बड़ा फर्क है। या खुदा, क्या लोगों के पास इतनी समझ नहीं है कि वे केवल अपनी नस्ल का व्यक्ति होने के कारण उसके पीछे चल रहे हैं? जो भी हो, वो लोग दोषी और मृतप्राय हैं। राष्ट्र ने उनको अधिकार दिए हैं। उनसे कहा गया था कि इसका विरोध मत करना, मत करना। क्या होगा अगर कोई कहे कि सभी आयरिशवासी, जर्मनवासी और दूसरे इस राष्ट्र से अलग हो जाएं? मगर ऐसी पुकारों का मसीह लोगों पर कुछ असर ना होगा, वे तो ऐसे ही चलते रहेंगे। और वो मनुष्य एक मसीही है और एक सेवक होने के नाते उसे लोगों को उसके विरुद्ध क्रांति करने के लिए उनका नेतृत्व नहीं करना चाहिए। यह कदम लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाएगा और इससे एक नई क्रांति उभरेगी। ऐसा करना शर्म की बात है। ठीक यही बात आज हो रही है, एकदम वही बात फिर से हो रही है। ये सच है, समझे? आज लोग सच्चाई को किस नजर से देखते हैं और जान लेते हैं कि सत्य यही है, मगर वे कहते हैं कि हमारे गिरजे का कोई दूसरा ही विश्वास है, हमारे पास दूसरा तरीका है, मगर वो सही तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। अब वो ऐसा नहीं करेंगे? ओह, तब वो क्या करेंगे? सैकड़ों बातों में से इसी एक बात पर हम जितनी शीघ्रता से विचार कर सकते हैं करेंगे। अब दूसरी सलीब को देखें। अगर कोई मनुष्य वचन के बजाय पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक मत सिद्धांत को ग्रहण करता है, इन उपाधियों को उसके नाम के बदले ले लेता है, तो वह लोगों के प्रति क्या करता है? वह वचन के प्रभाव को लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ाता है। जब वो ये कहता है कि मरकुस 16 अध्याय तो केवल उसी समय के लोगों के लिए था और परमेश्वर ने खुद वहाँ कहा था, यीशु ने उनसे बातें करते समय कहा था, सारी दुनिया में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, वह जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा और जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा और उन्हें ये चिन्ह होंगे। किन के लिए यह है? हर एक देश, हर एक जाति, हर एक जुबान, हर एक नस्ल, सारे लोगों के लिए ये एक सा सुसमाचार है और जो विश्वास करें उनमें ये चिन्ह होंगे। जब कोई मनुष्य पवित्र शास्त्र में से इन बातों को हटाने की कोशिश करता है, तो वह सुसमाचार के प्रभाव को लोगों, सभा के लिए क्रूस पर चढ़ाता है। अतः मैं यीशु मसीह के नाम में तुम पर अभियोग लगाता हूँ कि तुम प्रभु का कत्ल करने के अपराधी हो। गिरजे ने उससे घृणा करी, वह उनका ही परमेश्वर था। उन्होंने उससे नफरत करी और इनकार किया कि वह उनका मसीहा है। नहीं श्रीमान, वे उस जैसा मसीहा नहीं चाहते थे। और आज गिरजे यही सब कर रहे हैं, वे वचन का इनकार करते हैं। वे उसे नहीं चाहते क्योंकि जो कुछ उनके सिद्धांतों के द्वारा विश्वास करना उन्हें सिखाया गया है, वचन उन बातों के विरोध में है। और वचन मसीहा है। आप इसका विश्वास करते हैं? तब वचन का प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब मसीह है। वही पवित्र आत्मा है जो हमारे बीच में है। वह स्वयं को प्रतिबिंबित कर रहा है और कोशिश करता है कि कहीं पर भी उसे चिराग मिल जाए जिसके अंदर से होकर वो प्रकाश दे सके। ऐसा चिराग जिसमें मतों, सिद्धांतों का धुआं ना हो और जिसमें से उसका प्रकाश प्रकट हो सके। आपको याद है, वे पांच मूर्ख कुंवारियां जाकर अपने दीपकों को साफ करने व जलाने की चेष्टा करने लगी थीं, मगर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। अतः जब ये मेथोडिस्ट, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा पाने की चेष्टा करेंगे, तो आप जान लें कि वह उन्हें नहीं मिलेगा। चाहे वे अन्य भाषाएं बोलें, ऊपर नीचे उछलें, कूदें, मगर क्या होगा? देखिए, ये समय का चिन्ह है कि उसका समय समाप्त हो गया है। हम अंत तक आ पहुंचे हैं। किसी भी समय कलीसिया इस ललकार को सुन सकती है कि ऊपर स्वर्ग में चले आओ। सारी बातें ठीक क्रमानुसार पूरी होती जा रही हैं। पवित्र आत्मा उनके द्वारा, जिनके द्वारा वह काम कर सकता है, यीशु मसीह को एक सच्चाई के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वह स्वयं को प्रमाणित कर रहा है। वह नीचे धरती पर आया, उसका चित्र खींचा, चित्र दिखाया गया है। वह चिन्ह दिखा रहा है, बातचीत कर रहा है, और जो उसने कहा था कि वो करेगा, ठीक वैसा ही कर रहा है। वह ठीक वैसे ही काम कर रहा है जिनको करने की बात वचन में कही गई है। ये बातें किसी मत सिद्धांत या किसी मनुष्य के सोचे समझे विचारों के अनुसार नहीं हो रही हैं। ये लहू, आग, धुएं और इसी तरह की चीजों की काल्पनिक सनसनाहट नहीं है, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा मसीही गवाही है, प्रमाण है। बहुत सी नकलें और बहुत से नकलची आदि यहाँ हैं, लेकिन इनसे तो सच्चा वचन और भी अच्छी तरह से चमकता है। वे लोग खुद देखें जो आत्मिक हैं और जो ठीक और गलत की परख कर सकते हैं। उन्होंने उसका इनकार किया, अपने मसीहा का इनकार किया और कहा हम उसे नहीं चाहते। आज भी वे लोग वैसा ही कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे वहाँ जाकर उन लोगों के झुंड में उन्हीं की तरह से व्यवहार करना है तो मुझे वह सब नहीं चाहिए। ठीक है, तब वो सब आपको मिलेगा भी नहीं। बस ठीक है, समझे आप, वही हालत आज है। हालांकि मसीह को उचित रूप से साबित करके उसकी पहचान दी गई थी, उन्होंने उसे नहीं स्वीकारा, वरन उससे नफरत करी। ऐसा क्यों था? उसने उनके पादरी गणों को सांपों का झुंड कहा था। उसने कहा था तुम और कुछ नहीं, बस चूना पुती हुई कब्रें हो। बाहर से तो तुम सफेद चोगे पहने हुए सुंदर दिखाई देते हो, मगर भीतर से मुर्दों की हड्डियों से भरे हो। उसने उनके व्यंगों का कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने कहा मामूली सा गलीली व्यक्ति है, ये तो एक बढ़ई का लड़का है, मगर उसने कुछ प्रतिरोध नहीं किया। यूहन्ना ने जो उसके आगे आगे आया था कहा, और उसने भी उनसे कोई समझौता नहीं किया था। उसने कहा मत कहो कि इब्राहिम तुम्हारा पिता है या तुम इब्राहिम की संतान हो। परमेश्वर तो इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है और हर वो पेड़ जो फल नहीं लाता काट डाला जाता और आग में डाल दिया जाता है। जी हाँ, परमेश्वर अपने वचन के बारे में बहुत सख्त, पक्का और कठोर है। जी हाँ श्रीमान, ध्यान दें कि यीशु पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रमाणित किया गया था। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर की ओर से यीशु की पहचान दी गई थी कि वही मसीहा था। क्या ये बात सच है? कुछ ही क्षणों में हम पतरस के द्वारा लगाए गए अभियोग को देखेंगे कि यह बात ठीक है या नहीं। उसकी पूरी तरह से पहचान दी गई थी कि वह स्वयं परमेश्वर था, जो कि एक मनुष्य के द्वारा प्रकट हुआ था, जिसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया। ये बात ठीक है। हालांकि पूरी रीति से उसकी पहचान दी गई थी और प्रतिज्ञा के वचन को जीवन प्रकट करके बताया गया था कि वही मसीहा था। मूसा ने कहा था कि जब वो मसीहा आएगा तो वह एक नबी होगा और यह बातें होंगी। वह स्त्री जो उसे कुएं पर मिली थी कितनी गिरी और गंदी हालत में थी। यह किस बात का प्रतीक है? कि परमेश्वर इन अंत के दिनों में बहिष्कृत और त्यागे हुए लोगों को अपनी ओर खींच लेगा। याद करिए कि पिछली रात या उससे पहले उस दिन मैंने विवाह के भोज पर वचन प्रचार किया था। उसने कहा था कि मैंने विवाह भोज की कितनी तैयारी कर ली है और उन सारे लोगों को बुलाया, मगर उन सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाया और नहीं आए। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे हमारे मत और सिद्धांतों की समाप्ति होती है। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी एक विवाहित पत्नी है, वह मुझे आने नहीं देगी। मेरा विवाह यहाँ एक नामधारी गिरजे से हो चुका है। मेरी माँ मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या कैथोलिक है, उन्हीं के कारण मैं इन बातों को नहीं मान सकता। उसने कहा था तुम नहीं आते हो और मेरे तैयार भोजन को खाना नहीं चाहते हो। जाओ और जाकर बुरे से बुरे लोगों को, वैश्याओं को, व्यभिचारी लोगों को, शराबियों को, सभी को जबरन ले आओ, उन्हें यहाँ ले आओ और मैं उन्हें अपनी सामर्थ दूंगा। मैंने भोजन तैयार कर लिया है और मेरे नियोताहारी नहीं आए। मेरी मेज तैयार है और किसी न किसी को तो मुझे बुलाना ही है। वे नहीं आए। ये उन यहूदियों का प्रतीक था जिन्हें दोषी पाया गया था। आज के बारे में क्या विचार है? मैं प्रेसबिटेरियन गिरजे का सदस्य हूँ। मैं लूथरन, मैं वननेस, मैं टूनेस, मैं ये, मैं वह, मैं नहीं आ सकता। यही बात है, तब आप वहाँ नहीं होंगे। ठीक, यही बात जो है यीशु जो कह रहा है ठीक है। वह पूरी तरह से प्रकट किया गया मसीहा था, पूरी तरह से जीवंत प्रकट किया गया वचन था जिसकी प्रतिज्ञा करी गई थी। परमेश्वर ने वचन में प्रतिज्ञा दी थी कि मसीहा आकर क्या करेगा और वह उसी वचनानुसार वहां आकर उस समय खड़ा था। उसने उनसे कहा था कहो मैं कहां असफल रहा? अगर तुम मुझ पर मनुष्य होने के नाते विश्वास नहीं कर सकते तो मेरे कामों पर तो विश्वास करो जो मैं करता हूं, क्योंकि वे गवाही देते हैं कि मैं कौन हूं। मेरे काम यही कहते हैं कि मैं मसीहा हूं। तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो क्योंकि वहाँ यूसुफ है और मेरा जन्म छोटी सी उस झोपड़ी में हुआ था और मेरा पालने वाला दुनियावी पिता एक बढ़ई है। जब वह गलील में आया तो वहाँ बहुत कुछ करना चाहता था, मगर लोगों ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है, कौन है? क्या ये वही मनुष्य नहीं जिसके भाई आदि यहाँ रहते हैं? क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? क्या इसकी माँ का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ नहीं है? इस तरह के लड़के को तुम कहाँ से पकड़ लाए हो? इसने किस विद्यालय से शिक्षा पाई है? इसके पास तो सहभागिता करने का कोई परिचय कार्ड भी नहीं है। इसके पास कोई योग्यता के कागजात नहीं है। इस प्रकार के लड़के को तुम कहाँ से पकड़ के लाए हो? और पवित्र शास्त्र बताता है कि ऐसी बातों से उसके दिल को चोट पहुँची। उसने कहा कि बहुत से बड़े बड़े काम वो गलील में नहीं दिखा पाया और वह वहाँ से मुड़कर चला गया। उसने कहा था कि नबी कभी भी अपने देश में आदर सम्मान नहीं पाता। समझे आप, अपने ही देश में आदर नहीं पाता। ध्यान दीजिए, यहाँ वो मसीहा था जो पूरी तरह से जीवंत रूप में प्रकट किया गया था। उसने अपने कामों के लिए अपनी कोई प्रशंसा नहीं करवाई। उसने कहा, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वरन वही करता हूँ जो पिता को करते देखता हूँ। और उसने उन्हें ललकारा कि देखें, वो मसीहा है नहीं। और उस निम्न स्त्री, बदनाम स्त्री को देखिए, उसने उसे पहचान लिया। वह समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, वह नैतिक रूप से गलत थी। वास्तव में ऐसा ही था, इसको कोई ठीक नहीं बताएगा। परमेश्वर की व्यवस्था उसे दोषी ठहरा रही थी। वह नैतिक रूप से गलत थी, मगर परमेश्वर आपका न्याय ये देखकर नहीं करता कि आप क्या हैं। वह ये नहीं देखता कि आप कितने बड़े या कितने छोटे हैं। वह तो आपके दिल की जांच करता है कि आप क्या होना चाहते हैं। और वह स्त्री उन बातों को जो उसके सामने थी स्वीकार करना नहीं चाहती थी, उसकी ऐसी ही इच्छा थी। इससे कुछ मतलब नहीं कि वह अब कैसी स्थिति में थी, वह प्रभु के पास आने को तैयार थी। मनुष्य तो बाहरी व्यक्तित्व को देखते हैं, परमेश्वर दिल देखता है। परमेश्वर दिल देखता है। कोई अंतर नहीं कि वह उस समय क्या थी। जब उस पर ज्योति चमकी तो उसने सब कुछ ठीक कर दिया। उसने अनंत जीवन के रस को थाम लिया था। हे प्रभु, ये बात मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। समझे, ये जानना कि सच्चाई यही है कितनी बड़ी बात है। मैं इसी में बना रहूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर मेरी ओर से खड़ा होगा और मेरी आवाज इन मैग्नेटिक टेपों के अंदर होकर परमेश्वर के महान निकट समय में गूंजती रहेगी। ये आवाज अंतिम दिन इस पीढ़ी पर दोष लगाएगी, क्योंकि ये आज जो मैग्नेटिक टेप पर है उस समय अनंत टेप पर होगी। ये सच है। इस पीढ़ी के प्रचारकों को दंडित करेगी जो भक्ति का वेश भरते हैं मगर वचन की शक्ति और सामर्थ्य का इंकार करते हैं और उसके उस जीवंत प्रकट होने का इंकार करते हैं, जबकि ये बात जीवंत प्रकट कर दी गई है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा उन पर अभियोग लगाता हूँ। अति शीघ्र मुझे एक और वायदे पर आना है, क्योंकि हमारे पास बस 15 मिनट का समय बचा है। वहाँ उन्होंने क्या किया? ओह, सलीब दी। उसे उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया। तीसरी बात है, उन्होंने उसे परमेश्वर के वायदा किए वचन के प्रकटीकरण को पहचान कर सलीब नहीं दी। उस मनुष्य को उन्होंने क्यों क्रूस पर चढ़ाया? क्या आप सोच सकते हैं? एक क्षण के लिए हम पीछे जाकर देखें। उस तरह के मनुष्य को क्यों वे लोग सलीब दे रहे हैं? मैंने एक बार एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था ए प्रिंस ऑफ द हाउस ऑफ डेविड, दाऊद के घराने का एक राजकुमार। इसको डॉक्टर इंग्राहम ने लिखा था। यह नाटक के रूप में लिखी गई एक अद्भुत पुस्तक है। किसी पुराने लेखों में से ली गई सच्चाई पर यह आधारित है और आधी सत्य है। इसमें एक स्त्री एडना का जिक्र है। यह लड़की मिस्र के कैरो नगर से फिलिस्तीन देश को गई थी। मैं सोचता हूँ कि यह अपनी शिक्षा पूरी करने वहाँ गई थी। मसीह के समय में ये वहाँ थी और उसे अपने पिता को वो सारी बातें लिखी थी। यह अच्छा होगा कि आप उस पुस्तक को पढ़ें, वह एक अच्छी किताब है। प्रिंस ऑफ द हाउस ऑफ डेविड पुस्तक के लेखक वही हैं जिन्होंने पिलर ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है। इसी में से सामग्री लेकर सिसिल डिमेलो ने 10 कमांडमेंट्स नामक फिल्म की रचना करी थी। हम पाते हैं कि इस पुस्तक में एडिना अपने पत्र में कहती है, क्रूस दिए जाने वाले दिन मरियम मगदलीनी वहाँ थी। ये वही थी जिसमें से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था और यह दौड़कर भीड़ में लोगों के पास गई और उनसे पूछा, इसने क्या किया है, इसने क्या कसूर किया है? यही ना कि केवल बीमारों को चंगा किया है और उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया है जो गुलामी में थे। इसने अच्छे कामों के सिवाय और क्या किया है, कोई मुझे बताए। और वही मैदान पर सबके सामने किसी ने उसको चांटा मारा और कहा, क्या तुम लोग अपने याजक से बढ़कर इस मूर्ख स्त्री की बात पर विश्वास करोगे? देखा आपने, यही बात है। समझे, उसने क्या किया था? उसने कुछ भी नहीं किया था। क्यों उन्होंने उसे सलीब दी? क्यों? क्योंकि क्यों उन्होंने उसे पहचाना नहीं था कि वो कौन था। आज भी ठीक यही बात है। आज के प्रचारक और शिक्षक और हमारे आधुनिक धार्मिक शिक्षकों ने यही किया है। उन्होंने लोगों को इतने विश्वास में ले लिया है कि वे इन बातों को जादू टोना या शैतानी विद्या, मानसिक सम्मोहन, दिमाग पढ़ना, कोई षड्यंत्र या कोई चाल समझते हैं। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि यह तो आज के लिए परमेश्वर के वचन का जीवन प्रकट होना है। यह अंत समय का चिन्ह है और गिरजों की हालत यह है कि अगर आप उनके धार्मिक संगठन के सदस्य नहीं हैं, तो वे कहेंगे ये तो बनाई गई बातें हैं, ये तो धोखा है। यहाँ इनको अमुक व्यक्ति को देखिए, ऐसा वे कहते हैं, मगर एक बार भी सच्ची बात को वे लोग धोखा साबित करके तो दिखाएं। एक बार वो ये प्रमाणित करें कि ये गलत है। वे ऐसा नहीं कर सकते। ये कभी भी गलत नहीं था और कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, देखा। मगर वे ये कहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ओ अगर ये किसी बड़े जाने पहचाने व्यक्ति के द्वारा होती तो मान लेते, मगर ये तो छोटे से झुंड में हुई है ये बात, जिसे पहले से ही बाहर निकाल दिया गया है। भाई उन लोगों को तो हमने अपने गिरजे ही से बाहर निकाला हुआ है। ये लोग तो हमारे गिरजे में आया करते थे, समझा। मगर यहाँ उन्होंने कभी इस बात को कभी उस बात को गलत बताया, और आप देखिए कि अब उन्होंने यहाँ से अपना तामझाम हटा लिया है। वे क्या हैं, कौन हैं, बेकार हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता। अरे वो लोग तो पतरस, याकूब, यहोन्ना के बारे में भी ऐसा ही कह सकते थे और कहते भी थे कि वे अज्ञानी और बिना पढ़े लिखे मनुष्य हैं। मगर उन्हें एक बात पर ध्यान देना पड़ा था, कुछ ना कुछ तो उन चेलों के साथ उस समय में बदलाव जरूर आया था। वे यीशु के संग रहे थे, इसी बात ने तो सारा अंतर कर दिया था, आप समझे। उन्होंने उसे इस कारण घात किया क्योंकि वे नहीं पहचान पाए थे कि वह कौन था। वे इस बात को नहीं जानते थे कि परमेश्वर के वचन जो व्यवस्था में दिया गया था, उस समय वहाँ उन वचनों की जीवंत पहचान या प्रकाशन बंद हो चुका था। एक समय था जब लिखित वचन का प्रकाशन था, एक समय तक उस व्यवस्था के कानूनों आदि बातों का मानना ठीक था, मगर वही व्यवस्था जिसे वो मानते थे कुछ कहती थी। वह उनसे इशारा कर रही थी कि एक समय आएगा जब मसीह आएगा और वह इसी यीशु की तरह का मनुष्य होगा। मगर उन लोगों ने व्यवस्था का एक भाग तो माना, मगर दूसरा छोड़ दिया। और ठीक वैसी ही बात आज वो फिर कर रहे हैं। उनके पास एक गिरजा है और वे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हमें सब बातों पर यकीन है, मगर वे उस समय का इंकार कर देते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। इससे वो पुरानी कहावत फिर से याद आती है, मनुष्य सदा परमेश्वर के उन कामों की प्रशंसा करता है जो उसने पीछे किए हैं, और यह आशा भी करता है कि भविष्य में क्या करने वाला है, मगर उसे नकार या नजरअंदाज कर देता है जो वो वर्तमान में कर रहा है। इस प्रकार करने से वह दंड का भागी बन जाता है, आप समझे। वे सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत महान और अद्भुत है। वह क्या करने जा रहा है, वह आने वाला है, दुल्हन उठाई जाएगी और किसी दिन वो अपने स्वर्गीय घर को जाएगी। मगर वे लोग उन चिन्हों और अद्भुत कामों को स्वीकार कर देते हैं जो ठीक इस समय दिखाए जा रहे हैं, जिनके बारे में वचन कहता है कि वह उन्हें करेगा, और इस तरह लोग सारे मामले में चूक जाते हैं। यीशु ने कहा था कि अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गढ़े में ही गिर जाएंगे। बस परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि इन अंतिम दिनों में वो हमारी आंखें खोल दे, ठीक है। आज फिर वे लोग वैसा ही कर रहे हैं, वे इन बातों का इंकार करते और आज उसी परमेश्वर को सलीब पर चढ़ाते हैं क्योंकि वे उसे पहचानते नहीं हैं। वैसे ही आज वे उसका इंकार कर रहे हैं। आज जो वो कर रहे हैं उन बातों के द्वारा वे उसका इंकार कर रहे हैं। वह एकदम मसीह को दोबारा सलीब पर तो नहीं चढ़ा रहे हैं, मगर वे आज पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। और वे पवित्र आत्मा की निंदा किस प्रकार कर रहे हैं, वहाँ पर उन दिनों उन्होंने किस तरह से निंदा करी थी, तब वे पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर पाए थे क्योंकि तब तक वह उतरा ही नहीं था। तब उन्होंने यीशु को बालजबूब कहा था, उसे बालजबूब कहा था क्योंकि वह उनके हृदयों के गुप्त भेद व बातें जान लिया करता था। वे कहते थे कि यह शैतान है, दूसरे शब्दों में यह भावी बताने वाला है, वह भावी बताने वाली विद्या के द्वारा ये सब करता है, वह और कुछ नहीं बस शैतान है। देखिए कि पिछले 400 वर्षों में उनके बीच कोई नबी नहीं हुआ था और वे बिना नबी वाले माहौल में पलकर बड़े हुए थे, समझे। उनके पास उनकी व्यवस्था थी, उन्होंने कहा वह बीलजबूब है, और यीशु ने कहा मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा कर दूंगा, मगर जब पवित्र आत्मा आएगा, अब इस पर ध्यान दीजिए, जब वो आएगा तो उसके विरुद्ध कहा गया एक शब्द भी क्षमा न किया जाएगा। याद रखिए कि किसी भी रीति से, किसी भी तरह, कोई भी दया, किसी भी तरह से वो क्षमा नहीं किया जा सकता। जब आप परमेश्वर के आत्मा की निंदा करते हैं जो कि परमेश्वर के वचन को जीवंत प्रकट करता है, देखिए कि वचन बताता है कि आत्मा वचन को जीवंत बनाता है, और अगर आप निंदा करते हैं तो ऐसा करके उसे आप अशुद्ध बताते हैं, तो जान लीजिए कि आपने दया और न्याय के बीच की रेखा पार कर दी है और इसके लिए आपको कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि मैं इस पीढ़ी पर प्रकट किए हुए परमेश्वर के पुत्र की निंदा करने और उसे सलीब पर चढ़ाने का अभियोग लगा रहा हूँ। सारे नबियों के लिए उनके द्वारा उसने ये वायदा किया था कि मसीह अंत के समय में आएगा। ये वैसे ही होगा जैसे नूह के दिनों में था और जैसे सदोम के दिनों में था। निंदा के द्वारा वे लोगों के प्रति परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस दे रहे हैं। वह जीवंत प्रकट किया हुआ वचन है, इसके खिलाफ कहा गया एक शब्द भी कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। अब ऐसा है तब आप क्या करने जा रहे हैं? आपका आधार क्या है? वे लोग तो अपराधी ठहर चुके हैं, बस परमेश्वर के न्याय के उंडे ले जाने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह उन्हें चूर चूर कर डालेगा। परमेश्वर के जीवन प्रकट किए हुए वचन से अधिक उन्हें मनुष्यों के बनाए नामधारी धार्मिक गिरजे व उनके मत और सिद्धांत प्रिय लगते हैं। इस पीढ़ी के ये लोग कैसे हैं? ओह, चाहता हूँ कि इस बारे में कहने के लिए काश मेरे पास बहुत लंबा समय होता। इस पीढ़ी के लोग, ये पीढ़ी, ये तो परमेश्वर के प्रकाशन को ठुकरा रही है, मगर हम तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पर प्रेरित चले थे। यह ठीक बात है। आप कहते हैं कि भाई दूसरे भी ऐसा ही कहते हैं, परमेश्वर इसकी पुष्टि करता है। यीशु ने कहा था, अगर ये काम मेरी गवाही नहीं देते तो कह दो कि ये बातें मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, मगर काम खुद बता रहे हैं। अच्छा हो कि तुम कामों पर तो विश्वास करो, समझे, क्योंकि समय आ पहुंचा है। यीशु ने कहा था कि सांझ को तो तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आज आकाश लाल व धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। अगर तुमने परमेश्वर को जाना होता तो मेरे दिन को भी जानते। और उन्होंने उससे कहा, तू अपने आप को बहुत कुछ बताता है, तू खुद को परमेश्वर बनाता है। और उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। और आज पवित्र आत्मा कोई तीसरा व्यक्तित्व नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर है जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मानव देह में प्रकट हुआ था, ताकि उस पवित्र देह में से वह स्वयं को प्रतिबिंबित कर सके। और उन्होंने उसी देहधारी हुए वचन को क्रूस पर चढ़ा दिया था। क्या आप समझ रहे हैं? आज मसीह को वे लोग सलीब देंगे जो जीवंत प्रकट हुए परमेश्वर के पुत्र का इनकार करते हैं और लोगों को भरमाते हैं। वे उन बातों को गलत बताते हैं जो उसने कही हैं कि इन दिनों में उसके वचन के द्वारा घटित होंगी। क्या आप समझे? यदि वह वही परमेश्वर का पुत्र है तो वचन फिर से वैसे ही जीवंत प्रकट होगा, क्योंकि यूहन्ना 14:12 में उसने कहा है कि जो काम मैं करता हूँ वह तुम भी करोगे। इब्रानियों 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। यूहन्ना 15:5 बताता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो वह तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। जी हाँ श्रीमान, याद रखिए कि जिन्होंने उसे सलीब दी थी वे बहुत धार्मिक लोग थे, वे बाहरी लोग नहीं थे, वे उस समय के धार्मिक लोग थे। और आज जो ऐसा कर रहे हैं वे भी धार्मिक लोग हैं, वही सलीब और वही हालात आज हैं। जल्दी से देखें, वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी, तब वास्तव में ऐसा हुआ, तब ऐसा करके वे परमेश्वर के प्रकट किए वचन का इंकार कर रहे थे। वे अपने मतों को वचन के बजाय स्वीकार कर रहे थे। क्या ऐसा ही है जो वो आज भी कर रहे हैं? एकदम वैसा ही वे आज कर रहे हैं। वह वचन था और उन्होंने वचन को अस्वीकार कर दिया। यही वो बात है जिसको मैं नहीं चाहता कि आप नजरअंदाज कर दें, उसमें चूक जाएं। वह वचन था और जब उन्होंने उसे अस्वीकार किया तो उन्होंने वचन को अस्वीकार कर दिया, और जब उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया तब अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और ऐसा ही उन्होंने आज किया है कि परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया है, और उन्होंने अपने मतों को स्वीकार करके सार्वजनिक रूप से अपनी सभा के सामने पवित्र आत्मा के कामों को क्रूस पर चढ़ा दिया है। वे अपराधी हैं और मैं यीशु मसीह के नाम में उन पर अभियोग लगाता हूँ। 15 वर्षों से मैं यीशु मसीह को इस धरती पर चलते फिरते देख रहा हूँ और वे लोग आज भी अपने मतों को थामे बैठे हैं। वे अपराधी हैं, कसूरवार हैं। वे वचन को लेकर सारे गिरजों को वचन के द्वारा एक साथ जमा करके पेंतेकोस्तल वे अन्य सभी को संग लेकर एक भाईचारे वाला बड़ा संघ बना सकते थे। ऐसा करने के बजाय उन्होंने वचन को अस्वीकार किया, उसको ठुकरा दिया, उसका मजाक उड़ाया और सभी तरह से उसकी निंदा करी। और अब वे शैतान की एक योजना के द्वारा गिरजों के महासंघ में जमा हो रहे हैं और कहते हैं कि अब हम जाकर तेल खरीदेंगे। अब उन लोगों को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया है। वे यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के दोषी हैं। आपको सारी बातें परमेश्वर के हिसाब से माननी होती हैं। आपका अपना हिसाब काम नहीं करता, आप समझ गए? उन्होंने अपने मतों के कारण परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया था और आज भी वे वैसा ही कर रहे हैं। वह खुद वचन था। यूहन्ना एक अध्याय यही बताता है और इब्रानियों 13:8 कहता है वह कल आज और युगान युग एक सा है। अब वे दोबारा उसे सलीब पर चढ़ा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि वो लोग ऐसा ही करेंगे? कितने लोग जरा उस वचन को पढ़ना चाहेंगे? क्या आप मुझे 15 मिनट और दे सकेंगे? ठीक है, आइए हम पवित्र शास्त्र में से निकालें। दोबारा क्रूस पर चढ़ाया, आइए आइए हम इब्रानियों 6 अध्याय में से थोड़ा सा पढ़ें। इब्रानियों 6 में से पढ़ें और देखें कि क्या ऐसा किया जा सकता है। क्या हम परमेश्वर के पुत्र को फिर से सलीब दे सकते हैं? आप कहेंगे कि आप उसे दोबारा सलीब पर नहीं चढ़ा सकते। हम देखेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्या ये बात ठीक है? इब्रानियों 6:1 में से पढ़ें। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। और अगर परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। समझे आप? पौलुस चाहता है कि हम जान लें कि ये सारी बातें बहुत अधिक जरूरी हैं। बपतिस्मे, हाथ रखने, मुर्दों के जी उठने, उसकी दूसरी आमद आदि बहुत जरूरी हैं। ये सारी चीजें अनंत हैं और पूर्ण रूप से आवश्यक हैं और सच हैं। अब ध्यान दीजिए,
फॉर इट इज इम्पॉसिबल,
क्योंकि यह असंभव है। इसको मेरे साथ पढ़िए, अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ें। केवल एक पद 4 को पढ़ें।
फॉर इट इज इम्पॉसिबल,
क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, अगर वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अब क्या ये मेरी अपनी बात है या उसका वचन है? एक मनुष्य को जब प्रभु संबंधी ज्ञान मिलता है, याद रखना कि उन लोगों को उसका ज्ञान नहीं मिला था, वे तो किनारे किनारे चलने वाले विश्वासी थे। एक बार जब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान मिल जाता है, आपको उसे पढ़कर और देखकर ये ज्ञान मिलना है और फिर आप उसे अस्वीकार कर दें, तो फिर कभी भी आपको बचाना अनहोना है। क्या आपने इसे पढ़ा, समझा? आपको सत्य का ज्ञान मिला, बस आपको उसकी समझ मिली, जानकारी मिली, उसे आपने ग्रहण कभी नहीं किया। ये उन्हीं विश्वासियों की सी बात है जो बाहर आए थे मिस्र से। यह उसी तरह की यात्रा का नमूना है। यह तीसरा निर्गमन उन्हीं लोगों का नमूना है। देखें, देखिए, पीछे देखें। मैं आपको जरा देर में कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे इस तरह से कहने को माफ करें। उन इसराइलियों में से 12 जन चुने गए, प्रत्येक गोत्र में से एक एक जन चुना गया। वे अपने अपने नामधारी धार्मिक संगठनों के प्रमुख थे और उन्हें उस प्रतिज्ञा किए गए देश की सीमा पर ले जाया गया और उन्हें वहाँ की सारी सुंदर चीजें दिखाई गयी जो उन्हें मिलनी थी। और वापिस आकर उन्होंने शिकायत करी कि हम उस देश को नहीं जीत सकते, मगर उन 12 में से 2 जन थे, यहोशू और कालेब, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और कहा परमेश्वर ने कहा है ये देश हमारा है और हम इसे ले सकते हैं। क्या ये ठीक बात है? वह क्या था? वे बाकी लोग किनारे किनारे चलने वाले विश्वासी थे, आप समझे? वे वास्तव में अपने गिरजों में पैदा हुए थे। वे लोगों के प्रमुख थे, सरगना थे, कहा जा सकता है कि वे उनके बिशप थे। वे वहाँ तक गए थे जहाँ उन्हें परमेश्वर के वचन को जीवंत रूप में उस देश के रूप में दिखाया गया था, सच बना के दिखाया गया था। वहाँ वो देश था जिसमें वो पहले कभी नहीं गए थे। वे ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा कोई देश वहाँ है, मगर वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो देश वहाँ था। वो देश वहाँ था और कालेब और यहोशू वहाँ गए और उनके लिए अंगूरों का एक गुच्छा लेकर आए ताकि वे उसे खाकर देखें, और उन्होंने उस उत्तम देश के फल को खाया और फिर जाकर कहने लगे कि हम उसे नहीं ले सकते, बस हम उसे ले ही नहीं सकते। देखा आपने, यहाँ यीशु के समय में वैसे ही लोगों का एक झुंड था। रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखा, किनारे वाले विश्वासी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि अगर किसी के साथ परमेश्वर ना हो तो वह ऐसे काम कर नहीं सकता जो तू करता है। हम मानते हैं कि परमेश्वर का हाथ इसमें है, तो फिर उन्होंने उसे ग्रहण क्यों नहीं किया? उन बातों को उन्होंने क्यों नहीं स्वीकारा? किनारे किनारे चलने वाले विश्वासी थे, किनारे वाले विश्वासी। अब यहाँ लोग तीसरे निर्गमन में हैं, फिर से वही चिन्ह है, वही प्रकटीकरण है, वही मसीह है, वही पवित्र आत्मा, वही काम, वही परमेश्वर, वही सुसमाचार, और वो स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने गिरजे का सदस्यता पत्र खोना पड़ेगा। ये क्या है? उनके पास सत्य का मौखिक ज्ञान है। उन्होंने देख लिया है कि ये बातें सच हैं, पूरी तरह से सच हैं। वे इनका इनकार कभी नहीं कर सकते। पत्रिकाएं इस बात की गवाही देंगी कि उन्होंने ये सब देख लिया है। उन्होंने चित्र देखे, अखबारों में पढ़ा, प्रमाण देखे, मुर्दों को जी उठते देखा है। उन्होंने बीमारों की चंगाई संबंधी चिकित्सकों के वक्तव्य पढ़े हैं। उन्हें कहना ही होगा यह परमेश्वर के काम है। और पिछले सारे वर्षों में एक भी करी गई भविष्यवाणी गलत नहीं निकली। उनमें से प्रत्येक शब्द दर शब्द सच निकली है। वे और कुछ नहीं कह सकते सिवाय इसके कि ये परमेश्वर की ओर से है, मगर वे इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। शिकागो में सेवकों के उस समूह का क्या बना? 300 से ऊपर सेवकों को आकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना था। वे कहाँ गए? इसका बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। वे ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या है? पवित्र शास्त्र बताता है जब वे ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? वे क्या कर रहे होते हैं जब वे इन बातों का इनकार कर देते हैं? तब वे दया और न्याय के मध्य स्वयं को बांट चुके होते हैं, क्योंकि जो एक बार ज्योति पा चुके हैं उन्हें नया बनाना असंभव है। उन्हें सत्य वचन को पूरी तरह से जीवंत दिखा दिया गया है। उन्हें सत्य का ज्ञान दिया जा चुका है और उन्होंने परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चख लिया है। अगर वो भटक जाएं, तो मन फिराव के लिए उन्हें फिर नया बनाना अनहोना है। अगर वो कहें कि अब मैं फिर से, तो नहीं नहीं, जी हाँ नहीं। आप जो प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और लूथरन हैं, और जो फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन से संबंधित हैं, जो वचन का सुसमाचार का इनकार कर चुके हैं और फिर कहते हैं कि हम आ रहे हैं, आपका गिरजा नहीं आ सकता। अगर आप में से कोई व्यक्ति आना चाहे तो निश्चित रूप से आ सकता है, मगर आपका गिरजा नहीं। आपको अपने गिरजे में से बाहर आना होगा, तभी आप इस सुसमाचार में आ सकेंगे। समझे? ये ठीक है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति आ सकते हैं, मगर जब आप ऐसा सोचते हैं कि पूरा प्रेस्बिटेरियन गिरजा पवित्र आत्मा को ग्रहण करने आ रहा है और वे सारे लोग अपने दस्तावेज फेंक देंगे, तो नहीं, आप कभी ऐसा मत सोचें। और आप मेथोडिस्ट, क्या ये सोचते हैं कि आप ऐसा कर लेंगे? नहीं, आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आप जो त्रिएकता के मत को मानने वाले हैं, क्या आप सोचते हैं कि कभी आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले सकते हैं? नहीं, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मगर आप में से एक एक करके लोग आएंगे और ऐसा करेंगे, ये सच है, और यही उसके आने का चिन्ह है। मगर उन गिरजों के लिए जिन्होंने इस सच्चाई को देखकर अपनी सभाओं में इसे स्वीकार कर दिया है, उनके लिए ये असंभव है। तब वो यीशु मसीह को सलीब देने के दोषी हैं, और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा उन पर अभियोग लगाता हूँ। भाई ब्रैनम, आप उन पर किस प्रकार का अभियोग लगाते हैं? मैं उन पर इसलिए अभियोग लगाता हूँ कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने वचन में होकर खुद को साफ साफ जाहिर कर दिया है, और उसने दिखा दिया है कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और उन्होंने बड़े रूखे ढंग से उसे ठुकरा दिया है। और पवित्र आत्मा की निंदा करने के द्वारा आप यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के अपराधी हैं। यह सच है। हम फिर से इब्रानियों 10 अध्याय को देखें। यहाँ पर वो हमें फिर से वचन में समझा रहा है कि उन लोगों को न केवल नया बनाना अनहोना है, वरन वे अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। आप फिर कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते अगर आप पवित्र आत्मा को ठुकरा दें और उसका उपहास उड़ाएं। अब समझे? आपने उत्तम वचन का स्वाद चखा, समझ गए? किनारे किनारे चलने वाले विश्वासी की तरह। ओह, आप कहेंगे कि वे लोग विश्वासी नहीं थे। वे विश्वासी थे या घोषित विश्वासी थे, मगर जब वचन पर विश्वास करने की बात आई तो क्या हुआ? वे इजरायली थे, वे लहू के तले मिस्र से बाहर आए थे, वे मूसा के चिन्ह के तले बाहर आए थे। उन्होंने उन चिन्हों को प्रकट होते थे वहाँ देखा था। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा। और जब वादा किए वचन के पूरे होने का समय आया, तब उन्होंने क्या कहा? ओह, हम इस देश को नहीं ले सकते, समझे? और वहाँ वो दो जन अंगूर आदि लेकर आए थे कि साबित करें कि वह देश उत्तम है। परमेश्वर का वचन ठीक और सत्य है। परमेश्वर के वचन का कहना था कि मैंने ये देश तुम्हें दिया है, मगर हालात भिन्न दिखाई दे रहे थे। या खुदा, उन्होंने कहा कि हम तो उनके सामने टिड्डी की तरह दिखाई देते हैं, हम इसे नहीं पा सकते। कोई बात नहीं कि हालात क्या हैं। कुछ साल पहले जब यहाँ इस आराधना भवन के नाम पर एक ढांचा सा खड़ा था, तब किसी ने यहाँ आकर मुझसे कहा था, बिली, इस प्रकार के सुसमाचार प्रचार के कारण तुम एक दिन यहाँ खड़े खम्भों ही को बस वचन प्रचार करते दिखाई दोगे। मैंने जवाब दिया, मैं इन चारों खम्भों को ही वचन प्रचार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर इन खम्भों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करने में सामर्थी है। यही बात है, ये सच है। मैंने कहा था, अगर आप किसी बात पर असहमत होकर उसे अस्वीकार करते हैं तो करते रहिए। अभी तो ये कौवे की कांव कांव सी जान पड़ती है, मगर जब इसको साबित करना होता है तब कुछ और बात होती है। जी, इसी से सारा अंतर आता है। ठीक है, यहाँ अपने मतों से वे उसे फिर से सलीब दे रहे हैं। अब इब्रानियों 6 अध्याय को हम नीचे तक पढ़ेंगे। हम इसे पूरा पढ़ सकते हैं, हमारे पास काफी समय है। मैंने एक वचन ढूंढकर उस पर निशान लगाया था। कहाँ है वो? मेरा ख्याल है इब्रानियों 6 अध्याय में है। पूरा पढ़ लेते। उन्हें नया बनाना न होना है जो एक बार ज्योति पा चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम इस विषय पर और अधिक मनन करें, क्योंकि मेरे पास वचन में से एक और पद है जिसे मैं कुछ क्षणों में पढ़ना चाहता हूँ। इस पर ध्यान दीजिए कि वे परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? क्या किया है? उन्होंने उसका स्वाद चखा और ये जानने के बाद भी कि ये सच है, उसे ठुकरा दिया, उससे मुंह फेर कर उसका इंकार कर दिया। उन्होंने क्या किया? अब उनको बदलना असंभव है। अतः यही वो बात है जो इस देश ने करी है, यही वो है जो इन लोगों ने किया है, यही तो इन नामधारी गिरजों ने किया है। उन्होंने उसे ठुकरा कर उस समाचार को सलीब दे दी है। उन्होंने लोगों के प्रति सत्य को मार दिया है, घात किया है। उन्होंने यीशु के साथ क्या किया था? उन्होंने उसके वस्त्र उतारकर उसे शर्मिंदा किया था। उन्होंने उस जीवन के राजकुमार को क्रूस पर लटकाकर उसे कीलों से जड़ दिया था। यही आज उन्होंने अपने मतों के द्वारा किया है। उन्होंने वैसा ही किया है। उन्होंने सुसमाचार की भली उत्तम बातों रूपी वस्त्रों को हटा दिया है और उसे किसी और ही रूप में दिखाया और उसे क्रूस पर टांग दिया है। ओह, क्यों ऐसा हुआ? वहाँ उन्होंने सलीब दी उसे। अब अंतिम शब्द पर ध्यान दें। उसे सलीब दी जो अति मूल्यवान व्यक्ति था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो उसे नहीं जानते थे। आज वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे नहीं जानते कि ये सच्चाई है। वे इसके प्रति गूंगे और बहरे हैं। वे इसे नहीं जानते। यही वजह है। उनके मतों और सिद्धांतों ने, प्रथाओं ने उन्हें परमेश्वर के वचन से दूर कर दिया है। अब आप जो यहाँ हैं, आपसे कहता हूँ कि बहुत ध्यान से देखिए। बस अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ, समझे? मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत गर्मी है, मैं भी सरगर्म हूँ, मगर मेरे भाई, यह वचन जीवन है, अगर आप इसे समझ पाए। देखिए, ये वैसी बात नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ बातचीत करें जो बाद में होनी है। यह ऐसा मामला है जो पहले से हमारे यहाँ घटित हो रहा है, अभी भी है। ऐसा नहीं कि कुछ होना है, वरन अब भी हो रहा है। हम इसको परख नहीं रहे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है और ये भी जानते हैं कि वो क्या करने जा रहा है, मगर इस समय हम वह बता रहे हैं जो वह अभी कर रहा है। आप समझे? यह हमारा समय है। हो सकता है हम उठाए जाने के समय तक जीवित ना रहें। मैं आज मर सकता हूँ, आप आज मर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, मगर स्वर्ग पर उठाया जाना तय है और वो होने वाला है। हम उसमें होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। और इसी तरह से उसमें बाकी के वे सभी लोग भी होंगे जो पीछे के कालों में इस प्रतीक्षा में वचन पर विश्वास करके सो गए हैं। वे अपने समय के प्रकाश में होकर चले गए थे और आज का प्रकाश यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। अपने मतों सिद्धांतों को छोड़कर इस वचन पर विश्वास कीजिए। यह सत्य है, वचन ही सत्य है। यीशु ने कहा था कि मेरा वचन आत्मा और जीवन है। जब आप जीवन को अस्वीकार कर रहे हैं, तब जीवन आपको कैसे मिल सकेगा? आप मत और सिद्धांत में जीवन कैसे पा सकते हैं जबकि वह मृत्यु है? और जीवन के वचन, जीवनदायी वचन को ठुकरा कर आप मौत को पाना चाहते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। हर एक मनुष्य की बात झूठी, हर एक मत की बात झूठी, और परमेश्वर का वचन सत्य है। मैं किसी भी मनुष्य को ललकारता हूँ कि कोई भी आए, मुझे मालूम है ये टेप दुनिया भर में जाएंगे। मैं किसी भी मनुष्य को, बिशप को ललकारता हूँ कि वो मेरे अध्ययन कक्ष में या इस सभा के सामने आए और पवित्र शास्त्र में कहीं पर अंगुली धर के दिखाए कि कब किसी को नए नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधियों में बप्तिस्मा दिया गया। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एक जन को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया, और अगर किसी ने दूसरी तरह से बपतिस्मा दिया तो उसे फिर से सही बपतिस्मा दिया गया ताकि पवित्र आत्मा मिल सके। आप इस बाबत क्या करने जा रहे हैं? अपने मतों में फंसे बाहर पड़े रहेंगे क्या? क्या अपने सिद्धांतों में फंसे रहकर मर जाएंगे? आप दुष्ट हाथों वाले हैं, अपराधी हैं। आपने जीवन के शहजादे को, जीवनदायी वचन को लोगों के प्रति सलीब पर चढ़ाया है। अब देखिए कि उन्होंने क्या किया था। वे नहीं जानते थे। आज मनुष्य अज्ञानी बनकर परे जा रहा है, उसे नहीं मालूम कि सच्चाई यही है। वे सोचते हैं कि यह भी किसी तरह का वाद या पंथ है। वे इसमें गहराई तक जाकर वचनों के प्रकाशन की आत्मा को नहीं पकड़ पाते। वे काफी प्रार्थना नहीं करते। वे जितना चाहिए उतना परमेश्वर को नहीं पुकारते। वे इस बात को बस हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं और कहते हैं, ओ मैं सोचता हूँ कि यह परमेश्वर का काम है। यकीन शैतान भी विश्वास करता है। शैतान तो कुछ उन लोगों से भी ज्यादा विश्वास करता है जो इन बातों पर विश्वास करने का दावा करते हैं। शैतान इस पर विश्वास करता और थर थराता है। लोग बस विश्वास करते और आगे बढ़ जाते हैं, मगर शैतान थर थराता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसका न्याय आ रहा है। और लोग विश्वास करते हैं और आने वाले न्याय पर कोई ध्यान नहीं देते। वे यकीनन उसे क्रूस पर चढ़ा देने के अपराधी हैं। मैं उसी वचन के द्वारा इस पीढ़ी पर अभियोग लगा रहा हूँ जिसने शुरू में इन्हें अपराधी ठहराया था। यह ठीक बात है। यीशु ने कहा था, मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है। वह वचन था जो देहदारी हुआ था, और आज वही वचन फिर देहदारी हुआ है। पत्रस ने प्रेरितों के काम पुस्तक में अपना अभियोग लगाते हुए कहा था, आइए हम उसे पढ़ लें। पत्रस ने देखा कि क्या घटित हुआ है और लोग पवित्र आत्मा के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, पत्रस मसीह का पक्ष ले रहा था कि लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया था। मैं सुसमाचार पुस्तकों के वचन का पक्ष ले रहा हूँ। पत्रस उन पर एक मनुष्य यानी मसीह को घात करने का अभियोग लगा रहा था जो कि स्वयं वचन था। मैं इस पीढ़ी पर उस वचन को घात करने का अभियोग लगा रहा हूँ जो एक मनुष्य में होकर प्रकट किया गया है। क्या कहा था? देखिए पत्रस ने क्या कहा था। उसका धार्मिक आक्रोश काफी उभर आया होगा। प्रेरितों के काम 2:22 में पत्रस की बात सुनिए। हे इसराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थी कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। ओह, कल्पना करिए उन लोगों को कैसा लगा होगा। इसे सुनिए। हे इसराइलियों, तुम राजकुमारों, गिरजे के सदस्य, तुम जो पवित्र कहलाते हो, और तुम याजको, तुम जिन्हें समझा जाता है कि तुम परमेश्वर के जन हो, इन शब्दों को सुनो। यीशु नासरी तुम्हारे बीच में परमेश्वर के द्वारा उसकी ओर से प्रमाणित किया गया है। अब मैं आप लोगों और पादरी गणों आपसे कहता हूँ, यीशु नासरी वह पवित्र आत्मा, वह यहाँ पवित्र आत्मा के रूप में है। ये पवित्र आत्मा ही तो जीवन था जो उसमें था। यहाँ पर वो लोगों में से होकर काम कर रहा है और अद्भुत चिन्ह और कामों के द्वारा अपनी उपस्थिति को जता रहा है, और विज्ञान के द्वारा उसकी पुष्टि के लिए उस चित्र को वे लोग अपनी दीवारों पर टांग रहे हैं। और आज वो लोग जिंदा होकर यहाँ बैठे हैं जो मर गए थे, और कैंसर से खत्म हुए लोग स्वस्थ होकर आज यहाँ मौजूद हैं। अंधे आज देख रहे हैं और लंगड़े चल फिर रहे हैं। ये वही यीशु नासरी है। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, यीशु के लिए यह काम पहले से सौंपा गया था। तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। क्या यह अभियोग नहीं है? वह किस पर दोष लगा रहा है? याजकों की उस महासभा पर। और आज सुबह मैं नामधारी गिरजों के उस महासंघ पर अभियोग लगा रहा हूँ। मैं पिंतेकोस्तल पर अभियोग लगा रहा हूँ। मैं प्रेसबिटेरियन, बैप्टिस्ट और दुनिया के सभी नामधारी संगठित गिरजों पर अभियोग लगा रहा हूँ। तुमने दुष्टता, स्वार्थ और लालचवश लोगों के सामने जीवन देने वाले वचन को क्रूस पर चढ़ाया है और उसकी निंदा करी है, उसे पागलपन बताया है। उस वचन के साथ ऐसा किया है जिसे परमेश्वर ने हमारे बीच में सत्य प्रमाणित किया कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं इस पीढ़ी पर अभियोग लगाता हूँ। परमेश्वर ने खुद को जीवित प्रमाणित कर दिया है। परमेश्वर ने साबित कर दिया है कि ये उसका वचन है। आपके पास जो है वह मतों और सिद्धांतों का एक बंडल है और उससे अधिक कुछ नहीं है। आप जीवते परमेश्वर को उनके द्वारा किस तरह जाहिर कर सकते हैं? आपने वचन को जो जीवन देता है ठुकरा दिया है, और उसी के द्वारा आपको ये सब चीजें मिल सकती थीं। जी हाँ श्रीमान। ओह, कैसा समय है जिसमें हम रह रहे हैं। ओह, मुझे याद आ रहा है कि पत्रस ने कहा था, तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। और अपने मतों और नामधारी धार्मिक संगठनों के द्वारा, अपने गिरजों के द्वारा, अपने भक्ति के भरे गए वेश के द्वारा क्या किया है? अपने भरे गए भक्ति के वेश के द्वारा तुमने उसके जी उठने की सामर्थ्य का इनकार कर दिया है। परंतु वो समय आ पहुंचा है, अंतिम समय आ गया है, जिसमें परमेश्वर ने वायदा किया है कि वे मलाकी 4 अध्याय के अनुसार अंतिम दिन फिर से जी उठकर जीवन प्रकट होकर लोगों के हृदयों को पिंतेकोस्तल विश्वास और मूल आशीषों में फिर से फेर कर ले आएगा। और तुम इसका इनकार नहीं कर सकते, इसे सहन नहीं कर सकते। और अब मैं परमेश्वर के सामने तुम पर अभियोग लगाता हूँ, तुम्हें अपराधी ठहराता हूँ, तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुमने अपने अधर्मी दुष्ट हाथों से, स्वार्थी नामधारी गिरजों रूपी हाथों से परमेश्वर के वचन को लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ाया है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपराधी हो और न्याय के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ श्रीमान, मैं वही कहता हूँ जो पत्रस ने कहा था। उसने इस पीढ़ी से पश्चाताप करने को कहा था। मैं इस पीढ़ी से पश्चाताप करने को कहता हूँ कि वह परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे और वचन के मूल सत्य पर लौट आए, हमारे पितरों के विश्वास में और पवित्र आत्मा के विश्वास में लौट आए, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके को बदल नहीं सकता। जब परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, तो परमेश्वर अपने वचनों पर अनंत काल तक स्थिर रहेगा, यह उसका वचन है। जब आप लोगों को कहते हैं कि बस हाथ मिलाकर या प्रभु भोज में शामिल होकर आप सब कुछ पा सकते हैं, या इसी तरह से कुछ करके किसी मत प्रथा को मानकर या इसी प्रकार के किसी अन्य विचार से काम बन जाएगा, तो देखिए कि कोई भी शराबी, कोई भी अविश्वासी ऐसा कर सकता है। कोई भी नकलची, कोई भी व्यभिचारी ऐसा कर सकता है। प्रभु भोज लेना और इसी प्रकार के नियम आदि को तो मान ही सकते हैं लोग, मगर यीशु ने कहा था कि उनकी यानी सच्चे विश्वासियों की पहचान ये होगी, उनमें ये चिन्ह होंगे। ये नहीं कि ये चिन्ह हो सकते हैं, वरन होंगे। सारी पीढ़ियों में यही चिन्ह होंगे, जो भी विश्वास करेंगे मेरे नाम से वह दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, विषैली वस्तुएं पी जाएंगे, उन्हें कुछ हानि ना होगी, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, मुर्दों को जला देंगे, दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। आज की ये बड़ी बड़ी धन कमाने की योजनाएं आदि बातों में सारी सच्ची बातें खो गई हैं। इनमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि लोग पूरी तरह परमेश्वर के न्याय की सीमा में आ पहुंचे हैं। हाँ श्रीमान, ओह प्रभु, आइए हम अब आगे चलें। जी हाँ, पश्चाताप की बुलाहट है और मैं अभियोग लगा रहा हूँ। ये नई सलीब नामधारी गिरजे हैं, यह तथा कथित अति पवित्र स्थल हैं, बड़े बड़े धार्मिक मंच हैं, कैथोलिक वाद हैं, कैथोलिक वेदियां हैं, वे इन्हें वेदियां कहते हैं। यह सब मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन और पेंटेकोस्टल गिरजे हैं। इन अति पवित्र स्थानों में हमारा प्रभु आज गहरे घाव पा रहा है। यह नई सलीब है। यह सलीब कहाँ पाई जाती है? पवित्र कहे जाने वाले स्थानों में, गिरजों में। वहाँ पर उसे कौन सलीब पर चढ़ा रहा है? पादरी लोग, धर्माध्यक्ष। तुम पाखंडी लोगों, तुमको सारी बातें भली प्रकार से मालूम है। मैं क्रोधित नहीं हूँ, मगर मेरे अंदर कुछ हिलौने उठ रही हैं। आपके मध्य पूरी तरह से परमेश्वर की पहचान दे दी गई है। उसकी पसली में ये भाले का निशान कहाँ से आया? उसके हाथ पांव कहाँ छेदे गए? सलीब पर। आज ये सब उसके साथ कहाँ किया जा रहा है? गिरजों के मंच पर। ये वारदात कहाँ, किसके द्वारा हुई थी? यरूशलेम में हुई थी। आज कहाँ हो रही है? नामधारी धार्मिक संगठनों में, गिरजों में। जो उसे प्रेम करने का दावा करते थे वही थे जिन्होंने ये सब किया था, और वही आज ऐसा कर रहे हैं। इस दूसरी सलीब पर ये घाव वचन के विरुद्ध दिए गए हैं। वचन के विरोधियों से ये घाव मिले हैं। वह कौन है? वह वचन है। वचन है। सबसे गहरा घाव उसे किसने दिया? पवित्र स्थानों के मंचों ने, ठीक वैसे ही जैसे तब किया गया था। इस पीढ़ी पर अभियोग लगाने का मुझे अधिकार है। यीशु मसीह के सुसमाचार का सेवक होने और उसके चिन्हों से ये प्रमाणित करने के कारण कि वही परमेश्वर है, मुझे अधिकार है कि ऐसा अभियोग लगाऊं। इस जाति पर, इस पीढ़ी पर अभियोग लगाने का मेरा अधिकार है, क्योंकि उसके सबसे गहरे घाव उसे गिरजों के मंचों ने दिए हैं, जहाँ पर लोगों ने उसकी आलोचना करके कहा, उन लोगों की वैसी बातें सुनने मत जाओ, वे शैतान की ओर से हैं। ऐसा ठीक उस स्थान से कहा गया जहाँ से उसे प्रेम मिलना चाहिए था। ठीक वही चिन्ह दिखाए गए हैं जिनके लिए यीशु ने कहा था कि वे दिखाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक धार वाला है। वचन मन की भावनाओं और हृदय के विचारों को जांचने वाला है, और उसे शैतान कहा गया। कहाँ से? पवित्र स्थानों से, गिरजों के मंचों से। ओह परमेश्वर, किस तरह से नीचे इन पर दृष्टि डाले। बस अब दया, अनुग्रह, क्या करे, सब समा। हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि न्याय की ओर बढ़ते जाएं। हम पहले से ही न्याय की सीमा में खड़े हैं। इस पर सोचिए, उसके गहरे घाव उसे गिरजों के मंचों ने दिए हैं, और वहीं ये नई सलीब खड़ी है। उन्होंने उसे यानी वचन को अपने मंचों पर, क्रूस पर टांगा है। ये बात ठीक है। कैसे उन्होंने कैसे ऐसा किया है? अपनी भक्ति का झूठा वेश भरकर ऐसा किया है। ठीक ऐसा ही है। उसे कांटों का ताज पहनाया उसकी खिल्ली उड़ाने वाले श्रोताओं ने। उसे कांटों का एक नया ताज दिया गया है। खिल्ली, उपहास, मजाक उड़ाने वालों ने ताज पहनाया और पवित्र स्थानों से घाव मिले। क्या उसे दोबारा सलीब पर चढ़ाया गया है? मनुष्यों के द्वारा बनाए मतों, सिद्धांतों और वचन विरुद्ध नामधारी गिरजों के शिक्षकों ने उसे नंगा करके कोड़े मारे हैं। उन्होंने उसे कोड़े मारे, शर्मिंदा किया और उस पर दोष लगाए। यीशु ने कहा था, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ में इससे कुछ लाभ ना होगा। किसकी उपासना करते हैं वे? वे उसी परमेश्वर की उपासना करते हैं। प्रथम सलीब देने के समय भी वे उसी परमेश्वर की उपासना कर रहे थे और वो उपासना बेकार थी। आज भी वैसी ही बात है। वे इन नामधारी धार्मिक संगठनों को व्यर्थ में बनाते हैं। व्यर्थ में वे इन धार्मिक स्कूलों को स्थापित करते हैं। बेकार में ये मत उन्होंने बनाए हैं। वे मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं और परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। वे जीवन के राजकुमार को क्रूस पर चढ़ाने के दोषी हैं। वे मनुष्य की बातों को वचन बताकर सिखाते हैं। वे बेकार में मेरी उपासना करते हैं, उसे कोड़े मारते, ताज पहनाते और उसके हाथ पांव छेदते हैं। जब आप सड़कों पर जा रहे होते हैं और हमारी बहनें लंबे बाल रखे हैं, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। वे कहते हैं, वह पुराने फैशन की स्त्री है, क्या नहीं है? याद रखिए, वे खिल्ली उड़ाने वाले लोग हैं। लंबे बाल आपका ताज है जो आप पहने हैं। परमेश्वर कहता है, ये आपकी महिमा के लिए हैं। इन्हें गर्व के साथ पहनिए। हालेलुया। उसको ऐसे ही गर्व सहित पहनती रहिए, मानो आप प्रभु के लिए कांटों का ताज पहन रही हूँ। इसको घमंड के साथ पहनिए, शर्माइए मत। परमेश्वर ने ऐसा कहा था, कोई बात नहीं कि आज इजेबेल क्या कह रही है। मसीह को क्रूस देने वाले जो गिरजों की वेदी पर खड़े हैं, ये क्या कहते हैं? परवाह मत करिए, उन्हें शान से पहनिए। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। उपहास उड़ाने वालों ने फिर उसे कांटों का मुकुट पहनाया है। उसे पवित्र मंचों के द्वारा मतों से छेदा गया है। आज वो नए प्रकार के गुलगत्ता पहाड़ पर है। वे उसे कहाँ लेकर गए? ये चोगे पहने गायन मंडलियाँ, छोटे कपड़े, मर्दों के कपड़े पहने स्त्रियाँ, उनके कटे बाल, पुते चेहरे, जो कि स्वर्ग दूतों के समान भजन गा रही हैं, यही उसका नया गुलगत्ता है। यह आधुनिक नंगापन है जो सदोम अमोरा के यहाँ की व्यवस्था से मान्यता प्राप्त है। आप सड़क पर कभी जाती हुई कुतिया को देखें, एक भी कुत्ता उसके पीछे नहीं जाएगा। और जरा सी बात होने दें कि हर कोई दौड़कर किसी लड़की के पीछे चला जाएगा, क्योंकि उस लड़की को कुछ हो गया है। ऐसा क्यों है आपको पता है? इसलिए कि औरतें अपने को वस्त्र विहीन बनाकर सड़कों पर जाती हैं। मुझसे ये मत कहना कि दोनों बातें एक समान नहीं हैं। ये समय की पहचान है। पुरुष को कोई दोषी नहीं ठहरा रहा। आज मनुष्य सदोम के कानून से सुरक्षित है। मैं कहता हूँ कि इस प्रकार के अधनंगे वस्त्रों में बाहर जाना नियम विरुद्ध है। अब मन से वचन प्रचार करने वाले प्रचारकों को तो पेटीकोट या लहंगे पहन लेने चाहिए, बजाय इसके कि वे अपना चोगा पहने। वे वहाँ खड़े होकर स्त्रियों के अधनंगे वस्त्रों के विरुद्ध कुछ कहने से इसलिए शर्माते हैं कि उनका गिरजा उन्हें बाहर निकाल देगा। आप परमेश्वर के उस वचन को अपनी मंडली के प्रति क्रूस पर चढ़ाते हैं, जो ये कहता है कि स्त्री के लिए पुरुष के वस्त्र पहनना लज्जा की बात है। मैं ऐसी बातों को दोषी ठहराता हूँ। मैं आरोप लगाता हूँ कि ऐसा करना परमेश्वर के वचन को लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ाना है। बाल कटवाए, मर्दों के वस्त्र पहने, लोगों के सामने घूमने वाली स्त्रियाँ गायन मंडली में खड़ी हैं। उस दिन किसी महिला ने मुझसे पूछा था, ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? आपको ये कहाँ मिलेंगी? मैंने कहा, अगर परमेश्वर मुझसे ये कहे कि एक दर्जन ऐसी स्त्रियाँ ढूंढो जो ऐसी ना हो, तो मैं भयभीत होकर मर ही जाऊंगा। जब मैं उन्हें वहाँ खड़ी देखता हूँ, तो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन की गुप्त बातें प्रकट होती हैं। खड़ी रहती हैं और मैं उनके ऊपर इन चीजों को देख लेता हूँ। गंदे, अश्लील, गिरे हुए चरित्र, धूम्रपान करने वाले और इसी तरह के लोग वहाँ खड़े मिलते हैं, और वो चोगे पहने गायन मंडली में गिरी हुई दशा में गीत गा रहे होते हैं, और सभा उनको वैसे देख रही होती है जिस प्रकार वो दिखाई दे रहे होते हैं। भाई, अगर वो खुद को छिपा कर दिखाती हैं, तो मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ। एक मसीही जीवन पवित्रता और शुद्धता से भरा जीवन होता है। सेवक महोदय, मैं यीशु मसीह के नाम में उनकी अश्लीलता और गंदगी के लिए उन पर अभियोग लगाता हूँ। उन्होंने सुसमाचार को अनादर की स्थिति तक पहुँचा दिया है, और जो इसे ऊंचे स्थान पर बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें पागल और सनकी कहा जाता है। उन्हें वे पुरानी चाल का बताते हैं। ये मूर्खता है। मैं यीशु मसीह के नाम में उन पर दोष लगाता हूँ। बस आधुनिकता के नाम पर नंगापन सड़कों पर उतर आया है, और गायन भजन मंडलियों में वो शामिल है। सिगरेट पीती हैं, गंदे मजाक करती हैं, छठे पति के बाद भी तीन चार और पति किए हैं, और फिर भजन मंडली में भजन गा रही हैं, क्योंकि उनकी आवाज मधुर है। तुम बुद्धि में हीन और आत्मिकता से वंचित हो, तुम अपनी ही बातों से अस्वीकार किए गए हो। तुम भी वही पवित्र शास्त्र पढ़ते हो जो कोई दूसरा मनुष्य पढ़ सकता है, मगर तुमने परमेश्वर के आत्मा को ठुकरा दिया है। पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम भरमाने वाली दुष्ट आत्मा के प्रभाव में हो, ताकि झूठ पर विश्वास करके दोषी ठहराए जाओ। वास्तव में आपने ये विश्वास किया था कि आप ठीक हैं। पवित्र शास्त्र बताता है कि आप उस झूठ पर विश्वास कर लेंगे और उसी झूठ के द्वारा दोषी ठहराए जाएंगे जिसे आपने सच माना था। इसीलिए मैं आप पर परमेश्वर के वचन के द्वारा अभियोग लगा रहा हूँ। आप लोगों को गलत बात सिखा रहे हैं और मसीह पवित्रता और ऊपर स्वर्गीय जीवन के सिद्धांतों को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति बाहर सड़क पर जाकर एक बदला हुआ व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि वहाँ नाच घरों में प्रचारक धूम्रपान करते दिखाई देंगे जिनसे ठोकर लगेगी। वहाँ सारी गंदी चीजें दिखाई देंगी जिनमें वो लिप्त हैं। स्त्रियाँ बाल कटवाए, मर्दों के वस्त्र पहने, उतरे चेहरे लिए और सभी तरह की उल्टी सीधी बातें अपनाने के बाद भी भजन मंडली में शामिल हैं, और इन चीजों के बारे में कहती हैं कि बहन ऐसा है, बहन वैसा है, और पवित्र शास्त्र इस तरह की बातों को गलत ठहराता है। ये सच बात है। आप नाच रंग कार्यक्रमों में जाइए, जो चाहे करिए, और इस पर भी गिरजे के सदस्य बने रहेंगे, अपनी गवाही देते रहेंगे और जैसा चाहे वैसा जीवन बिताते रहेंगे। ये मत सोचिए कि मैं सारी बातें प्रेस्बिटेरियन के लिए कह रहा हूँ, मैं आप पेंटेकोस्टल लोगों के बारे में भी कह रहा हूँ। ये सच है, आपको एक समय सच्चाई का पता था, मगर आपने सोचा कि आप उसे नहीं ले सकते, आप अपने पादरी को सहयोग नहीं दे सके। अगर आपके पादरी ने उन सारी बातों को गलत बता दिया होता तो वह कई सौ डॉलर प्रति सप्ताह की नौकरी, प्रचार करने के लिए बड़ा आराधनालय और सवारी आदि से वंचित कर दिया जाता अगर उसने आपकी चाल को गलत कहा होता। आपके धार्मिक संगठन ने उसे निकाल कर बाहर कर दिया होता, इसीलिए उसे वे सब जारी करे रखना पड़ा, उसे हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। उसने अपने पहलौटे होने का अधिकार एसाव के उस गंदे भोजन, इस दुनियावी गंदगी से मिश्रित दाल के बदले में बेच दिया है, और उसे उसके बदले में क्या मिलने जा रहा है? दोनों ही दोष के गढ़े में गिरकर अपराधी ठहराए जाएंगे। मैं उन पर सुसमाचार के संग व्यभिचार करने का अभियोग लगाता हूँ। अभी अधिक समय नहीं हुआ जब मैं एक मशहूर बड़ी जगह गया था, जहाँ पर पेंटेकोस्टल वालों की एक बहुत उच्च कोटि की कही जाने वाली गायन मंडली थी। ऐसा हुआ कि जब मैं उस भाई के अध्ययन कक्ष में बैठा था, तब वहाँ चार पांच भजन मंडलियाँ एकत्रित हो गईं, और वह पेंटेकोस्टल की कुछ एक बढ़िया संस्थाओं की गायन मंडलियाँ थीं, और उन्हें नहीं पता था कि उस ओक्लाहोमा नगर में मैं उस भाई के अध्ययन कक्ष में बैठा हूँ। और मैं वहाँ नीचे के तल में स्थित उस भाई के अध्ययन कक्ष में था, जिसमें वचन प्रचार करने से पहले वह बैठकर पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया करते थे। और मैंने देखा कि वहाँ भूसे सरीके, अपने लिपे पुते चेहरे वाले, कुछ छैल छबीले से दिखने वाले लड़के लड़कियाँ मौजूद थे। उनमें से एक भी लड़की के बाल लंबे नहीं थे, वरन लड़कों की तरह बाल कटे हुए थे। उनमें से प्रत्येक ने सौंदर्य प्रसाधन पोत रखे थे, और सभी अपना चोगा पहने खड़े थे। वे सब वहाँ खड़े थे और उसी तरह सजने धजने में व्यस्त थे। और एक मनुष्य वहाँ चंदा जमा कर रहा था, और वो ऐसा जाहिर कर रहा था मानो कोई अंधा कटोरा लिए घूम रहा हो, और वो चंदा जमा करने के विषय में इधर उधर की बहुत सी अशोभनीय बातें कह रहा था। वहाँ पर उसने मेरे मसीहा वाला भजन गाना शुरू किया। उफ, काफी अच्छी तरह से गीत गाया जा रहा था, मगर गीत में जान नहीं थी, वहाँ मुर्दगी सी छाई थी। आप समझे? हे प्रभु, यही बात है, यही नया गोलगता पहाड़ है। आप क्या सोचते हैं अगर ये लड़कियां या महिलाएं वहाँ ठीक ठाक होकर जाएं तो क्या होगा? अगर वे उसी तरह के कपड़े पहने जैसे कि उन्हें पहनने चाहिए तो क्या होगा? उनके बाल लंबे हों, चेहरे पुते हुए ना हो, और अगर इस तरह की और भली बातें हों तो वे लोग उनका मजाक उड़ाने लगेंगे। जब वहाँ उस गायन मंडली में इस तरह के अशोभनीय ढंग वाले लोग खड़े थे, अगर कोई लड़की ठीक ठाक कपड़े पहनकर वहाँ पहुँचती, पेंटेकोस्टल समूह के चुने हुए 30-40 लोगों का वो झुंड जो वहाँ ये सब कर रहा था क्या करता? अगर वो युवती वहाँ कुछ भी उनके विरुद्ध कहती तो वे उसे अपनी मंडली से बाहर कर देते। जरा सुसमाचार प्रचारक को वेदी से इन बातों के विरुद्ध कुछ कहने दीजिए, वे उसे अपने संगठन से बाहर कर देंगे। आप परमेश्वर के पुत्र को फिर से सलीब पर चढ़ाकर सबके सामने उसे कलंकित करते हैं। उसके उसी सुसमाचार को जिसे प्रचार करने का दावा करते हैं आपने क्रूस पर चढ़ाया है। मैं मसीह को अस्वीकार करने वाली इस पीढ़ी पर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अभियोग लगा रहा हूँ। मैं उन्हें उसकी उस सामर्थ्य के द्वारा दोषी ठहराता हूँ जो उसे जीवन प्रकट करके ये साबित कर रही है कि वह आज भी जीवित है। जी हाँ, वे लोग साफ साफ जाहिर हुए परमेश्वर के जीवंत वचन के विरुद्ध हैं। उनके धार्मिक संगठन इन वचनों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस बात को फिर से कहता हूँ कि ये बड़े बड़े गिरजे और नामधारी धार्मिक समुदाय उसकी नई सलीब है। उनका आधुनिक नंगापन उनकी भजन मंडलियाँ हैं। इन नामों वाले धार्मिक समुदाय के प्रधान याजक उस समय के याजकों की तरह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अब हमें तू चिन्ह दिखा, हे प्रभु। ऐसा पहली सलीब देते समय हुआ था और आज भी वैसा ही है। मैंने उनको ये कहते हुए सुना है, भाई तुम मुर्दों को जला देते हो तो क्या ऐसा है? ऐसा है तो फिर आप वहाँ कब्रिस्तान में क्यों नहीं जाते? वहाँ तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। उन्होंने उससे कहा था, हमने सुना है कि तुम मुर्दों को जिला देता है, हमारे यहाँ मुर्दों से भरा एक कब्रिस्तान है, आ और उन मुर्दों को जिला। ओह, अज्ञानता अज्ञानता को ही जन्म देती है। आज की ये बड़े बड़े गिरजे, बड़ी भजन मंडलियाँ, प्रधान पादरीगढ़ कहते हैं, आ और हमें कोई ऐसा चमत्कार दिखा जो हमारा नामधारी धार्मिक समुदाय ना दिखा सके। अधिक दिन नहीं हुए जब मैंने जोन्सबोरो अरकानसा में रेडियो पर वचन प्रचार किया था, तब एक आदमी ने टिप्पणी करी थी। उसने किसी महिला के बारे में बताया जिसे चंगाई मिली थी। वह व्यक्ति किसी नामधारी गिरजे का सदस्य था और उसने चुनौती दी कि कोई भी एक अद्भुत काम करके दिखाए। एक मनुष्य कैंसर की बीमारी से ग्रस्त था, उसे चंगाई मिली थी। मैं जाकर इसकी पुष्टि के लिए एक डॉक्टर को बुला लाया। मैंने एक उस महिला को भी बुलवाया जो 20 वर्षों से पहिए वाली कुर्सी पर बैठी थी और उसे गठिया का रोग था, परंतु अब वह चंगी हो गई थी। मैंने उस व्यक्ति को इन लोगों को दिखाकर चुनौती के $1,000 उससे मांगे। उसने कहा, भाई वो यहाँ रुपए नहीं है, वे तो हमारे मुख्य कार्यालय वीको टेक्सास से मिलेंगे। मैंने कहा, ठीक है, हम वहाँ जाकर ले लेंगे। मैंने कहा, तुम इंतजाम कर लो, हम कल चलेंगे। मैंने कहा कि ये डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस व्यक्ति को कैंसर रोग था। ये उसका एक्सरे है जिसमें बीमारी साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ एक महिला है जिसे उसके सारे पड़ोसी जानते हैं कि वे 20 सालों से पहिए वाली कुर्सी पर थी और अब ठीक ठाक चल फिर रही है। एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे डॉक्टरों की एक लंबी कतार है जो इस बात की पुष्टि कर देंगे और वह महिला आज स्वस्थ और जीवित है। अब तुमने कहा था कि तुम $1,000 दोगे, मुझे वो रकम चाहिए, मैं उसे प्रभु की सेवा में खर्च करना चाहता हूँ। उसने कहा, पैसा तो रिको टेक्सास से मिलेगा। मैंने कहा, हम कल चलेंगे। उसने कहा, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं एक छोटी लड़की का हाथ ब्लेड से काटता हूँ और आप उसे हमारे भाइयों के सामने चंगा कर दें और वे आपको पैसे दे देंगे। मैंने कहा, वही बात है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो सलीब से उतरा, हमें बता कि तुझे किसने चांटा मारा। उन्होंने उसके मुंह पे कपड़ा लपेट कर उसे चांटा मारा और पूछा था कि अगर तू भविष्य देखता है तो हमसे कह कि तुझे किसने मारा। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो सलीब से उतरा। अंधा अंधे को दिशा दिखा रहा है। उन लोगों को मानसिक चिकित्सा चंगाई की आवश्यकता है। एक मनुष्य जो इस प्रकार की बातें करे और इस तरह की टिप्पणी करे, निश्चित रूप से उसे दिमागी चंगाई की जरूरत है। ये एक जानी पहचानी पुरानी चिल्लाहट है कि हमें तू कोई चिन्ह दिखा। स्वामी, हम तुझसे चिन्ह देखना चाहते हैं। जबकि प्रतिदिन प्रतिक्षण परमेश्वर की अपनी मंशा और उसके नेतृत्व में चिन्ह दिखाई जा रहे हैं, मगर वे लोग उस समय मौजूद नहीं थे। अगर वो वहाँ थे तो भी उन्होंने उसे बालजबूब या शैतान का काम बताया। समझे आप? कहते हैं कि गुरु, आप इसे उस रूप में करके दिखाएं जिसमें हम चाहते हैं। आप वो करें जो हम चाहते हैं, वहीं जाएं जहां हम चाहते हैं, जहां हम कहते हैं कि आप जाएं। ओह हाँ, उस यीशु के ऊपर उनका कोई बस नहीं था। नहीं श्रीमान, यही वजह थी कि उन्होंने इसे अपने बीच में से हटा दिया। जी हाँ, जी श्रीमान, वे लोग आज भी वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं और गिरजों के उस महासंघ के जरिए अंत में वे अपने इस लक्ष्य को पा लेंगे। सभी लोग उसी में शामिल होने जा रहे हैं। वही जानी पहचानी पुरानी पुकार है। यहाँ हम देखते हैं कि फिर से वैसी ही अति पवित्र जगह है। वहाँ सर्वश्रेष्ठ सुसंस्कृत धार्मिक शिक्षा शास्त्री हैं। वे फिर उसी यीशु के विरुद्ध चिल्ला रहे हैं। वही लोग उसके खिलाफ हैं जो कि धर्म पंडित हैं और जिन्हें उसके बारे में लोगों से ज्यादा पता होना चाहिए। अति उच्च गिरजों ने और सर्वश्रेष्ठ धार्मिक शास्त्रियों ने ही उसे अपने बीच में से निकाल दिया है। वे उसे नहीं चाहते। आप कहेंगे, भाई ब्रणम ये बात गलत है, तब आप यहाँ नहीं थे जब कलीसियाई कालों के विषय वचन प्रचार किया गया था, या आपने उसे सुना नहीं। आप यहाँ नहीं थे जब हमने देखा था कि केवल लौदीकिया काल ऐसा है जिसमें यीशु को उन्होंने बाहर निकाल दिया था और वो बाहर खड़ा खटखटा रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने उसे अपने लिए उपयोगी नहीं माना। उन्होंने उसे फिर से सलीब पर चढ़ा दिया है। आमीन। और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे? याद कीजिए कि दूसरे तिमोथियस 3 अध्याय में परमेश्वर के वचन में नबी ने पहले ही से हमें ये सब बता दिया है। आप ये हवाला लिख लें, हमारे पास समय नहीं है कि हम इसे पढ़ें। उसने कहा था कि अंत के समय में खिल्ली उड़ाने वाले आएंगे। लोग अभिमानी, डींग मार और अपस्वार्थी होंगे, परमेश्वर के नहीं वरन वे सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे दोष लगाने वाले, कृतघ्न, असंयमी, कठोर, भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से बचे रहना, क्योंकि यही तो वो किस्म होगी जिसमें बाल कटवाए स्त्रियां होंगी, मूर्ख स्त्रियां होंगी, पुरुषों के वस्त्र पहने, चेहरों को सौंदर्य प्रसाधनों से पोतने वाली महिलाएं जगह जगह पाई जाएंगी और वे लोगों को गुलामी में ले जाएंगी। ठीक ऐसा ही है। उसने कहा कि अंत समय में ऐसों से परे रहना। आइए हम नबी की बात माने, अंत समय में उन बातों से बचकर रहें। आप यहाँ बैठे हैं। अब मैं इस कलीसिया से कह रहा हूँ, श्रीमान, हाँ, आप इन बातों से परे रहें। आज के सेवक गणों को ये बातें जाननी चाहिए। उन लोगों को अपने समय में यीशु को जान लेना चाहिए था, उन्हें तब ये जानना चाहिए था और अब भी जानना चाहिए, लेकिन वे जानते नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन यहूदी शिक्षकों को जो यीशु के समय थे, उसके बारे में अपने समय के द्वारा जान लेना चाहिए था, इसी तरह आज उन्हें परमेश्वर के जीवन प्रकट किए वचन को जान लेना चाहिए। वह वचन था और उसने प्रमाणित किया कि वह वचन है। उसने साबित किया था कि वह उस समय का वचन था। परमेश्वर ने आज ये साबित कर दिया है कि वह ही आज का वचन है, आज की ज्योति है। उन लोगों को तब जान लेना चाहिए था और आज भी लोगों को ये जान लेना चाहिए। उन्होंने ही उसे तब सलीब दी थी और वे ही उसे अब सलीब दे रहे हैं। मैं उन पर ऐसा करने का अभियोग लगाता हूँ, ठीक है। ये बात मेरे अंदर से उमड़ती ही चली आ रही है। उन पर यह अभियोग है क्योंकि खुदा उनसे इस अपराध का मूल्य वसूल करेगा। उस समय के यहूदियों के बारे में यीशु ने जब वो धरती पर था कहा था, अय यरूशलम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे एक बड़ी कलीसिया में जमा कर लूं, मगर तूने नहीं चाहा। किस तरह से इस अंत समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को जमा करना चाहा, मगर लोग नहीं माने। तुमने अपने मतों को चाहा है, अतः अब तुम्हें नाश होने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसा ही यरूशलम के साथ हुआ था। उसे जलाया गया, उसे बर्बाद किया गया और वो बाकी नहीं बचा था। और ठीक ऐसा ही हाल इन बड़ी बड़ी हस्तियों का आजकल में होने जा रहा है। आपके बड़े बड़े नामधारी धार्मिक समुदाय और ये बड़े सिद्धांत मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मगर परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा अनंत काल तक जीवित रहेगा। उसके गहरे घाव उसे उसके मित्र कहे जाने वाले लोगों ही से मिले। इस बारे में सोचिए, सोचिए, इस पर सोचिए। रुकिए, मैं एक मिनट यहाँ रुकता हूँ। सेवक महोदय, आप इस बारे में सोचें, उसके ये घाव कहाँ से आए? उसके तथा कथित मित्रों के द्वारा। जैसा तब हुआ था वैसा ही आज हुआ है। इसके बारे में सोचिए कि कलवरी क्रूस पर उसे जंगली, क्रूर व असभ्य मनुष्यों ने नहीं घेरा था, मगर उसके चारों ओर उसके सेवक गणी थे जिनका दावा था कि वे उससे प्रेम करते हैं। और आज जबकि सुसमाचार पूरी तरह से पहचान लिया गया है, जबकि उसके जी उठने के जबरदस्त चिन्ह हमारे बीच में प्रमाणित कर दिए गए हैं, इस पर भी क्या जो लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं वे वही तथाकथित उसके सेवक नहीं हैं? आज भी वैसे ही लोग उसको घेरे हुए हैं जिनसे उम्मीद करी जाती है कि वे उससे प्रेम करेंगे, मगर वे यही कहते हैं कि हमें इस प्रकार का सुसमाचार नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये मनुष्य हम पर प्रभुता करे। हम इसको सहयोग नहीं देंगे। हमारा सहयोग कदापि न मिलेगा अगर ये सारी बातें इस शहर में इस तरह से करी जाएंगी। ये सब और कुछ नहीं, शैतानी बातें हैं और दुष्ट आत्माओं से संबंधित हैं। मगर ये लोग वचन को नहीं पहचान रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते और अंधा अंधे को उसी तरह से मार्ग दिखा रहा है जैसा तब था। इस बारे में सोचिए, वैसा है अब हो रहा है जैसा तब था। जरा सोचिए, लोग परमेश्वर की उस सामर्थ का इनकार करते हैं जो आदमियों और औरतों को चंगा करती है और इस दुनियावी प्रेम के बंधनों से मुक्त करती है, जो उन्हें बाल कटाने, इजाबेल की तरह चेहरे पोतने और स्वयं को मसीही कहलाने वाले झूठे जीवन से बचाती है, धूम्रपान करने, गंदे मजाक से परे रखती है, जो उन्हें मसीही धार्मिक झूठी संस्थाएं बनाने और झूठी बातें गढ़ने से रोकती है, जो उन्हें सड़कों पर छोटे छोटे वस्त्र पहनने से बाज रखती है और ऐसे कामों से बचाती है, ऐसे ओछे काम करके भी खुद को दूसरी औरतों के सामने मसीही कहलाने से रोकती है। आपको वो कथा याद होगी जिसे मैंने एक दास के बारे में बताया था जो एक कबीले के राजा का बेटा था, उसमें वैसा ही चरित्र था। हमें कैसा होना चाहिए? हम स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए? इन पादरी गणों और उनके मंचों से ही यीशु को उसके घाव मिले हैं। उन लोगों ने ऐसे गंदे जीवन की आज्ञा प्रदान कर रखी है। किस तरह से ये घाव दिए जा रहे हैं? वे उस सामर्थ का इनकार करते हैं जो लोगों को दासता से मुक्ति दिलाती है और अपनी बात की पुष्टि करते हैं। जबकि एक स्त्री के लिए बाल कटवाना परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, या चेहरे को पोतना, या पुरुषों के वस्त्र पहनना, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। लेकिन वे लोग इन बातों की पुष्टि करते हैं, इस तरह एक और सलीब बना डालते हैं। कहाँ से? क्या सड़कों पर गंदे काम करके? क्या शराब खानों से? नहीं, अपने धार्मिक मंच से, वेदी से। और देखिए कि उस समय लोग क्या चिल्ला रहे थे। वह स्वयं को परमेश्वर बनाता है। उन्होंने उसके परमेश्वरत्व का इंकार किया। उन्होंने उसके मुंह पर थूकना चाहा और उसमें से तीन या चार खुदा बना दिए। जबकि वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर था और वो ही सर्वदा परमेश्वर रहेगा, जो कल आज और युगानुयुग एक सा है। जब आप उनसे खुदा की बात कहते हैं तो वे हंसते हैं। हम तो पवित्र त्रिएकता पर विश्वास करते हैं। मैं एक पवित्र खुदा पर विश्वास करता हूँ। उसी के पास चंगा करने, आजाद करने और लोगों को दुनिया के प्रति प्रेम से अलग करने की सामर्थ है। उसी के पास सामर्थ है कि इन्हें बंधनों से मुक्त करे, जैसा उसने मरियम मगदलीनी को किया था। याद रखिए कि वो भी चेहरा रंगने वाली एक इजाबेल थी। उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थीं। वह भी आधुनिक महिलाओं की तरह सड़क छाप स्त्री थी। आप कहीं भी जाकर आज ऐसा देख सकते हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानते कि लोग नंगी स्त्रियों के मंदिर के आगे सिर झुकाते हैं, तो आज जाकर सड़कों पर देखिए। जैसा सदोम के दिनों में था, वैसा ही होगा। अगर आप नहीं मानते तो कहीं भी जाकर सड़कों पर देख लें। कोई पत्रिका, कोई अखबार, कोई भी विज्ञापन उठाकर देखिए, क्या मिला वहाँ। याद करें कि तब क्या कहा गया था, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिन जिन से चाहा उनसे ब्याह कर दिया। इंग्लैंड के हंगामे को देखिए, यहाँ के हंगामे को देखिए, देखें कि सभी कुछ वैश्यावृत्ति का घर बन गया है। ऐसा क्यों है? क्यों रूस साम्यवादी बना? सिर्फ कैथोलिक गिरजे की गंदगी, अश्लीलता और सामर्थ्य विहीनता के कारण। और ठीक यही आज इस देश में है कि ये गिरजों के महासंघ में शामिल हो रहा है और वो कैथोलिक गिरजे में मिल रहा है, क्योंकि साम्यवाद और कैथोलिक वाद को मिलना है, क्या आपको पता है? और वे यही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया जो उन्हें भिन्न प्रकार के लोग बनाता। क्या मूर्खता है! ठीक यही वजह है। और पादरीगण अपने गिरजों के मंच से इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, भोजन यात्रा का एक टिकट पाकर या किसी मत सिद्धांत के सामाजिक स्तर के कारण। हाँ, बस वो यही कहना चाहते हैं कि मैं फला फला संस्था का सदस्य हूँ। वे परमेश्वर की सामर्थ को ज्ञान से बदल रहे हैं, वो सामर्थ जो उन्हें मरियम मगदलीनी की तरह स्वतंत्र कर सकती कि वे इस पागल नस्ल से बच सकें। परमेश्वर की सामर्थ जो उन्हें इस सड़क पर चल रहे नंगेपन से बचाकर वस्त्र पहनना सिखाकर एक भली स्त्री बनाती, उन्होंने उसका इंकार कर दिया। उनके भीतर की मसीहत उभर सकती थी। लोगों ने उस सामर्थ को दोषी ठहराकर उस मनुष्य को जिसमें ये सामर्थ थी सलीब पर चढ़ा दिया। आज वही सुसमाचार और पवित्र आत्मा इस नंगेपन को इनसे छुड़ा सकता था। वही इन्हें एक भली स्त्री की तरह कपड़े पहनना और मसीही महिला की तरह व्यवहार करना सिखा सकता था। वे उसे पागलपन कहते हैं और अपनाना नहीं चाहते कि कहीं उनके गिरजों में लोग इसे मान लें और कहीं उनकी स्त्रियां भली बातें ना अपना लें। वे क्या करते हैं? जैसे पहले किया था, ठीक उसी तरह एकदम अपने गिरजों से उन्हें निकाल कर बाहर करते हैं। और अब वे उसी वचन को सलीब पर चढ़ाते और कहते हैं कि वह तो किसी और समय के लिए था। मैं फिर उन पर अभियोग लगाता हूँ। हाँ श्रीमान, ठीक वैसे ही जैसे वे तब दोषी थे। उस बूढ़े अशुद्ध आत्माओं से भरे मनुष्य के संबंध में वह एक चिन्ह था जिसका नंगा पर दूर हुआ और उसने वस्त्र पहने थे। आप याद रखें कि अगर कोई मनुष्य वस्त्र ना पहने तो वह पागल कहा जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर स्त्रियों को क्या कहा जाए? वह व्यक्ति पागल था, उसने अपने कपड़े उतार फेंके थे। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसे चंगा किया, वस्त्र पहनाए, उसका दिमाग ठीक किया और फिर वो यीशु के कदमों में बैठ गया। जब वहाँ उनके मतों ने उन्हें अंधा बना रखा था, तब बूढ़े बर्तिलमाई को देखें कि प्रभु की सामर्थ्य ने उसके अंधेपन को दूर किया। आज भी धरती पर उतना ही अविश्वास है जितना तब था, मगर यीशु रुका नहीं, आगे ही बढ़ता गया। उसने उनकी छींटा कशी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उनसे कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु ने उनके सारे मामले को दोषी ठहराया था। प्रभु की सामर्थ्य थी जो लाजर को कब्र से जिला लाई थी और जिसने नाइन गांव की उस महिला को उसका बेटा दिया था। हे परमेश्वर, वह सामर्थ जो ये सब कर सकती थी, सारी बातों के होने से पहले ही उनको प्रकट कर सकती थी, जिसने कहा था कि वहाँ गधे या लादू के दो बच्चे बंधे मिलेंगे, और इसी तरह बहुत सी बातें जो यीशु ने पहले से बता दी थी। ठीक उसी मनुष्य को जिसमें यह सामर्थ थी मार दिया। उन्होंने कहा, हमें नहीं चाहिए, इसे दूर करो, हमारे लोगों में से हटा दो, ये व्यक्ति हमारी धार्मिक शिक्षा को दूषित करता है, और उन्होंने उसको सलीब दे दी। आज भी ठीक वही बात है, पवित्र आत्मा को दूर करो, वे लोग इससे कुछ मतलब रखना नहीं चाहते। ये ऐसे ऐसे काम करता है, हम पर दोष लगाता और हमारे लोगों को भरमाता है। हम इसे अपनी संस्था में शामिल नहीं करना चाहते, ये हमारे मतों का विरोध करता है। वे उसे फिर से सलीब पर चढ़ा रहे हैं। ओह प्रभु, अब ध्यान दीजिए, बस खत्म करने वाला हूँ, समय हो चुका है। वे इसे फिर पागलपन बताते हैं। उन्होंने उसे भी संकी बताया था, वे कहते थे कि वो पागल है। हर कोई ये बात जानता है, पवित्र शास्त्र कहता है, उन फरीसियों ने यीशु के लिए कहा था, ये मनुष्य सामरिया का एक पागल है। अब देखिए कि पागल शब्द का क्या अर्थ है, यानी सनकी। ये पागल है, सनकी है, और कुछ सनकी लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसमें तो बालजबूल है, और आज फिर वो ऐसा ही कह रहे हैं। ये किसी तरह का मंत्र टोना और भावी बताना है। ऐसी बातें कहकर आज फिर से लोग उसे अनादर के क्रूस पर टांग रहे हैं। कैसी सलीब है, कैसा अनादर है। उस जीवंत जाहिर किए वचन का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों से कहते हैं कि ये शैतानी ताकत से किया जा रहा है। उसने कहा था कि लोगों ने परमेश्वर के द्वारा किए जा रहे पवित्र कार्यों को अशुद्ध आत्मा के काम बताया था। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। उसके वचन का अनादर करके उसे गलत और उल्टा बताते हैं। उस वचन को धोखा या सनकीपन कहते हैं। ऐसी सभाओं में मत जाओ, ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। ऐसा कहकर वो लोग क्या कर रहे हैं? वे अपने नामधारी धार्मिक संगठनों के मतों और सिद्धांतों रूपी कीले जड़ रहे हैं। ये सच है। आज के ये सुख विलास प्रेमी शिक्षक हैं, परमेश्वर रहित दुनियावी धार्मिक समुदायों के पागल लोग हैं। ये नामधारी गिरजों की कीलों से परमेश्वर के पुत्र को अपने धार्मिक मंचों पर फिर से सलीब दे रहे हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? वे मनुष्यों की प्रशंसा के प्रेमी हैं और उन पदों के लोभी हैं जो उनका गिरजा उन्हें दे सकता है। परमेश्वर के वचन से ज्यादा प्रेम वो ऐसी बातों से रखते हैं। मैं उन पर दोष लगाता हूँ। वे अब वचन पर चल नहीं सकते क्योंकि वे दुनिया के मामलों में चल रहे हैं, क्योंकि वे दुनियावी रीति पर चल रहे हैं। ये हमारे आज के दिन पागलपनों से भरे दिन है जिनमें हम रह रहे हैं। क्या मेरे प्रभु के लिए एक ही सलीब काफी नहीं है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपसे तो आशा करी जाती है कि आप उसे प्रेम करेंगे। आपको पता है कि ये उसी का वचन है। आप प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में से पढ़ सकते हैं। लिखा है, जो कोई इन वचनों में से एक शब्द भी ना घटाए और ना बढ़ाए, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या उसके लिए एक सलीब काफी नहीं? मैं उसका वकील हूँ और उसके पक्ष में वकालत करने खड़ा हुआ हूँ। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पर अभियोग लगाता हूँ और कहता हूँ कि या तो आप अपना आचरण बदल लें या फिर नरक में जाएंगे। तुम्हारे नामदारी गिरजे चूर चूर हो जाएंगे। ठीक इस समय मैं न्यायाधीश की उपस्थिति में आप पर दोष लगा रहा हूँ। आप भक्ति का भेष भरे हुए सन की लोग हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है? क्या एक बार क्रूस पर चढ़ाया जाना काफी नहीं है? पतरस ने यही कहा था कि तुम्हारे धार्मिक संगठनों के बाप दादों ने यही किया था। उसने उन पर दोष लगाकर पूछा था कि किसने ऐसा ही नहीं किया था। स्तिफनुस ने भी उन पर दोषारोपण किया था, तुमने दुष्ट हाथों से जीवन के राजकुमार को सलीब पर चढ़ाया है। क्या यीशु ने खुद उनसे नहीं कहा था कि तुम्हारे किस बाप दादे ने भविष्यद्वक्ताओं को घात कर उनको कब्रों में नहीं डाला है और तुम उन कब्रों पर बाद में चूना पोतते हो? सभी कालों में धार्मिक जनों के संग ऐसा ही होता आया है। इसीलिए आज उन सुसभ्य गिरजों में जाने वाले मसीह का इंकार करने वालों पर मैं अभियोग लगाता हूँ। तुम अपनी भक्ति का वेश धारण करके मेरे मसीह को दूसरी बार सलीब पर चढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम लोगों से कहते हो कि ये वचन आज के लिए नहीं है, ये तो किसी और समय के लिए था। मैं तुम पर दोष लगाता हूँ कि आप उसी अपराध के दोषी हैं जो उस समय कलवरी क्रूस पर चढ़ाते समय किया गया था। पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर फिरो या फिर नाश हो जाओ। मैं फिर से ही बात कह रहा हूँ, यहाँ के नामधारी गिरजे, यहाँ के धार्मिक शिक्षक उसी वचन की निंदा कर उसे सलीब दे रहे हैं, उसे घात कर रहे हैं जो कि वचन है। परमेश्वर इन पर दया करे। मुझे ये बात फिर से कहने दीजिए ताकि ये पूरे टेप में गूंजे। यहाँ के नामधारी गिरजे, धार्मिक लोग, पादरीगण उस वचन की निंदा करके सलीब दे रहे हैं, उसे मार रहे हैं जो वचन है। आश्चर्य नहीं कि फिर वैसा ही हो रहा है। चटकती चट्टानों और काले आकाश के तले मेरे उद्धारकर्ता ने सिर झुकाया और प्राण दिए। लेकिन मंदिर के दो भाग हुए पर्दे ने स्वर्गीय आनंद और अनंत जीवन वाले दिन का मार्ग खोल दिया। मैं ये सब इस सभा के सामने और टेप में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कह रहा हूँ। जो प्रभु की ओर खड़ा होना चाहता है वह कौन है, वो इस वचन के तले आ जाए। परमेश्वर अपने जीवन प्रकट किए वचन की निंदा करने और उसे सलीब देने के लिए निश्चित रूप से आज की इस दुष्ट मसीह का इंकार करने वाली, उसकी निंदा करने वाली पीढ़ी को न्याय में खड़ा करेगा। मैं दोष लगाता हूँ, आप पर न्याय आ पड़ने वाला है। मूसा ने पूछा था कि प्रभु के संग कौन आना चाहता है, वो मेरे साथ आ जाए। वहाँ उस समय वहाँ आग का सतून प्रमाण बनकर खड़ा था। प्रभु की तरफ कौन है? वह अपने मतों का इंकार करे, वचन को थामे और नित्य यीशु मसीह के पीछे चले। और सुबह मैं आपसे मिलूंगा। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं।
ओ लॉर्ड गॉड, द गिवर ऑफ इटर्नल लाइफ,
हे प्रभु परमेश्वर, तू जो अनंत जीवन देने वाला और वचन का रचयिता है, तूने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया। इस अविश्वासी पीढ़ी के सम्मुख जीवित यीशु को प्रकट किया। पूरा आराधनालय लोगों से खचाखच भरा है और सुबह से अब तक काफी समय बीत चुका है। चारों ओर लोग खड़े हैं और इसके टेप तैयार किए जा रहे हैं ताकि उन्हें दुनिया में सब तरफ फरक फरक स्थानों पर भेजा जा सके। गिरजों के पादरीगण इन टेपों को एकांत में अपने अध्ययन कक्षों में सुनेंगे। प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। होने दे प्रभु कि ये वचन उनके दिलों में गहराई तक उतर कर समा जाए, उनके अंदर से सारी दुनियावी बातों को काट दे, ताकि वे भी केंटकी के मेथोडिस्ट चर्च के उस पादरी की तरह से कह सकें जो उस दिन मेरे पास आया था। इसने बताया, जब मैं सेवन चर्च एजेस या सात कलीसियाई कालों के टेप सुन रहा था तो मेरे अंदर से एक पुकार उठी, इन बाबुली दीवारों में से बाहर आ जाओ। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, मगर मैंने वे नामधारी गिरजा छोड़ दिया। उस नवयुवक व्यक्ति का साहस आशीष पाए जिसके परिवार में उसकी पत्नी और दो तीन बच्चे हैं। परमेश्वर, बहुत से लोग काश तेरे वचन तक पहुंचने का मार्ग पा सकें, क्योंकि वही जीवन का एकमात्र मार्ग, क्योंकि वही वचन है। हे पिता, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। कभी कभी ये बातें जो कही जाती हैं सख्त लगती हैं, मगर ये प्रेमवश हैं, क्योंकि प्रेम सुधारात्मक है। और हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग इन बातों को इसी रूप में ले सकें, समझ सकें, जिनका अर्थ केवल उन्हें सुधारना है। आपने प्रभु उन्हें सुधारने के लिए सलीब से यही प्रार्थना करी थी, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मैं आज उन सेवकों के लिए ऐसी ही प्रार्थना कर रहा हूँ जो अपने मतों, सिद्धांतों, विधियों को जीवनदायी वचन के बदले ग्रहण कर उसे फिर से क्रूस दे रहे हैं। फिर से लोगों के सामने वे इस वास्तविक सच्चाई का इनकार करते हैं कि परमेश्वर अपने को सत्य और जीवन प्रकट कर रहा है। पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें फिर से विवाह भोज में बुला लें, और पिता ऐसा हो कि इस बार कोई बहाना न बनाए और आ जाएं, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं कि अंतिम पुकार कहीं लौट न चुकी हो, कहीं बहुत देरी न हो चुकी हो, लेकिन विश्वास कर रहा हूं कि आज भी समय है। इस छोटी सी उपस्थित सभा को आशीष दीजिए, इन्हें जो ये कुछ 100 लोग बैठे हैं आशीष दें। इन्होंने सुबह से इस गर्मी में 2-2.5 घंटे तक वचन सुना है, ये उठकर नहीं गए, बैठे और सुनते रहे हैं। बहुत से लोगों ने खाना भी नहीं खाया है। यहाँ बच्चों को गोदी में लिए महिलाएं खड़ी रही हैं, उन्होंने प्रत्येक वचन को सुना और थामा है। प्रभु, मैं समझता हूँ कि अगर मैं इन लोगों को गलत दिशा दिखाऊं तो न्याय के दिन मेरा क्या होगा। मैं इस बारे में इतना सचेत हूँ प्रभु कि मैं चेतनता को छू सकता हूँ। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें वचन में लौटा कर ले आऊं, ताकि वे वचन को जी सकें। मैं उन्हें कहता हूँ कि प्रभु, आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। वही यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह है। आपने कहा था कि वही यीशु पवित्र आत्मा के रूप में आएगा। थोड़ी देर बाद ये दुनिया मुझे फिर न देखेगी, मगर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ वरन तुम में होऊंगा। और मुझे पता है प्रभु कि आज ये आप ही हैं, और हम आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप हमारे मध्य में वैसे ही अद्भुत काम फिर कर रहे हैं। आज हम अत्यंत विनम्रता के साथ आए हैं, हम सब जो यहाँ इस सभा में हैं, तथा प्रभु जो ठीक इस समय इन टेपों को सुन रहे हैं, काश प्रत्येक पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की जो यहाँ खड़े या बाहर इन टेपों को सुन रहे हैं, काश इसी क्षण हम पूर्ण रूप से खुद को तेरी सेवकाई के लिए अर्पित समर्पित कर सकें। प्रभु, अपनी सामर्थ्य में होकर पूरी सभा में आप जुम्बिश करें और बीमारों को चंगाई दें। उन्होंने बताया है कि यहाँ एक छोटा अपंग बच्चा है, होने दे कि वह महान पवित्र आत्मा उसे छुए। हम जानते हैं कि इस प्रकार से उसकी उपस्थिति में बैठने से वह चंगा कर देगा। आप तो रेडियो, दूरदर्शन के द्वारा अपना वचन भेजकर लोगों को चंगाई देते हैं। आप बस अपना वचन भेजते हैं और लोग चंगाई पा जाते हैं। वैसा ही आप इसी क्षण कर सकते हैं। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आप हर एक बीमार को चंगा कर दें, हर एक अपंग को, बीमार को चंगाई दें जो इन वचनों को सुनता है। परमेश्वर, मेरी विनती उनके लिए है। इस प्रार्थना को स्वीकार कर, उनकी आवश्यकता को अनुभव करके और मसीह के प्रेमवश जो मेरे दिल में है, मैं ये विनती कर रहा हूँ। इस बलिवेदी पर मैं उन्हें प्रभु आपको सौंपता हूँ, उस वेदी पर जहाँ वध किया मेमना खड़ा है, जो हमारे पापों और बीमारियों को साफ करने के लिए वध किया गया है। मैं निवेदन करता हूँ कि आप इन पर करुणा करें। प्रभु, मैं वैसा ही करना चाहता हूँ जैसा मूसा ने किया था जब वो तेरे और लोगों के मध्य आ खड़ा हुआ था। प्रार्थना करता हूँ कि उन पर दया कर और उन्हें फिर से मौका दे। प्रभु, अपनी करुणा को अभी न उठा, सुसमाचार को थोड़ा और लोगों तक पहुँच जाने दे। प्रभु ये लोग दोषी पाए गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी दया और अनुग्रह थोड़ा और उपलब्ध रहे, जब तक कि वो अंतिम मनुष्य भी ना आ जाए जिसका नाम जीवन की पुस्तक में है। मुझे पता है लोग आएंगे। प्रभु तेरे दिव्य वचन के द्वारा प्रार्थना से ये मुश्किल नहीं है, उस वचन के द्वारा जिसकी प्रतिज्ञा दी गई और जिसे जीवंत प्रकट किया गया है, उस वचन के द्वारा ये हो जाएगा जिसने लोगों को जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन रखा है। यह असंभव नहीं है कि जब आपसे प्रार्थना करी जाए कि आप उन्हें बचा लें जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप विनती स्वीकार करेंगे। यीशु ने कहा था, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वो सब मिल जाएगा, और तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे खींच ना ले। हे परमेश्वर, अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी ये वचन सुने जा रहे हैं, यहाँ या दूर टेप में, तेरा पवित्र आत्मा तुरंत चुने जन को अपने पास बुला ले, उन सभी को जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले से मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। काश वो आज परमेश्वर की इस बोलती आवाज को सुन सकें और उनके हृदय में वो मधुर धीमी आवाज उनसे कहे कि यही मार्ग है, इस पर चले चलो। पिता, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। इसे मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ। और अब जबकि यहाँ सभा में हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, आप विश्वास करते हैं कि ये सच है? मैं इस समय उन वस्त्रों आदि पर प्रार्थना के लिए अपने हाथ रख रहा हूँ जो बीमारों के लिए और दुर्बलों के लिए हैं। मैं अब आपसे बड़ी वफादारी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ केवल इसलिए नहीं आता कि लोग बस मुझे सुने। मैं थक चुका हूँ, टूट गया हूँ। मैं अब उतना जवान नहीं रह गया हूँ कि जितना हुआ करता था, और मुझे मालूम है कि हमारे दिन गिने चुने रह गए हैं, और मुझे पता है कि मुझे अपनी सारी मेहनत लगानी है, और जो कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे वो करना है। मुझे जब भी अवसर मिलता है वचन प्रचार करना है, मुझे वचन प्रचार के लिए जाना ही है, चाहे मुझे जाना अच्छा लगे या नहीं। मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि मैं आना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और मैं इतनी सख्त और दुखदायी बातें बस इसलिए ही नहीं कहता हूँ कि कहना चाहता हूँ। मेरे अंदर एक सनसनाहट स्पंदन होता है, एक यही चीज जो जीवन प्रकट कर दी गई है मुझे ये सब करने को बाध्य करती है, और मैं ये बातें प्रेम और नम्रता सहित कहता हूँ। मेरा ये अर्थ नहीं होता कि मैं अपने भाइयों और बहनों को फटकार लगाऊं। भाइयों बहनों, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मेरा अर्थ केवल ये होता है कि मैं आपको ऐसे स्थान में खड़ा कर दूं जहाँ से आप परमेश्वर के कोड़े और उसके सुधारात्मक प्रयास को साफ देख सके। अब आपको वचन में जरूर आ जाना चाहिए, इन बातों को टालिए मत। आप पहले ही काफी प्रतीक्षा करा चुके हैं। अब आप में से वे लोग जो यहाँ बैठे हैं और अपने पूरे हृदय से स्वयं को प्रभु के संग रखना चाहते हैं, हाथ उठाएं। जो बाहर दूसरे स्थानों में टेप सुन रहे हैं वे भी यही करें, सिर झुकाए हुए हाथ उठाएं, मगर केवल वैसे ही दिखाने के लिए हाथ मत उठाएं। अब अगर वास्तव में आप दिल से चाहते हैं कि प्रभु के साथ पवित्रताई का जीवन बिताएं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ उठाएं। आपको प्रभु आशीष दे। अब आप मसीह के संग उसकी निंदा का भार उठाने की चेष्टा के लिए समर्पित होकर मसीह में नए बन गए हैं। कहिए कि मैं मसीह के लिए प्रत्येक तिरस्कार उठाने को आज तैयार हूं। मैं खुद भी अपने दोनों हाथ उठाए हुए हूं। मैं भी यीशु मसीह की निंदा अपने ऊपर लेना चाहता हूं। मुझे ढोंगी, पाखंडी या जो भी लोग कहना चाहें, ऐसे उपनाम सहने में खुशी है। मैं ऐसे सभी नाम या तिरस्कार गर्व के साथ सहूंगा, क्योंकि ये प्रभु की खातिर है। मैं गर्व सहित ये चिन्ह पहनूंगा। क्या आप सभी ऐसा ही नहीं करना चाहते? अपने हाथ उठाकर कहिए, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ऐसा ही चाहता हूँ। उसके चेले फिर कर आए थे। उन्होंने यही सोचा था कि उसके नाम के लिए निंदा सहना आदर की बात है। या फिर आप किसी हॉलीवुड अभिनेता या दूरदर्शन सितारे आदि के लिए ऐसा करेंगे, या किसी नामधारी गिरजे के लिए ऐसा करेंगे, या आप यीशु मसीह के वचन के लिए निंदा सहना चाहते हैं? प्रभु मुझे अपने वचन के लिए निंदित होने का अवसर दे। मुझे पता है कि यीशु ने परमेश्वर के वचन के लिए निंदा सही थी। प्रभु मुझे भी ऐसा करने का अवसर दीजिए, और ये पवित्र क्रूस मैं उठाऊंगा जब तक मृत्यु मुझे अलग न करे। तब अपने घर जाऊंगा कि ताज पहनूं। एक दिन हमको एक ताज मिलेगा, अभी वो तैयार किया जा रहा है। हमें मालूम है कि जब यह धरती पर का हमारा जीवन समाप्त होगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ वेदी पर स्थान नहीं है कि लोगों को बुलाया जा सके। जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं उसी स्थान को वेदी बनने दें। वचन कहता है, जितनों ने विश्वास किया। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मुझे लगा कि सभागार में सभी नवयुवक और बूढ़ों के हाथ उठे हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब भी ये टेप सुने जाएं और लोग अपने हाथ उठाकर घर में घुटनों पर झुकाएं, जब पिता, माता और परिवार एक दूसरे के हाथ थामकर कह उठें कि प्रिय, हम वर्षों से नामधारी गिरजों के सदस्य रहे, आओ अब हम मसीह के पास आएं, तो प्रभु आप ये प्रार्थना ग्रहण कीजिएगा। इन लोगों को आशीष दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप उन्हें पवित्र जीवन दें। प्रभु बहुत से लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, ये आपके जन हैं, बस ये सच्चाई नहीं जानते थे। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि इन्हें अपना सत्य दिखाएं। आपका वचन ही सत्य है। आपने प्रभु जैसा कि कहा था, मैं सोचता हूँ कि यूहन्ना के 17 अध्याय में कहा था, पिता इन्हें अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। और तेरा वचन आज भी सत्य है, ये हमेशा सत्य है, क्योंकि यही परमेश्वर है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र बनाएं, यानी सारे मतों, सिद्धांतों, धार्मिक गिरजों की विधियों के बंधनों से निकालकर इन्हें शुद्ध और पवित्र करें। सारी दुनियावी बातों से हटाकर इन्हें वचन के पवित्र जीवन में ले आएं। प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण करें। ये सभी जन अब आपके हैं, आपने ऐसा करने का वायदा किया था, और तेरा एक सेवक होने के नाते मैं इनके लिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब जबकि हम प्रार्थना जारी रखते हैं, तो सिर झुकाए हुए इस भजन को गाएं।
Jesus paid all to him. Think of it. Yesterday I was in a place.
कल मैं एक जगह था और अपने सूट का नाप दे रहा था। हमारे आराधनालय का एक भाई मेरे लिए सूट का कपड़ा खरीद कर लाया था। उसने कहा, आपका सूट गर्म दिखाई दे रहा है, जबकि मैं ठंडा खरीद कर लाया था। और मैं सूट का नाप देने गया तो उसने कहा, क्या बात है कि आपका सीधा कंधा नीचे को झुका हुआ है, यकीनन इस पर आपने कभी बहुत भार लादा होगा। और मैंने सोचा, हाँ, पापों का भार था, मगर यीशु ने सब मूल्य दे दिया। हम ये गीत गाते हैं, सुनिए।
Then all my life to him I. What had sin done? Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. God be merciful to us.
परमेश्वर, इस आत्मचिंतन के गहरे समय आप हम पर दया करें। काश प्रभु ये वचन दिलों में गहराई तक सोखा जा सके। भोजन के लिए लोगों को देरी हो रही है, मगर प्रभु ये भोजन से अधिक जरूरी है, ये जीवन है। मेरा वचन खाने की चीज है, आपने ऐसा ही कहा था, और हमारी भूखी आत्माएं इसी को खा रही हैं। हे प्रभु, हमें उठाइए, ढालिए। प्रभु, मुझे भी इनके संग लीजिए, मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। प्रभु, विश्वास के द्वारा अब मैं ऊपर कलवरी पर पहुँच रहा हूँ। मेरे संग मेरी ये सभा है। प्रभु, बस आप मुझे फिर से रच दे। मैंने बहुत बार गलतियाँ करी हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं प्रचार कार्य बंद करने जा रहा था। लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वे वही सब किए जा रहे थे, और मैं निराश हो गया था। मेरे अंदर हीन भावना आ गई थी। हे परमेश्वर, कुछ रविवार पहले आपने वहाँ बाहर एक स्थान पर मुझे एक चिन्ह दिया था, और जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था तो देखा कि आपने मेरे स्वप्न की तरह से ही मूसा को भी वही कहा। वहाँ भी एक पहाड़ उसके लिए चिन्ह ठहरा था, और उस पाप के आखिर में मुझे दिखाया गया था कि असंख्य बीमार लोगों को छोड़कर मैं चला गया था। जबकि ये सेवकाई भविष्यद्वक्ता की सेवकाई मात्र नहीं, वरन इसमें वचन की शिक्षा देना और बीमारों को चंगा करना शामिल है। तब उस दिन ठीक यहाँ फर्श पर आपने एक आदमी को पूरी तरह से मृत किया, फिर आपने अपने वचन की पुष्टि के लिए उसे फिर से जीवन दे दिया, ताकि आपका वचन सत्य प्रकट हो। आप हमेशा अपने वचन की पुष्टि करते हैं। अब प्रभु, जब मैं ठीक आपके सिंहासन के सामने हूँ, इन बातों की पुष्टि कीजिए। प्रभु, इन लोगों में से हर एक जन को आप ग्रहण कीजिए। हमारे भीतर से सारी दुनियादारी बाहर कर दीजिए। जबकि हम आपकी उपस्थिति में हैं, हमें स्वीकार कीजिए। परमेश्वर, ठीक अभी आपका वचन हमारे दिलों में बैठ जाए। दुनियादारी की बातें और उनके प्रति हमारे झुकाव को परे काट दे। काश हम पवित्र किए मसीही जन बन जाए। हे परमेश्वर, हम प्रेम करने योग्य, नम्र, मधुर और पवित्र आत्मा के फलों से भर जाए। प्रभु, क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? हम आपके सिंहासन के सामने खड़े हैं। हम में से प्रत्येक पर पापों के लाल धब्बे लगे हैं। मगर प्रभु आपका लहू उन्हें बर्फ की तरह सफेद बना सकता है। हम आप पर आस लगाए हैं, इस विनती को ग्रहण करें, हमें अपना लें, हम आपके हैं, हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं। ये हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। हम में से प्रत्येक के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। मैं अपनी त्रुटियां भूल चूक देख रहा हूं प्रभु, मेरे हृदय को आप टटोल कर देखें। परमेश्वर, इस समय मैं भरसक रूप से आपका सेवक दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। आज रात यहां मैं अपना जीवन फिर से आप में नया और पवित्र बनाना चाहता हूं। अपने दोस्तों और सेवक गणों के विरुद्ध आज मैंने अभियोग लगाए हैं, मुझे ये सख्त शब्द कहने पड़े हैं, मगर प्रभु मैंने ये आपकी प्रेरणा के अंदर किया है। मैं अनुभव करता हूँ कि आपने ही ये सब कहने के लिए मुझे कहा है। अब मैं खुश हूँ कि ये भार मेरे कांधे से उतर गया है। प्रभु मैं खुश हूँ। अब वो चाहे जैसे भी करें पिता, मेरी प्रार्थना है कि वे इन्हें ग्रहण कर लें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन सभी का उद्धार करेंगे। होने दे कि सभी भले लोगों को बेदारी मिले। उठाए जाने से ठीक पहले इस कलीसिया में होने दीजिए कि आपकी महान सामर्थ प्रकट हो। ऐसा निवेदन करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने इसका वायदा किया है। और प्रभु हम उस तीसरे खिंचाव यानी थर्ड पुल की बाट जो रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो हमारे बीच में बड़े बड़े काम करेगा। मैं आपका हूँ प्रभु, इस वेदी पर दंडवत किए हूँ और जितना कर सकता हूँ उतनी पवित्रता सहित आया हूँ। प्रभु सारी दुनियावी बातें मुझ में से निकाल दे, मेरे अंदर से सारी नाशवान बातें निकाल कर मुझे अविनाशी चीजें दीजिए, जो कि परमेश्वर का वचन है। होने दीजिए कि मैं वचन के साथ इस निकटता से जी सकूं कि वचन मुझ में और मैं वचन में मिलकर एक हो जाएं। प्रभु मैं वचन से कभी परे न जा सकूं, ऐसा होने दें। काश मैं महाराजा की उस तलवार को बहुत निकटता और मजबूती से थामे रहूं। इस विनती को स्वीकार करें प्रभु, हम आपके सेवक हैं। हम सबको आशीष दें। हम इस सुबह अपने दिलों को फिर से पवित्र कर आपको समर्पित कर रहे हैं। सेवकाई के लिए यीशु मसीह के नाम में हम आपके ही सेवक हैं। यीशु ने सारा मूल्य चुका दिया। भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे।